मैं अब इस तरह नहीं रह सकता। एक लंबी आह भरकर रॉकी ने खुद को शांत करने और थंडहॉक सिटी के मामलों के बारे में सोचने से बचने की कोशिश की। थंडहॉक शहर की हालत बेहद दयनीय थी, कपड़े और खाने पीने की कमी थी। ऐसी स्थिति में शहर का स्वामी होने के नाते रॉकी को अपनी स्थिति का जरा भी आनंद नहीं आ रहा था। थंडहॉक सिटी की दुर्दशा बदलने का बस एक ही तरीका नजर आ रहा था, और वो था मनरून्स। अगर रॉकी मनरून्स सीखकर उनका सही इस्तेमाल कर पाता तो थंडहॉक सिटी जरूर बदल जाती। मनरून्स का सबसे बड़ा उपयोग उपकरणों को असीमित मन प्रदान करना था, जिससे मन उपकरणों की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वेनसीर ने अपने शोध नोट्स में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया था, और वह इस पद्धति से लोगों को राक्षसों से लड़ने के लिए सशक्त बनाने की आशा रखते थे। हालांकि एक ऐसी बात थी जिसकी वेनसीर ने कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद उनके द्वारा अपने अंतिम शब्दों में उल्लिखित फ्लाइंग आर्मर की परियोजना सफलतापूर्वक विकसित हो गई। इससे शून्य जादुई कवच का निर्माण हुआ जो मन उपकरण से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यदि वेनसीर को इस बारे में पता होता तो वह असाधारण रूप से उत्साहित होता, और अपनी बुद्धिमत्ता से उसे तुरंत कुछ एहसास हो जाता कि उसके द्वारा आविष्कृत मनरून शून्य जादू कवच के लिए एकदम उपयुक्त थे। एक बार जब शून्य जादुई कवच के अंदर के जादुई पत्थर को कम प्रतिबंधों वाले और अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले मनरूनों से बदल दिया गया तो शून्य जादुई कवच की युद्ध क्षमता तुरंत मौजूदा सीमाओं को तोड़कर अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। ये शून्य जादुई कवच के फिर से विकसित होने के लिए एक नया द्वार भी खोल सकता है। ये सारी संभावनाएं मैना रून्स और रॉकी का भविष्य थी। जब वह इन सब में निपुण हो गया तब क्या उसे थंडहॉक सिटी में सर्दियों के लिए भोजन खत्म होने की चिंता रहेगी? क्या उसे गार्ड कोर के पास उपकरण न होने की चिंता रहेगी? हरगिज नहीं। तब तक तो वह इस आसमान के नीचे सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन चुका होगा। रॉकी को इस बात पर पूरा यकीन था, और भविष्य में शानदार बनने के लिए उसे अभी से कड़ी मेहनत करनी होगी, जिसकी शुरुआत रून्स बनाना सीखने से होगी। इसलिए उसने तुरंत अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दिया और अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया। अपने आप को शांत करने के बाद रॉकी ने उनसे भरे बॉक्स में से एक उपकरण निकाला, एक कलाई गार्ड और फिर एक कलम उठाया। लेकिन उसके हाथ में जो कलम थी वह कोई साधारण कलम नहीं थी। वह जादुई ऊर्जा कलम थी जो मनरून्स लिखने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसे विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए संशोधित किया गया था। जादुई ऊर्जा पेन का काम जादुई शक्ति को किसी वस्तु पर छोड़े गए निशानों में बदलना था। सीधे शब्दों में कहें तो ये जादुई शक्ति को स्याही की तरह इस्तेमाल करता था, और सिर्फ इसी जादुई ऊर्जा पेन से ही ऐसे रून बनाए जा सकते थे जिन्हें मनरून माना जाता था। मैजिक एनर्जी पेन को प्राप्त करने के बाद रॉकी ने अपनी जादुई शक्ति को सक्रिय किया और धीरे धीरे कलाई गार्ड पर एक अजीब प्रतीक बनाया। यह विचित्र प्रतीक एक मनरून था, अधिक सटीक रूप से कहें तो प्रथम स्तर का मनरून। मनरून्स का सिद्धांत ऊर्जा को बनाए रखने के लिए प्रतीकों के रूप में जादुई शक्ति का उपयोग करना था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि रून्स को प्रभावी बनाने के लिए एक भी गलती किए बिना खींचा जाना चाहिए, अन्यथा ये केवल एक बेकार प्रतीक था। शोध नोट्स के अनुसार प्रथम स्तर का मनरून ज्यादा जटिल नहीं था, लेकिन फिर भी रॉकी ने बहुत धीरे धीरे चित्र बनाया। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वह पहली बार चित्र बना रहा था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह जानता था कि इस मामले में वह जल्दबाजी नहीं कर सकता, वरना जरा सी भी चूक होने पर भी लेखन विफल हो जाता। लेकिन जितना अधिक वह सावधानी बरतने के बारे में सोचता उतना ही कम उसका हाथ उसकी बात मानता प्रतीत होता, और अनजाने में हुई एक झटके के कारण लगभग पूरा हो चुका रून तुरंत ही गायब हो जाता। हफ, ब्रेसर से आधे अधूरे रून को गायब होते देख रॉकी ने गहरी सांस ली और अपने माथे से पसीना पोंछा। कुछ ही देर में वह पसीने से लथपथ हो गया। ऐसा उसके पहले रून चित्र के तनाव के कारण था, और इसलिए भी कि यह काम उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल था, और नोट्स जितना आसान लग रहा था उससे कहीं ज्यादा आसान था। जहां तक असफलता की बात है, रॉकी को इसकी उम्मीद थी। वह जरा भी निराश नहीं हुआ। अगर वह पहली ही कोशिश में सफल हो जाता तो हैरानी की बात होती। अपने हाथ को स्थिर करने के लिए एक और गहरी सांस लेते हुए उसने एक बार फिर कलाई पर रून बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया रॉकी का चित्र बनाने का दूसरा प्रयास भी जल्दी ही विफल हो गया, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, पांचवां, फिर छठा। वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन बार बार असफलता ही हाथ लगी, मानो किसी अंतहीन चक्र में फंस गया हो। इन अनगिनत असफलताओं के बाद रॉकी को धीरे धीरे रून्स लिखने की मुश्किल समझ आने लगी। यह उसकी कल्पना से भी 100 गुना ज्यादा मुश्किल था। प्रथम स्तर के रूनों को बनाने के तरीकों के बारे में शोध नोट्स बहुत विस्तृत थे और वे ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहे थे। रॉकी ने थोड़े ही समय में सब कुछ याद कर लिया था, लेकिन जब तक उसने खुद उन्हें बनाना शुरू नहीं किया तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि उनकी कठिनाई उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। लगातार असफलता ने उसे शोध के नोट्स दोबारा खोलने पर मजबूर कर दिया, ये सोचकर कि कहीं उसने तरीके गलत तो नहीं याद कर लिए। नतीजों से साबित हुआ कि उसकी याददाश्त ठीक थी। सब कुछ मुश्किल इसलिए था क्योंकि एक सफल मनरून बनाना वाकई मुश्किल था। और शाम तक वह अंततः रुका नहीं, इसलिए नहीं कि वह थका हुआ था या निराश था, बल्कि इसलिए कि उसकी जादुई शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। प्रथम स्तर के रूनों को खींचने के लिए आवश्यक जादुई शक्ति की मात्रा न्यूनतम थी। आखिरकार वे जो मन सहन कर सकते थे वह भी बहुत सीमित था, लेकिन फिर भी उनकी जादुई शक्ति बार बार की असफलताओं में खर्च हो गई जब तक कि उनके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि यह प्रक्रिया असफलताओं से भरी थी, लेकिन रॉकी ने इसे बंद करने पर जरा भी हतोत्साहित महसूस नहीं किया। इसके विपरीत वह काफी प्रसन्न था, क्योंकि जब उसने अपनी सारी जादुई शक्ति इस्तेमाल कर ली थी, हालांकि वह अभी भी एक सफल रून नहीं बना पाया था, तो कम से कम अब वह एक ही बार में रून बना सकता था। हो सकता है कि बारीकियों में खामियों के कारण उसका बनाया रून बेकार हो गया हो, लेकिन यह उसके पहले प्रयास से कहीं बेहतर था। ये प्रगति थी, प्रगति के साथ आशा भी थी। इसलिए रुकने के बाद रॉकी वास्तव में आज के अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था, और उसने महसूस किया कि यदि यह गति जारी रही तो वह बहुत जल्द ही एक सफल रून बनाने में सक्षम हो सकता है। इस प्रत्याशा ने उनमें आत्मविश्वास भर दिया, और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि आज रात उन्हें अच्छी नींद लेनी चाहिए ताकि वे अपनी जादुई शक्ति पुनः प्राप्त कर सकें और कल के लिए अपनी आत्मा को पुनः तरोताजा कर सकें। लिलिया अध्ययन कक्ष से बाहर निकलते समय रॉकी ने लिलिया को दरवाजे पर खड़ा देखा, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। क्या तुम पूरे समय यहीं मेरा इंतजार कर रही थी? मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। उसकी ओर देखते हुए लिलिया ने सावधानी से कहा, हालांकि मैं अब गार्ड कोर का कप्तान भी हूँ, फिर भी मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। तुमने कड़ी मेहनत की है। लिलिया के शब्दों ने रॉकी के दिल को खुश कर दिया। स्पष्ट रूप से न केवल वह थंडरहॉक सिटी में कड़ी मेहनत करने में व्यस्त था, बल्कि अन्य लोग भी थे। आपका रंग बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, जब रॉकी विचार कर रहा था, लिलिया ने उसकी ओर चिंता से देखा। इस पर रॉकी ने लापरवाही से हाथ हिलाकर उसे समझाया कि चिंता मत करो, उसकी बस जादुई शक्ति खत्म हो गई है। लेकिन ये सुनकर लिलिया ने सिर हिलाया, शायद यह अच्छी बात है। जादुई शक्ति का लगातार इस्तेमाल करने से उस पर तुम्हारा नियंत्रण काफी बेहतर हो सकता है। अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो तुम बहुत जल्द लेवल 2 की जादूगर बन जाओगी। मुझे छोड़ दो, मैं अभी खाना चाहता हूँ। रॉकी को लिलिया की बात पर गंभीर हो जाने की आदत बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत उसे टोक दिया। लेकिन उसे सचमुच भूख लग रही थी। जब वह अपना सारा ध्यान रून्स बनाने में लगा रहा था तब उसे भूख का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने रुका उसे भूख लगने लगी, खासकर तब जब उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। आपके लिए रात का खाना पहले ही तैयार कर दिया गया है, मैंने किसी को इसे आपके बेडरूम में रखवा दिया है। ये बहुत बढ़िया है, आप सबसे विचारशील हैं। लिलिया को अंगूठा दिखाकर रॉकी जल्दी से अपने शयन कक्ष में वापस चला गया। उसकी भूख से व्याकुल वापसी को देखकर लिलिया ने आह भरी। विचार मग्न, ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अगले आधे महीने में रॉकी ने दिन प्रतिदिन वही काम किया, उसने मन रून्स को खींचा। एक और ऐसा इसलिए था क्योंकि थंडरहॉक सिटी की स्थिति के कारण उसे कम से कम समय में मैना रून्स में महारत हासिल करने की आवश्यकता थी, जो कि उसकी अगली योजनाओं के साथ आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका था। दूसरी ओर ऐसा इसलिए था क्योंकि रून्स बनाने की प्रक्रिया के दौरान रॉकी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसे जरा सी भी ऊब महसूस नहीं हुई। हालांकि उसे बार बार असफलताएं मिलती रहीं, फिर भी वह अपनी समस्याओं को पहचानकर और अगले प्रयास में उनसे बचने की कोशिश करके हर असफलता में आनंद पा लेता था। इससे जो पहले एक उबाऊ दोहराव था वह न केवल उसे बोर नहीं करता था, बल्कि वास्तव में काफी दिलचस्प भी लगता था। इसमें आनंद पाते हुए शायद केवल ये शब्द ही उनकी वर्तमान स्थिति का वर्णन कर सकते हैं। दरअसल लगातार असफलताओं के बावजूद न केवल उन्हें ऊब महसूस नहीं हुई, बल्कि उन्हें खुशी भी मिली, उन्हें सचमुच इसमें खुशी मिली। हालांकि ठीक इसी वजह से वह इसमें और भी अधिक डूब गया, मानो उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। सौभाग्य से इस दौरान थंडरहॉक सिटी में कोई भी दबाव वाली बात नहीं थी, और उसके जुनून ने उसे दूसरों या किसी अन्य चीज को प्रभावित किए बिना पूरे दिन प्रयोगशाला में ही रहने पर मजबूर कर दिया। दिन बिना किसी घटना के बीतते गए, प्रत्येक दिन सुचारू रूप से और शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा था, जिससे सुखद अनुभूति हो रही थी। हालांकि चाहे वह रॉकी हो, लिलिया हो या एलिन हो, वे सभी जानते थे कि वर्तमान शांति केवल सती थी, वास्तविक संकट वास्तव में उनके सामने था। अजूर कॉमर्स गिल्ड के लोग आने वाले थे। एजोर कॉमर्स गिल्ड के आगमन से यार्न की कीमतों में वृद्धि होगी, जो फिर श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को ट्रिगर करेगी, जो अंततः थंडरहॉक सिटी के भीतर एक महत्वपूर्ण संकट का कारण बनेगी। इस बड़े संकट का सामना करते हुए हर कोई समाधान के बारे में सोच रहा था, न केवल रॉकी सिटी लॉर्ड बल्कि एलिन भी। दादाजी, एजोर कॉमर्स गिल्ड के व्यापारी जहाज कुछ ही दिनों में आ रहे हैं, क्या आपने उनका स्वागत किया है? अपने घर में बैठी एलिन ने कुछ चिंतित होकर पूछा। रॉकी से अपनी आखिरी मुलाकात के बाद एलिन काफी व्यस्त थी। उसने वॉस को न सिर्फ ये बताया कि रॉकी चाहता है कि वह उसकी तरफ से चैम्बर से बातचीत करे, बल्कि उसने वॉस को रॉकी की उस योजना के बारे में भी बताया जिसमें वह अपनी निजी संपत्ति बेचकर आर्थिक मदद करना चाहता है। शायद एलिन ने स्वयं भी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में, हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वॉस के साथ बातचीत में उसका रुख स्पष्ट हो गया था। वह इस मामले पर चुप नहीं बैठना चाहती थी। एलिन ने खुद इस तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन वॉस ने जरूर देखी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी पोती इस मामले में इतनी गंभीर होगी, इसलिए उन्होंने इसे नजरअंदाज नहीं किया और एक हफ्ते पहले ही एजोर कॉमर्स गिल्ड से संपर्क कर लिया था। इस स्थिति में चिंतित एलिन का सामना करते हुए वॉस ने एक कड़वी मुस्कान दिखाई। छोटी बच्ची, क्या अब तुम्हें दादाजी की क्षमताओं पर संदेह होने लगा है? दादाजी, मुझे आप पर कोई संदेह नहीं है। इस तरह से संबोधित किए जाने पर एलिन ने वॉस के सामने मुंह बना लिया और वह असामान्य रूप से अधिक बच्चों जैसी हो गई। ठीक है, ठीक है। मैंने पहले ही चीफ स्टीवर्ड मार से बात कर ली है। उन्होंने बताया कि कुछ व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, लेकिन बारीकियों पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने की जरूरत है, इसलिए चिंता न करें। एलिन की ओर देखते हुए वॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी आप अद्भुत हैं। अपने दादाजी की यह बात सुनकर एलिन अंततः मुस्कुराई, उसे काफी राहत मिली। वॉस द्वारा उल्लिखित मुख्य प्रबंधक मार एजोर कॉमर्स गिल्ड की ओर से थंडरहॉक सिटी के साथ व्यापार के प्रभारी थे और जैसा कि एलिन जानती थी उसके दादाजी उनसे पुराने परिचित थे। इसलिए चूंकि उन्होंने कहा था कि समझौता किया जा सकता है, इसका मतलब था कि कीमत के मुद्दे पर बातचीत की जा सकती थी, जिससे चीजें बहुत आसान हो गईं। यदि वे यार्न की कीमतों को बहुत अधिक बढ़ने से रोक सकें और फिर जब मैजिक स्टोन खरीदार आएं तो उन्हें उच्च कीमत पर बेच सकें, तो यह आगे पीछे की प्रक्रिया थंडरहॉक सिटी पर दबाव को काफी हद तक कम कर सकती है। दादाजी के शब्दों से एलिन का मन पूरी तरह से शांत हो गया और उसने अगले कदमों की योजना बनानी शुरू कर दी। इसके बाद के दिनों में थंडरहॉक शहर शांतिपूर्ण रहा और हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त रहा। इस दौरान रॉकी लगातार रून चित्र बनाता रहा। दिनों की गिनती करते हुए उसने प्रयोगशाला में लगभग एक महीना बिता दिया था, एक ऐसा प्रयास जिसके लिए लिलिया भी उसकी दृढ़ता की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। कितना उबाव और बोझिल महीना था वो। वो न सिर्फ रोज एक ही बात दोहरा रहा था, बल्कि नतीजा भी हमेशा नाकामी ही निकलता था। धैर्य की तो बात ही छोड़िए, रॉकी लगातार नाकामियों के बावजूद भी अपना संयम बनाए रख पाया और खुद पर से कभी भरोसा नहीं खोया। ये कुछ ऐसा था जो आम लोग हासिल नहीं कर पाते। हालांकि ये रॉकी की अदम्य भावना के कारण ही था कि अनगिनत असफलताओं के बाद उसे अंततः सफलता मिली। वह सफल हो गया था। बिना किसी चेतावनी के रॉकी ने लगभग आदतन अपने ब्रेसर पर एक रून बना लिया और फिर वह सफल हो गया। एक के बाद एक असफलताओं के बाद अंततः उन्होंने प्रथम स्तर के मन रून को सफलतापूर्वक चित्रित किया। आखिरकार सफल हो गए। कलाई गार्ड को अपने चेहरे के पास रखकर और करीब से देखने पर रॉकी ने अपनी आंखें झपकाई। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगा कि इस बार उसने जो रून बनाया है वह पिछले वाले से कुछ अलग है। तुम सफल हुए। जब रॉकी विचारों में खोया हुआ था, लिलिया की आवाज गूंजी और उसकी तुलना में लिलिया और भी अधिक उत्साहित लग रही थी। होश में आते हुए रॉकी ने उसकी ओर देखा और फिर अपने हाथों में कलाई गार्ड की ओर। अंततः उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये सब स्वाभाविक रूप से हुआ। यह मुहावरा उसकी सफलता का सटीक सारांश था। लगातार अभ्यास के बाद रॉकी ने स्वाभाविक रूप से प्रथम स्तर के रून में महारत हासिल कर ली थी। इसे कम मत आंकिए, क्योंकि न केवल यह रून पहला था जिसे रॉकी ने सफलतापूर्वक चित्रित किया था, बल्कि यह आकाश युग की शुरुआत के बाद से दुनिया में प्रकट होने वाला पहला मन रून भी था। हालांकि रॉकी के अलावा सिर्फ लिलिया ने ही उस रून को देखा था, फिर भी यह एक ऐतिहासिक क्षण था। उस क्षण से इस रून के सफल चित्रण के कारण पूरा आकाश बदलने लगा। बधाई हो, तुमने अंततः ये कर दिखाया। रॉकी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर लिलिया ने ईमानदारी से उसे बधाई दी। उन्होंने लगभग एक महीने तक रॉकी के प्रयासों को देखा था और किसी से भी बेहतर ढंग से समझती थी कि रून को चित्रित करने के लिए रॉकी को कितनी जद्दोजहद से गुजरना पड़ा था। लिलिया की बधाई की बात करें तो रॉकी बस मुस्कुराया। वह अच्छी तरह जानता था कि इस दौरान लिलिया ने उसकी बहुत मदद की थी। हालांकि उसने खुद रून्स बनाने में उसकी मदद नहीं की होगी, लेकिन वह पूरे समय उसके साथ रही ताकि रॉकी हर दिन उसका मौन समर्थन महसूस कर सके। इसलिए लिलिया की ओर देखने के बाद रॉकी ने हिम्मत जुटाई और उसे गले लगा लिया। स्पष्टतः लिलिया को यह उम्मीद नहीं थी कि रॉकी अचानक उसे गले लगा लेगा और अचानक से वह उसे गले लगा लेगी, और पकड़े जाने पर उसके मुंह से हल्की सी चीख भी निकल गई। जहां तक रॉकी की बात है, जो उस समय उसे गले लगा रहा था वह इसका आनंद ले रहा था, लिलिया के बालों की खुशबू का आनंद ले रहा था और उसके शरीर को महसूस कर रहा था जो मजबूत होते हुए भी नाजुक था। समय मिनट दर मिनट बहुत लंबे समय तक बीतता रहा। तुम मुझे कब तक रोके रखने की योजना बना रहे हो? पता नहीं कितनी देर बाद लिलिया के आलिंगन में पूरी तरह डूबे रॉकी से अचानक लिलिया ने पूछा, लेकिन फिर उसने चंचलता से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, थोड़ी देर और, मुझे लगता है कि अब ये पर्याप्त है। रॉकी के जवाब से खुश होकर लिलिया ने उसे और अधिक परेशान नहीं किया, वह उसके आलिंगन से मुक्त हो गई और फिर पूछा, रॉकी अब जब तुम रून्स का चित्रण कर सकते हो तो आगे क्या करने की योजना बना रहे हो? क्या ये रून्स सचमुच उपयोगी हैं? रॉकी अंततः रून बनाने में सफल हो गया और यद्यपि ये केवल प्रथम स्तर का रून था, फिर भी यह खुशी का कारण था, इतना कि लिलिया भी उसके लिए खुश होने से खुद को नहीं रोक सकी। लेकिन भले ही रून चित्रण सफल रहा, फिर भी आगे क्या? रॉकी अब रून्स बना सकता था, लेकिन इसका क्या मतलब था? क्या इसका मतलब ये था कि अब से वह और थंडरहॉक सिटी नई ऊंचाइयों को छू सकते थे और गौरैये से फीनिक्स में बदल सकते थे? लिलिया को ऐसा नहीं लगा, इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सकी। हालांकि रॉकी के मन में स्पष्ट रूप से एक योजना थी, इसलिए उसने तुरंत अपना जवाब दिया, मैं रून उपकरणों का एक बैच बनाने की योजना बना रहा हूँ। रून उपकरण का उत्पादन? यह जवाब सुनकर लिलिया ने भौहें चढ़ाई, क्या आप रून उपकरणों का व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं? मैं रॉकी, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। रॉकी के बोलने से पहले ही लिलिया ने उसे बीच में ही रोक दिया और बहुत गंभीरता से बोली, रॉकी जब तक तुम्हारे पास खुद की रक्षा करने की शक्ति नहीं होगी, तब तक तुम रून उपकरण बिल्कुल नहीं बेच सकते और तुम दूसरों को इसके बारे में बता भी नहीं सकते। मन रून बहुत महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण कि वे आसमान की पूरी संरचना को बदल सकते हैं। अगर दूसरों को पता चल गया कि आपके पास ऐसी भयानक तकनीक है तो ये हमारे लिए एक आपदा होगी। लिलिया ने रॉकी की ओर गंभीरता से देखा और अपनी चिंताएं व्यक्त की जो वह लंबे समय से मन में पाल रही थी। हालांकि लिलिया को मन रून्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी वह मूर्ख नहीं थी। रून्स के संभावित अनुप्रयोगों की एक मोटी समझ से ही उसे समझ आ गया था कि वे कितने भयानक हो सकते हैं। अगर बाहरी लोगों को पता चल जाए कि रॉकी के पास इतनी महत्वपूर्ण तकनीक है, तो इसका नतीजा थंडरहॉक सिटी या उसके लिए कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि यह उन पर एक बड़ी मुसीबत ला देगा, इतनी बड़ी कि रॉकी और थंडरहॉक सिटी के पास अपने शवों को दफनाने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। इस प्रकार जैसे ही रॉकी रून्स बनाने में सक्षम हुआ, लिलिया ने अपनी चिंताएं बता दी। उसे सचमुच डर था कि रॉकी को इसका एहसास नहीं होगा। चिंता मत करो, मैंने ये सब पहले ही सोच लिया है। लिलिया का चिंतित होना जायज था, लेकिन उसने रॉकी को कम करके आंका था। उसने जिन संभावनाओं का जिक्र किया था, रॉकी उन सभी पर पहले ही विचार कर चुका था। रॉकी से बेहतर कोई नहीं जानता था कि माना रून्स कितने महत्वपूर्ण हैं और वे दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। जैसे ही माना रून्स का खुलासा होता, वह और थंडरहॉक सिटी निशाना बन जाते। आसमान में घूमने वाले वे दैत्य, वे असली दानव, तुरंत उसके पीछे पड़ जाते और माना रून्स के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। यह एक ऐसा मामला था जिसमें निर्दोष व्यक्ति अपने जेड खजाने के अपराध का बोझ स्वयं पर डाल लेता है। माना रून्स जेड का खजाना थे और रॉकी ही वह आदमी था जो उससे बोझिल था। जिन लोगों से उसका सामना हुआ, उनमें से लगभग सभी के मन में माना रून्स के प्रति दुर्भावना थी। ऐसी परिस्थितियों में वह इतनी जल्दी मन रून्स का पर्दाफाश करने की मूर्खता कैसे कर सकता था? हो सकता है कि मन रून्स अंततः दुनिया को पता चल जाए, लेकिन अभी समय निश्चित रूप से नहीं आया है। रॉकी का रून उपकरणों का एक बैच तैयार करने का इरादा वास्तव में एक अलग योजना का हिस्सा था। रॉकी के सरल शब्दों में समझाने के बाद लिलिया की चिंताएं दूर हो गईं। दरअसल रॉकी चाहे जो भी करे, वह हर चीज में उसका साथ देगी, सिवाय इसके कि वह उसे आत्मविनाश की ओर बढ़ते हुए देखे। वैसे एलिन पहले आ गई थी। वह चाहती थी कि मैं आपको बता दूं कि अजूर कॉमर्स गिल्ड के लोग कल आएंगे, लेकिन उसने कहा कि आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। वॉस ने अजूर कॉमर्स गिल्ड से पहले ही बात कर ली है और उन्होंने जो संकेत दिए हैं, उनसे लगता है कि ट्रेड की कीमत बढ़ाने के मामले पर बातचीत हो सकती है। मन रून्स के बारे में बात खत्म करने के बाद लिलिया को मुख्य बात याद आ गई और उसने जल्दी से एलिन के शब्द रॉकी को बता दिए। एलिन उस दिन पहले भी आई थी, लेकिन उस समय रॉकी मन रून्स पढ़ने में मग्न था, इसलिए लिलिया ने उसे मना कर दिया। फिर भी उसने बिना एक भी शब्द छोड़े रॉकी को एलिन का संदेश सुना दिया। ये सुनकर रॉकी के चेहरे पर खुशी की झलक फैल गई, जो कि मैना रून को सफलतापूर्वक खींचने की खुशी से भी अधिक थी। धागे की कीमत में वृद्धि का मुद्दा रॉकी को सचमुच चिंतित कर रहा था और उसे सिरदर्द दे रहा था। यह न केवल आसन था, बल्कि किसी भी तरह की गड़बड़ी से बड़ी अराजकता पैदा हो सकती थी। क्या एलिन ने कहा कि वॉस ने पहले ही एज और कॉमर्स गिल्ड को सूचित कर दिया है? हाँ, उसने यही कहा था। हाँ, ये तो बड़ी राहत की बात है। लिलिया से एक बार फिर पूछने और सकारात्मक जवाब मिलने के बाद रॉकी ने आखिरकार राहत की सांस ली। अगर सूद की कीमत नियंत्रित की जा सके, भले ही वह बढ़नी ही थी, और उसे न्यूनतम रखा जा सके, तो थंडरहॉक सिटी पर दबाव काफी कम हो जाएगा और भविष्य के मामलों को संभालना बहुत आसान हो जाएगा। चलो चलें, हमें तैयारी करनी है। एलिन ने पहले ही अपना काम कर लिया है और कल हम अपनी तरफ से कोई भी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कहकर रॉकी अगले दिन एजोर कॉमर्स गिल्ड के मुख्य प्रबंधक के साथ होने वाली बैठक की तैयारी के लिए लिलिया के साथ अध्ययन कक्ष से बाहर चला गया। दिन जल्दी ही बीत गया और जल्द ही अगली सुबह आ गई। दादाजी, व्यापारी जहाज आ गया है। अगली सुबह एजोर कॉमर्स गिल्ड के स्काईशिप का स्वागत करने के लिए एलिन और बॉस ने थंडहॉक सिटी के बंदरगाह की एक विशेष यात्रा की। सिद्धांततः ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस बार थंडहॉक सिटी ही वह व्यक्ति था जो अनुग्रह की मांग कर रहा था, इसलिए न केवल वित्त अधिकारी एलिन आई बल्कि बॉस भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने अत्यंत सम्मान दिखाया। उस समय एलिन और उसके दादा एक गाड़ी के पास खड़े होकर उसी दिशा में देख रहे थे जब उन्होंने एक विशाल स्काईशिप को थंडहॉक सिटी के डिफेंसिव नेट में प्रवेश करते हुए और धीरे धीरे लैंडिंग के लिए बंदरगाह की ओर आते देखा। चिंता मत करो, बस सामान्य रूप से कार्य करो और तुम इससे निपटने में सक्षम हो जाओगे। जैसे ही स्काईशिप धीरे धीरे नीचे उतरा, बॉस ने देखा कि एलिन थोड़ी घबराई हुई थी और उसने उसे सांत्वना देने के लिए बात की। हाँ, चूंकि दादाजी ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, इसलिए मैं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। एक गहरी सांस लेकर एलिन ने सिर हिलाया और फिर खुद को शांत किया। चूंकि बॉस ने पहले ही व्यापार के प्रभारी चीफ स्टीवर्ड मार का अभिवादन कर लिया था, इसलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बातचीत में रॉकी के साथ एलिन भी मदद करेगी और बॉस इसमें शामिल नहीं होने वाला था। इस बात ने एलिन को थोड़ा परेशान कर दिया था। हालांकि चूंकि दादाजी ने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था, एलिन को लगा कि अगर वह भी इस मामले को ठीक से नहीं संभाल पाई तो यह उसकी नाकाबिलियत होगी। इसलिए उसने जल्दी से अपनी बेवजह की चिंता छोड़ दी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा। इसके तुरंत बाद व्यापारी जहाज बंदरगाह पर आसानी से उतर गया और कुछ ही समय में लोगों का एक समूह उतर गया और सीधे उस गाड़ी की ओर बढ़ गया जहां एलिन और बॉस थे। ये अजूर कॉमर्स गिल्ड के लोग थे। दादाजी, क्या हो रहा है? फिर भी जैसे जैसे एजोर कॉमर्स गिल्ड के लोग धीरे धीरे पास आ रहे थे, एलिन, जो अब घबराना बंद कर चुकी थी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अचानक घबरा गई। क्योंकि इन लोगों को देखकर उसे एहसास हुआ कि उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति चीफ स्टीवर्ड मार नहीं था, जो हमेशा थंडहॉक सिटी के साथ लेन देन करता था, बल्कि एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसे वह नहीं पहचानती थी। क्या हो रहा था? क्या दादाजी ने पहले ही चीफ स्टीवर्ड मार से संपर्क नहीं कर लिया था? क्या ये तय नहीं हुआ था कि मिलने के बाद ही इस बारे में विस्तार से बात की जाएगी? इस बार चीफ स्टीवर्ड मार क्यों नहीं आए? ये तो बुरा था। आश्चर्यचकित होकर एलिन ने जल्दी से बॉस की ओर देखा, लेकिन पाया कि उसके चेहरे पर अभी भी एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो ये सब उसके लिए अप्रत्याशित नहीं था। अचानक घटी इस घटना ने एलिन को, जिसने बहुत सावधानी से तैयारी की थी, पूरी तरह से अचंभित कर दिया। उसने मान लिया था कि चीफ स्टीवर्ड मार ही आएंगे और इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली थी। न केवल चीफ स्टीवर्ड मार के उसके दादा के साथ अच्छे संबंध थे, बल्कि उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि यद्यपि धागे की कीमत में वृद्धि होना तय है, लेकिन वृद्धि की सीमा पर बातचीत की जा सकती है। क्या इसका मतलब साफ नहीं है? सीधे शब्दों में कहें तो जब तक कोई पर्याप्त लाभ दे सकता है, चीफ स्टीवर्ड मार अपनी स्थितिगत बढ़त का इस्तेमाल करके थंडहॉक सिटी को थोड़ी कीमत में छूट दे सकते हैं। एक शहर के साथ व्यापार का प्रभारी होने के नाते उसके पास निश्चित रूप से वह अधिकार था। इस प्रकार एलिन को पहले से ही पता था कि चीफ स्टीवर्ड मार से कैसे निपटना है और उसने रॉकी को पहले से ही सूचित भी कर दिया था। लेकिन अब क्या हो रहा था? चीफ स्टीवर्ड मार, जो अपने दादाजी की बात से तुरंत सहमत हो गई थी, क्यों नहीं आई? और थंडहॉक सिटी के साथ व्यापार करने कोई और क्यों आया था? इस अप्रत्याशित परिवर्तन से एलिन असमंजस में पड़ गई, यहां तक कि एक पल के लिए तो उसे समझ में ही नहीं आया कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। सौभाग्यवश बॉस उसके बिल्कुल पास था। क्या ये सीनियर बॉस है? एजोर कॉमर्स गिल्ड का समूह अभी आया ही था कि उनके नेता ने पहले बोलना शुरू कर दिया। वास्तव में क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे किससे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? मैं जियाशी हूं, एजोर कॉमर्स गिल्ड का नवनियुक्त ओवरसियर। बात कर रहे आदमी का नाम जियाशी था, जो लगभग 40 साल का लग रहा था, लेकिन उसकी कनपटियां पहले से ही थोड़ी सफेद हो रही थी और उसका रंग भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी बातचीत के दौरान उसका चेहरा मुस्कुराता रहा। वरिष्ठ बॉस, मैंने चीफ स्टीवर्ड मार से आपके कार्यों के बारे में बहुत कुछ सुना है। आप उस समय काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे। एक संक्षिप्त आत्म परिचय के बाद नए ओवरसियर जियाशी ने बॉस से बातचीत शुरू की, जिन्होंने सहजता से बुद्धि और हास्य के साथ जवाब दिया। उस समय उनके व्यवहार को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह उनकी पहली मुलाकात थी, बल्कि वे पुराने दोस्त जैसे लग रहे थे। एक दूसरे से बातचीत करने के बाद बॉस, जियाशी और हैरान एलिन सभी एक ही गाड़ी में सवार होकर सीधे सिटी लॉर्ड के भवन की ओर चल पड़े। वरिष्ठ बॉस, कृपया इस लेन देन के दौरान नगरपाल के सामने हमारे लिए अच्छे शब्द कहें। सिटी लॉर्ड के भवन की ओर जाने वाली गाड़ी में सवार होकर जाते समय जियाशी और बॉस लगातार बातें करते रहे और जल्दी ही लेन देन के विषय पर आ गए। लेकिन ये सुनकर बॉस ने बस मुस्कुराया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओवरसियर जियाशी, मुझे डर है कि मैं इस बार हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं अब थंडहॉक सिटी का वित्त अधिकारी नहीं हूँ। ओह, ये सुनकर जियाशी चौंक गई, क्योंकि उसे इस तथ्य का स्पष्ट रूप से पता नहीं था। फिर उसने पूछा, सीनियर बॉस, थंडहॉक सिटी के वर्तमान वित्त अधिकारी कौन है? बोलते समय बॉस ने एलिन की ओर देखा। एलिन, आओ और ओवरसियर जियाशी का अभिवादन करो। ओवरसियर जियाशी, नमस्ते। बॉस के बुलावे पर एलिन अंततः वास्तविकता में वापस आ गई और जल्दी से जियाशी का अभिवादन किया। दरअसल शुरू से ही एलिन कुछ विचलित सी थी। वह सोचती रही कि आखिर क्यों थंडहॉक सिटी में व्यापार करने आया व्यक्ति अचानक क्यों बदल गया? क्या यह एक दुर्घटना थी? एलिन को ऐसा नहीं लगता था। धागे की बढ़ती कीमतों के नाजुक मोड़ पर ऐसी दुर्घटना असंभव लग रही थी। क्या यह संयोग था? क्या यह महज एक संयोग था कि एजियोर कॉमर्स गिल्ड ने थंडहॉक सिटी के साथ व्यापार का संचालन जियाशी को सौंपने का निर्णय लिया और यह यान की बढ़ी हुई कीमत से पूरी तरह से असंबंधित था? एलिन को लगा कि यह भी उतना ही असंभव है। थंडहॉक सिटी भले ही छोटी हो, लेकिन फिर भी एक स्काई सिटी थी और इसका प्रबंधन एक पर्यवेक्षक स्तर के व्यक्ति द्वारा किया जाना था। इसलिए एजियोर कॉमर्स गिल्ड अपने प्रतिनिधि को आसानी से नहीं बदलेगा। इसके अलावा चीफ स्टीवर्ड मार ने पहले ही दादाजी से संपर्क किया था। यदि उन्हें पता था कि उन्हें बदला जाएगा, तो उन्होंने दादाजी के सभी अनुरोधों पर आसानी से सहमति क्यों व्यक्त की? इसलिए बहुत सोचने के बाद एलिन केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकी, दादाजी को धोखा दिया गया था। हालांकि चीफ स्टीवर्ड मार ने पहले भी दादाजी के अनुरोधों को तुरंत मान लिया था, लेकिन असल में ये सब एक धोखा था। दूसरे पक्ष को शायद पहले से पता था कि वह व्यापार के लिए थंडहॉक सिटी नहीं आ रहा है, लेकिन उसने दादाजी को इसकी सूचना नहीं दी, जिसके कारण आज ये दृश्य सामने आया। एलिन के लिए यह नतीजा स्वीकार करना वाकई मुश्किल था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके दादा, जो हमेशा से इतने चतुर रहे थे, इस तरह के मामले में फंस जाएंगे और एक मामूली प्रबंधक उनके साथ खेल खेलेगा। ये बात मन में रखते हुए वह खुद को बॉस की ओर देखने से रोक नहीं सकी और पाया कि उसके दादाजी पहले की तरह ही शांतचित दिख रहे थे और अभी भी जियाशी के साथ हंसी खुशी बातचीत कर रहे थे। इस समय बॉस एलिन को जियाशी से मिलवा रहा था। यह मेरी पोती है और वह अब थंडहॉक सिटी की वित्त अधिकारी है। ओह, बॉस के शब्दों से जियाशी के चेहरे पर अचानक एहसास का भाव प्रकट हुआ और फिर वह एलिन की ओर देखने लगा। एलिन को देखने के बाद जियाशी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरों में अनायास ही कुछ कौंध गया। उसी समय एलिन ने अवचेतन रूप से भौहें चढ़ाई, क्योंकि जियाशी की आंखों में उसका मूल्यांकन करते समय जो कुछ कौंधा, उससे उसे अचानक कुछ घृणा महसूस हुई। हालांकि वहां उपस्थित सभी लोग चतुर थे, धूर्त और चालाक जियाशी ने जल्द ही फिर से बॉस के साथ बातचीत शुरू कर दी और एलिन अपने सामान्य व्यवहार में लौट आए। यात्रा के दौरान जियाशी और बॉस लगातार बेफिक्री से बातें करते रहे, मानो पुराने परिचित हों। जब एलिन को पता चला कि पहले की सारी तैयारियां बेकार हो गई हैं, तो उसने बातचीत में शामिल होने की पूरी कोशिश की और कई बार बातचीत को सूट के व्यापार की ओर मोड़ने की कोशिश की। वह इस अवसर का उपयोग जियाशी के रुख को समझने तथा आगामी वार्ता के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए करना चाहती थी। लेकिन किसी वजह से जब पता चला कि बॉस वित्त अधिकारी नहीं है, तो जियाशी, जिसने शुरू में इस मामले को जोरदार ढंग से उठाया था, अब इस पर बात करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि जब एलिन ने खुद कई बार इस मुद्दे को उठाया, तब भी उसने बस कुछ बार उसकी बात मान ली और फिर बात को दूसरे मुद्दों पर ले गया। बंदरगाह से नगर प्रभु के भवन तक का सफर छोटा नहीं था, लेकिन आखिरकार उसे खत्म होना ही था। इसलिए जब तक गाड़ी रुकी, एलिन की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। वह जियाशी के रुख को समझ नहीं पाई थी। इस परिणाम से एलिन और अधिक बेचैन हो गई, क्योंकि उसके अनुभव के आधार पर जियाशी का व्यवहार अच्छा संकेत नहीं था। और जब गाड़ी सिटी लॉर्ड के भवन में पहुंची, तो एलिन जियाशी को रॉकी से मिलने ले गई, जबकि बॉस, जैसा कि उसने पहले कहा था, उसके पीछे नहीं आया। नगरपाल, मैं एजियोर कॉमर्स गिल्ड का ओवरसियर जियाशी हूं। जियाशी को सिटी लॉर्ड्स हॉल में लाने के बाद एलिन का स्वागत रॉकी ने किया, जो पहले से ही वहां कुछ समय से इंतजार कर रहा था। हालांकि जब एलिन ने जियाशी का परिचय देना समाप्त किया और फिर रॉकी की ओर देखा, तो उसने पाया कि जैसा कि उसने सोचा था, रॉकी का चेहरा आश्चर्य और भ्रम से भरा हुआ था। जाहिर है रॉकी भी जियाशी की उपस्थिति से उतना ही हैरान था जितना कि एलिन, क्योंकि एलिन की तरह उसे भी चीफ स्टीवर्ड मार के आने की उम्मीद थी, क्योंकि चीफ स्टीवर्ड मार लंबे समय से थंडहॉक सिटी के साथ लेन देन में एजियोर कॉमर्स गिल्ड का प्रतिनिधित्व करते रहे थे। तो आज अचानक कोई और क्यों आ गया? अब ये परेशानी वाली बात थी। अपने सामने खड़ी जियाशी और फिर एलिन की ओर देखते हुए, जिसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी, रॉकी को पता चल गया कि स्थिति में कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया भी काफी तेज थी। उनके चेहरे पर आश्चर्य और उलझन तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह एक मुस्कुराहट आ गई जब उन्होंने ओवरसियर जियाशी से कहा, ओवरसियर जियाशी, आपकी यात्रा बहुत लंबी रही है, आपकी दयालु चिंता के लिए धन्यवाद नगरपाल। रॉकी के प्रति थोड़ा झुककर, जियाशी स्पष्ट रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जो महत्वपूर्ण घटनाओं का आदी था और वह अच्छी तरह जानता था कि एक नगर स्वामी की उपस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद रॉकी ने जियाशी के साथ कुछ बातचीत की और फिर वे मुख्य विषय पर आ गए। नगरपाल, इस बार सूद की कीमत 30% बढ़ जाएगी। जियाशी और रॉकी के बीच असली व्यापार निश्चित रूप से धागे का व्यापार था और जियाशी ने सीधे मुद्दे पर आकर रॉकी को बताया कि न केवल धागे की कीमत बढ़ेगी बल्कि यह 30% तक बढ़ जाएगी। 30%! इन शब्दों पर रॉकी ने अनायास ही एक तेज सांस ली। ये वृद्धि न केवल उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी बल्कि यह थंडहॉक सिटी की सहन करने की सीमा से भी अधिक थी। धागे की कीमत 30% बढ़ने वाली है। हालांकि रॉकी को इस बारे में पता था, फिर भी जब उसने 30% की वृद्धि के बारे में सुना तो वह अनायास ही चौंक गया, क्योंकि यह वृद्धि न केवल उसकी उम्मीद से कहीं अधिक थी बल्कि थंडहॉक सिटी की सामर्थ्य की सीमा को भी पार कर गई थी। इतनी अधिक मूल्य वृद्धि से उनकी मूल योजना बाधित हो गई। अपने प्रारंभिक विचार के अनुसार वह अनुसंधान संस्थान में पाए गए सभी मध्यम जादुई पत्थरों को बेचना चाहते थे, फिर उस आय का उपयोग ज्ञान की कीमत में वृद्धि को संतुलित करने के लिए करना चाहते थे तथा आय और व्यय का त्रैमासिक संतुलन बनाए रखना चाहते थे। रॉकी के अनुमान के अनुसार यदि वह अपने पास मौजूद सभी जादुई पत्थरों को बेच दे तो वह कम से कम 2000 स्वर्ण सिक्के कमा सकता है। थंडहॉक सिटी का प्रत्येक तिमाही में धागे पर व्यय लगभग 20,000 स्वर्ण सिक्के था, जिसका अर्थ है कि यदि धागे की कीमत पूरे 10% बढ़ भी जाए तो भी वह जादुई पत्थरों को बेचने से होने वाली आय से इसे संतुलित कर सकता था, जिससे थंडहॉक सिटी पर कुछ वित्तीय दबाव कम हो जाता। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एजोर कॉमर्स गिल्ड एक ही झटके में धागे की कीमत 30% तक बढ़ा देगा। इसका मतलब था कि धागे पर 20,000 गोल्ड कॉइन खर्च करने के बजाय थंडहॉक सिटी को अब 26,000 गोल्ड कॉइन खर्च करने होंगे। अतिरिक्त 6,000 स्वर्ण सिक्के, इतनी बड़ी रकम कुछ जादुई पत्थरों को बेचने की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहां तक कि अगर रॉकी को भी बेच दिया जाए तो भी वह लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए जब ओवरसियर जियाशी ने बोलना समाप्त किया तो रॉकी अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका और उसका चेहरा और भी गंभीर होता गया। ओवरसियर जियाशी, धागे की कीमत इतनी क्यों बढ़ गई है? रॉकी की भौहें तन गईं। तब एलिन, जो जियाशी को लेकर आई थी और उसके बगल में खड़ी थी, बोलने के लिए मुंह खोली। एलिन थंडहॉक सिटी की वित्त अधिकारी थी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बातचीत संभालना उसकी जिम्मेदारी थी। नगरपालिका, इस मामले में हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी मजबूर है, जियाशी ने एलिन की ओर देखते हुए और रॉकी की ओर मुड़ने से पहले एक मासूम भाव धारण करते हुए कहा। नगरपालिका, आपने सुना होगा कि कैंगलांग शहर युद्ध में है और शहर के सभी संसाधनों पर नियंत्रण किया जा रहा है। सच कहूं तो धागे की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कैंगलांग शहर में बहुत प्रयास करना पड़ा, इसलिए सिटी लॉर्ड, ये कीमत वास्तव में हमारे नियंत्रण में नहीं है। रॉकी के सामने जियाशी ने एक मासूम सा मुखौटा पहना हुआ था। हालांकि गौर से देखने पर उसकी बातें कुछ हद तक सही लग रही थी, लेकिन अंततः बेतुकी थी। ये सच था कि कैंगलांग शहर युद्ध में था, लेकिन अगर युद्ध के लिए संसाधनों पर नियंत्रण जरूरी भी हो तो भी यह सूद तक नहीं फैल सकता था, जो कोई रणनीतिक सामग्री नहीं थी। इसके अलावा एजोर कॉमर्स गिल्ड सिर्फ आम नागरिक नहीं था, यह एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स था। क्या ऐसा हो सकता था कि वे सिर्फ इसलिए व्यापार करना बंद कर दें क्योंकि उस शहर में युद्ध चल रहा था जहां उनका मुख्यालय था? निस्संदेह ये और भी कम विश्वसनीय था। तो हालांकि युद्ध के कारण सूद की कीमत में बढ़ोतरी हुई होगी, लेकिन ये बढ़ोतरी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती थी। संक्षेप में, अजूर कॉमर्स गिल्ड युद्ध का इस्तेमाल जानबूझकर कीमतें बढ़ाने के बहाने के तौर पर कर रहा था। ये तथ्य एलिन को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया था, इसलिए उसने फिर कहा, ओवरसियर जियाशी, हम कैंगलांग शहर में युद्ध के बारे में जानते हैं, लेकिन ये कीमत हमारे लिए स्वीकार करने के लिए बहुत अधिक है। मिस एलिन, यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स निर्णय ले सके, हमारे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद एलिन और जियाशी के बीच मौखिक द्वंद्व शुरू हो गया, क्योंकि वे मूल्य वृद्धि की सीमा के बारे में लगातार बहस कर रहे थे। इस बीच रॉकी चुप रहा, चुपचाप सिटी लॉर्ड की स्थिति में बैठा रहा, स्पष्ट रूप से एक पर्यवेक्षक बन गया। थंडहॉक शहर के नगर स्वामी होने के नाते मोलभाव करना उसका काम नहीं था। उसे बस एलिन के जियाशी के साथ किसी नतीजे पर पहुंचने और फिर सिर हिलाने का इंतजार करना होता था। अवलोकन की पूरी प्रक्रिया के दौरान रॉकी को एलिन के बारे में गहरी धारणा प्राप्त हुई। 17 या 18 साल की लड़की ने उसे चुपके से अंगूठा दिखाने पर मजबूर कर दिया। एलिन की कम उम्र के बावजूद वह बातचीत के दौरान बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि उसने काफी कुशलता दिखाई। उसने समझदारी से इस बात पर समय बर्बाद नहीं किया कि कीमत बढ़नी चाहिए या नहीं, बल्कि बढ़ोतरी की राशि पर मोलभाव किया। जियाशी के व्यवहार के आधार पर यह स्पष्ट था कि एजोर कॉमर्स गिल्ड यार्न की कीमतें बढ़ाने पर आमादा था, इसलिए एलिन ने वृद्धि की सीमा पर बातचीत करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका लक्ष्य इसे यथासंभव कम करना था। स्पष्टतः बातचीत के लिए उनके पास एक संक्षिप्त और स्पष्ट उद्देश्य था। हालांकि एलिन का प्रतिद्वंद्वी कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। जियाशी एक बेहद चालाक व्यापारी था जिसकी बातचीत करने की कला बेजोड़ थी, और वह एक अहम बात पर अड़ा रहा। एजोर कॉमर्स गिल्ड और थंडहॉक सिटी दोनों के बीच ज्यादा मजबूत पक्ष था, और थंडहॉक सिटी को उनसे धागा और खाना खरीदना पड़ता था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उन्होंने इस महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर दिया था। चाहे एलिन ने कितनी भी कोशिश की हो, जियाशी एक इंच भी नहीं हिली। ओवरसियर जियाशी, धागे की कीमत में 5% की वृद्धि वह सीमा है जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं, एलिन ने कहा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं जब उसने जियाशी की ओर देखा और थंडहॉक सिटी की अंतिम स्थिति बताई। हालांकि उसने यही दावा किया था, लेकिन वह पूरी सच्चाई नहीं बता रही थी, क्योंकि जहां तक उसे पता था, रॉकी की स्वीकार्य सीमा 10% थी। इसका मतलब था कि वह जियाशी के साथ आगे बातचीत की गुंजाइश अभी भी छोड़ रही थी। ये बातचीत की कला है, इसमें बहस करना नहीं बल्कि देना शामिल है। तुम मुझे एक कदम दो, मैं तुम्हें एक कदम दूंगा, और उसके बाद ही बात करने लायक कुछ होगा। एलिन इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझती थी। दुर्भाग्यवश जब वह बोलना समाप्त कर चुकी तो जियाशी ने केवल अपना सिर हिलाया। नगरपालिका अध्यक्ष मिस एलिन, धागे की कीमत में 30% की वृद्धि करना हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए पहले से ही अंतिम लक्ष्य है। मेरे पास वास्तव में कोई छूट नहीं है। ओवरसियर जियाशी, बैकवोट। जियाशी के रवैये ने अंततः एलिन को उसकी सीमा तक धकेल दिया था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि दूसरा पक्ष इतनी जिद से पीछे हटने से इनकार कर रहा था, और स्पष्ट रूप से बातचीत करने की कोई इच्छा नहीं दिखा रहा था। ठीक है, जैसे ही एलिन दोबारा बोलने वाली थी, रॉकी, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा। उसने एलिन की तरफ देखा, उसे रुकने का इशारा किया और फिर जियाशी की तरफ नजर घुमाई। ओवरसियर जियाशी, आप अपनी यात्रा से थक गए होंगे, चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ये कहने के बाद रॉकी ने एलिन से कहा, एलिन, ओवरसियर जियाशी को आराम करने के लिए ले जाओ और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा मत करो। हाँ, जवाब के साथ एलिन जियाशी के साथ सिटी लॉर्ड्स हॉल से बाहर चली गई। दोनों को जाते हुए देखकर रॉकी ने सिटी लॉर्ड्स हॉल के दरवाजे बंद होने तक इंतजार किया, फिर उसने आह भरी। उन्होंने जानबूझकर बातचीत रोक दी थी क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि अधिक जियाशी का सामना करने पर एलिन असमंजस में थी, इसलिए उन्होंने जियाशी को आराम करने दिया, जिससे एलिन को फिर से संगठित होने और अपने प्रतिद्वंद्वी से निपटने के बारे में सोचने का समय मिल गया। हालांकि रॉकी अच्छी तरह जानता था कि अगर एलिन कोई रणनीति सोच भी ले तो भी वह कोई कारगर उपाय नहीं निकाल पाएगी। वजह साफ थी, थंडहॉक सिटी के पास मोलभाव करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। एक चतुर रसोईया भी चावल के बिना खाना नहीं बना सकता। एलिन चाहे कितनी भी बातचीत करने में कुशल क्यों न हो, पर्याप्त दबाव के बिना वह जियाशी को कभी राजी नहीं कर सकती थी, और जियाशी यह बात जानता था। यही वजह थी कि वह इतना समझौता न करने वाला था। थंडहॉक सिटी के सामने अब यही दुविधा थी। ऐसे में रॉकी को लगा कि उसे दूसरी योजनाएं बनानी शुरू कर देनी चाहिए। .. ओवरसियर जियाशी, क्या वास्तव में इस मामले पर चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है? जियाशी को सिटी लॉर्ड के भवन से बाहर छोड़ने के रास्ते में एलिन अभी भी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार वह कम आक्रामक थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ जियाशी के साथ बातचीत कर रही थी। ओवरसियर जियाशी, जैसा कि आप जानते हैं, थंडहॉक शहर बड़ा नहीं है और रेशम की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि मुझे डर है कि सिटी लॉर्ड इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो कृपया क्या आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे? अगर आप सचमुच किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं तो सिटी लॉर्ड निश्चित रूप से आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। अब जब वे एकांत में थे तो एलिन ने उन मामलों पर बात की जिन पर केवल बंद दरवाजों के पीछे ही चर्चा की जा सकती थी, जैसे कि व्यक्तिगत लाभ। हालांकि उसकी बातें सुनकर जियाशी ने बस अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, मिस एलिन, मुझे बस गाड़ी से बंदरगाह तक ले चलो, मैं व्यापारी जहाजों पर रहने का आदि हूँ। उसने एलिन की ओर देखा, उसके सुझावों को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। यह तो फिर जियाशी की प्रतिक्रिया सुनकर एलिन की भौहें तन गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि जियाशी की कोई निजी इच्छाएं नहीं थी, या फिर ऐसा था कि उसके पास कुछ और योजना थी, या वह बस और अधिक हासिल करना चाहता था? जियाशी के इरादों के बारे में अनिश्चित एलिन ने अधिक कुछ न कहने का निर्णय लिया और उसे सिटी लॉर्ड के भवन से बाहर ले जाने लगी। सिटी लॉर्ड के जाने के बाद जब जियाशी गाड़ी पर चढ़ने ही वाला था तो वह अचानक एलिन की ओर मुड़ा और बोला, मिस एलिन, अगर आप, उसने बीच वाक्य में एलिन का हाथ पकड़ लिया और धीरे से उसके हाथ के पिछले हिस्से को सहलाते हुए बोला, यदि आप सचमुच बात करना चाहते हैं तो आप विस्तृत चर्चा के लिए व्यापारी जहाज पर आ सकते हैं। ओवरसियर जियाशी, कृपया गरिमा के साथ आचरण करें। जियाशी की इस हरकत ने एलिन को चौंका दिया और उसने तुरंत अपना हाथ उसकी पकड़ से वापस खींच लिया, जैसे कोई चौंका हुआ खरगोश हो, और जियाशी को गुस्से से घूरने लगा। ओवरसियर जियाशी, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? जियाशी को घूरते हुए एलिन इतनी गुस्से में थी कि वह रोने के कगार पर थी। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, लेकिन उसकी गुस्से भरी निगाहों के सामने जियाशी पूरी तरह से उदासीन दिखाई दिया। गाड़ी में बैठते हुए उसने कहा, मिस एलिन, रेशम की कीमत पर बातचीत हो सकती है। जब भी आप तैयार हों, आप आकर मुझसे मिल सकती हैं। इन शब्दों के साथ उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और चला गया। जियाशी के जाने के बाद एलिन के साथ क्या हुआ, रॉकी को नहीं पता था, क्योंकि वह उन दोनों के जाने के बाद प्रयोगशाला में वापस आया था। हालांकि रॉकी ने बातचीत से उम्मीद नहीं खोई थी, लेकिन वह जानता था कि वह पूरी तरह से उन पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे एक बैकअप योजना की जरूरत थी, जिसमें स्वाभाविक रूप से मनरून शामिल था। इसलिए प्रयोगशाला में लौटने के बाद उसने लिलिया से अपना शून्य जादू कवच लाने को कहा। क्या तुम सचमुच ऐसा करने का इरादा रखते हो? क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? प्रयोगशाला में प्रतीक्षा करने के कुछ समय बाद लिलिया शून्य जादू कवच लेकर आई, यद्यपि रॉकी को सौंपते समय वह कुछ अनिच्छा से थी, क्योंकि रॉकी ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह क्या करने का इरादा रखता है। वह शून्य जादू कवच पर रून संकेत करने की योजना बना रहा था। इस निर्णय से लिलिया को आश्चर्य हुआ, क्योंकि रॉकी ने अभी अभी रूनों के बारे में सीखा था। हालांकि शून्य जादुई कवच पर रूनों का इस्तेमाल एक अपरिहार्य चलन था, क्या रॉकी के लिए ये कदम उठाना बहुत जल्दी नहीं था, खासकर ये देखते हुए कि उसके पास शून्य जादुई कवच का सिर्फ यही सेट था, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो उसके पास कोई चारा नहीं था। मैं बस प्रयोग करना चाहता हूं, और इसके अलावा अगर रून्स विफल भी हो जाएं तो भी कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, इसमें बस कुछ जादुई शक्ति खर्च होगी, शून्य जादुई कवच निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा। यद्यपि उसने इस प्रकार बात की थी, रॉकी के अंदर आत्मविश्वास नहीं था, फिर भी उसे आगे बढ़ना था। रॉकी को सबसे बेहतर पता था कि उसके लिए शून्य जादुई कवच कितना महत्वपूर्ण था। ये हमेशा से उसकी अनमोल संपत्ति रही थी, वह इसे संजोकर कैसे न रख सकता था। दुर्भाग्य से परिस्थितियों के कारण उसके पास शून्य जादुई कवच का जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब उसकी एकमात्र संपत्ति मन रून थी, लेकिन थंडरहॉक सिटी की मौजूदा ताकत को देखते हुए वह बाहरी लोगों को रूनों के अस्तित्व के बारे में नहीं बता सकता था। इस प्रकार रॉकी के विकल्प सीमित थे, और उसके पास मूलतः एक ही विकल्प बचा था, रूनों का उपयोग करके अपनी ताकत बढ़ाना। या तो वह रूनों को साधारण उपकरणों पर लागू करेगा, जिससे वे रून उपकरण में बदल जाएंगे, या वह उन्हें शून्य जादू कवच पर लागू करेगा ताकि वे और भी अधिक मजबूत हो जाएं। और रॉकी, जिसके पास पहले से ही शून्य जादुई कवच था, उसने स्वाभाविक रूप से वहां रूनों को लागू करने का विकल्प चुना। रून उपकरण पहनने के लिए ज्यादा शक्तिशाली शून्य जादुई कवच को त्यागना कोई समझदारी नहीं होगी, इसलिए उसे यह जोखिम उठाना पड़ा। हालांकि लिलिया को रॉकी का फैसला न सिर्फ जल्दबाजी में बल्कि बेतुका भी लगा। उसके हिसाब से अगर रॉकी और भी ताकतवर हो भी जाए तो क्या फायदा। फिर भी वह देख सकती थी कि रॉकी की अपनी योजनाएं थी, इसलिए उसने अंततः उसे नहीं रोका, और यहां तक कि उसके रून चित्र को बिगाड़ने के डर से प्रयोगशाला छोड़ दी। इसके बाद प्रयोगशाला में केवल रॉकी, एक कलम और शून्य जादू कवच का एक सेट बचा था। प्रयोगशाला की मेज पर शून्य जादू कवच के छाती के टुकड़े को रखते हुए रॉकी ने तुरंत उस पर रन लिखना शुरू नहीं किया, बल्कि ध्यान से अंदर और बाहर से उसका अध्ययन किया। शून्य जादुई कवच को सबसे मजबूत व्यक्तिगत उपकरण इसलिए नहीं माना जाता था क्योंकि उसमें जादुई पत्थर जड़े होते थे। शून्य जादुई कवच के सेट में निहित तकनीक कल्पना से भी परे थी, इसलिए भले ही रॉकी ने प्रथम स्तर के मन रून में महारत हासिल कर ली हो, वह कवच पर आसानी से रून नहीं लगा सकता था। यदि वह शून्य जादुई कवच को मजबूत करने के लिए रून्स का उपयोग करना चाहता था तो उसे सबसे पहले कवच की मन ड्राइविंग प्रणाली को समझना होगा, फिर इस प्रणाली को रून्स के साथ जोड़ना होगा ताकि कवच रून्स द्वारा प्रदान किए गए मन का उपयोग कर सके। इसमें शामिल तकनीक और विशेषज्ञता इतनी जटिल और उन्नत थी कि जब तक कोई पेशेवर कवच निर्माता न हो, कोई भी इसे समझ नहीं सकता था, रॉकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन कठिनाई के बावजूद उन्होंने फिर भी प्रयास करने की योजना बनाई। ऐसा नहीं था कि वह अपनी क्षमताओं को अधिक आंक रहा था, बल्कि इसलिए कि उसके पास एक अलग विचार था। रॉकी शून्य जादुई कवच में आमूल चूल परिवर्तन नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि उसके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है, सिर्फ वही नहीं बल्कि सबसे अनुभवी कवच निर्माता भी ऐसा नहीं कर सकता, खासकर जब से मनरून से एक नई तकनीक थी। अनुसंधान और प्रयोग के बिना कोई भी व्यक्ति शून्य जादू कवच में जादुई पत्थरों को सीधे रूनों से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता था, इसमें प्रयुक्त तकनीक बहुत अधिक और जटिल थी। तो उनका असली विचार शून्य जादू कवच को साधारण उपकरण की तरह व्यवहार करना और फिर इसे रून उपकरण में बदलना था। सीधे शब्दों में कहें तो वह शून्य जादुई कवच पर रून अंकित करना चाहता था। मूल युद्ध क्षमताओं को अपरिवर्तित रखते हुए उसका उद्देश्य रून उपकरण की शक्ति की एक परत जोड़ना था और इस विधि का उपयोग करके कवच को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत करना था। यह एक ऐसी योजना थी जिसके बारे में केवल रॉकी ही सोच सकता था, नहीं, यह एक नया विचार था जिसकी कल्पना केवल वही कर सकता था। मन रून्स के आगमन से पहले, चाहे वह शून्य जादू कवच हो या जादू ऊर्जा उपकरण, दोनों मन प्रदान करने के लिए जादुई पत्थरों पर निर्भर थे, जिससे किसी उपकरण के लिए एक ही समय में शून्य जादू कवच और जादू ऊर्जा उपकरण दोनों होना असंभव था, वे एक साथ मौजूद नहीं हो सकते थे। लेकिन अब मैना रून्स के उद्भव के साथ, जो मैजिक स्टोन्स का स्थान ले सकते हैं और उनके साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं, रॉकी ने अपने स्वयं के शून्य मैजिक कवच को मजबूत करने के लिए इस विधि के बारे में सोचा, जिसका उद्देश्य उसके शून्य मैजिक कवच को अपनी मूल शक्ति बनाए रखने देना था, जबकि यह रून उपकरणों का एक सेट भी बन गया। यह विचार शून्य जादुई कवच से संबंधित उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से दरकिनार कर देता था, जिसमें केवल यह आवश्यक था कि कवच को नियमित उपकरण के रूप में माना जाए, जिसे बाद में रून उपकरण में बदला जा सकता था। यद्यपि रून उपकरण बनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन यह मत भूलिए कि रॉकी के हाथ में अभी भी एक शोध नोटबुक थी। वेंजेल ने शुरुआत में माना रून्स का विकास इस उम्मीद में किया था कि वे जादुई पत्थरों की जगह ले सकेंगे और इस तरह माना उपकरण को रून उपकरण में बदल देंगे, जिससे उसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसलिए उनके नोट्स में उपकरण बनाने के लिए रूनों का उपयोग करने के विस्तृत निर्देश शामिल थे। इस नोटबुक के साथ रॉकी पूरी तरह से रून उपकरण बना सकता है, और अगर वह इसमें कामयाब हो गया तो उन्नत शून्य जादुई कवच की युद्ध क्षमता में निस्संदेह सुधार होगा। फिर वह अपनी योजना के अगले चरण पर आगे बढ़ सकेगा। चलो शुरू करें। लंबे समय तक शून्य जादू कवच सेट की छाती प्लेट का अवलोकन करने के बाद रॉकी शुरू करने के लिए तैयार था। उसने जादुई ऊर्जा पेन उठाया और छाती की प्लेट की अंदरूनी परत पर एक रून बनाया। वह नहीं चाहता था कि किसी को कुछ भी संदिग्ध नजर आए, इसलिए उसने रूनों की सुविधा का पूरा इस्तेमाल किया और सीधे कवच की अंदरूनी परत पर निशान लगा दिए। इस तरीके से न तो रूनों की प्रभावशीलता प्रभावित होती और न ही उसके कवच में कुछ भी असामान्य दिखाई देता। जैसे ही उसने स्ट्रोक पूरा किया, एक रून बना और उससे एक हल्की रोशनी निकली। इससे संकेत मिलता है कि रून सफलतापूर्वक बनाया गया था और अब उसमें मन समाहित था। हालांकि ये सब कुछ नहीं था, प्रथम स्तर के रून में बहुत कम जादुई शक्ति होती है, यहां तक कि एक सूक्ष्म जादुई पत्थर से भी कम। अपनी असली शक्ति को प्रकट करने के लिए उसे मात्रा पर निर्भर रहना पड़ता था। रॉकी के अनुमान के अनुसार उसे छाती की प्लेट पर कम से कम 100 प्रथम स्तर के रून्स बनाने की जरूरत थी ताकि इसकी रक्षात्मक शक्ति को वास्तव में बढ़ाया जा सके, जो एक बहुत बड़ा काम था। अतः एक रून सफलतापूर्वक निकालने के बाद उसने तुरंत दूसरा, फिर तीसरा निकाला। आधा दिन इसी तरह बीत गया और शाम तक रॉकी अपनी सारी जादुई शक्ति समाप्त करके प्रयोगशाला से बाहर निकल गया। अगली सुबह जियाशी रॉकी से मिलने आई। वह जल्द से जल्द धागे से संबंधित लेन देन को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक थी। यह उसके लिए कुछ अप्रत्याशित था क्योंकि उसने देरी करने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि जियाशी इतनी सक्रिय थी, इसलिए उसके पास एलिन को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब एलिन सिटी लॉर्ड्स हॉल पहुंची, तब तक बातचीत का एक नया दौर शुरू हो चुका था। सुबह उड़ गई और वार्ता का परिणाम पिछले दिन जैसा ही रहा, लगभग कोई प्रगति नहीं हुई। जियाशी बिना किसी हिचकिचाहट के 30% कीमत बढ़ाने पर अड़ी रही। इसके विपरीत एलिन आज कुछ विचलित लग रही थी, जबकि कल वह जियाशी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती थी, आज वह स्पष्ट रूप से विचलित दिख रही थी, जो वार्ता के असफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण रॉकी को बातचीत को जबरन रोकने के लिए एक बहाना ढूंढना पड़ा, ताकि वह एलिन को समाधान के बारे में सोचने के लिए कुछ समय दे सके, लेकिन जियाशी ने रॉकी को वह अवसर नहीं दिया। नगर स्वामी, कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक जरूरी नोटिस भेजा है। मुझे जरूरी मामलों के लिए मुख्यालय वापस बुलाया गया है, इसलिए मैं यहां सिर्फ एक दिन और रुक सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि सिटी लॉर्ड कल इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कोई ठोस जवाब दे पाएंगे, जियाशी ने मुड़कर जाने से पहले कहा। उनके शब्दों का स्पष्ट अर्थ था कि वे अब और देरी करने को तैयार नहीं थे और रॉकी पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए दबाव डाल रहे थे। सर, मैं भी विदा लेता हूँ। जियाशी के जाने के बाद रॉकी पहले एलिन के साथ चर्चा करना चाहता था कि आगे क्या करना है, क्योंकि वे अब और देरी नहीं कर सकते थे, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि एलिन बिना कुछ कहे चली गई। रॉकी, एलिन आज थोड़ी अस्वस्थ थी। एलिन के जाने के बाद लिलिया ने रॉकी से कहा। उसने देखा कि एलिन अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। उसने भी उतना ही हैरान होकर सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एलिन को क्या हुआ है। मैं उससे पूछूंगा, ये कहने के बाद लिलिया ने रॉकी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं की और तुरंत सिटी लॉर्ड्स हॉल से बाहर निकल गई। लिलिया को एलिन के पीछे भागते देख रॉकी ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। लिलिया के आसपास होने से उसे राहत मिली, वरना उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या करे। दरअसल रॉकी भी समझ सकता था कि एलिन पूरी तरह से अपने जैसी नहीं थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस विषय को कैसे छेड़े। आखिरकार उन दोनों के बीच कोई निजी रिश्ता नहीं था, बल्कि बस एक अधीनस्थ रिश्ता था। इस बात को अभी के लिए एक तरफ रखते हुए, लिलिया, जो सिटी लॉर्ड्स हॉल से निकल चुकी थी, जल्दी से एलिन के पास पहुंच गई। एलिन, एक क्षण रुको। जब तक लिलिया एलिन के पास पहुंची, वह गाड़ी में चढ़ने की तैयारी कर रही थी। गाड़ी रुकने का इशारा पाकर वह पीछे मुड़ी और देखा कि लिलिया आ रही है। कैप्टन लिलिया। लिलिया को देखकर एलिन ने अपने शिष्टाचार की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और विनम्रता के संकेत के रूप में तुरंत सिर हिला दिया। अब लिलिया गार्ड कोर की कैप्टन थी, जिसका पद एलिन के समकक्ष था, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह रॉकी की विश्वास पात्रों में से एक थी। इसलिए हालांकि एलिन लिलिया से ज्यादा परिचित नहीं थी, फिर भी उसने उसे उचित सम्मान दिया।
कैप्टन लिलिया, क्या नगर स्वामी के पास कोई निर्देश है? ये जानते हुए कि उसका जाना कुछ हद तक अचानक था, लिलिया के पास आते ही एलिन ने जल्दी से पूछा।
नगरपालिका से कुछ नहीं, बस तुमसे बात करनी थी। एलिन की ओर देखते हुए लिलिया मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मेरे साथ टहलने क्यों नहीं चलती?
ये कहने के बाद लिलिया ने एलिन की प्रतिक्रिया का इंतजार भी नहीं किया और आगे बढ़ गई, जिससे एलिन के पास उसके पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसलिए दोनों महिलाएं एक साथ नगर के राजा के भवन से बाहर चली गईं। उनके पीछे एक गाड़ी चल रही थी जो बिल्कुल दो कुलीन महिलाओं की तरह लग रही थी, जो दोपहर में आराम से टहल रही थी। लॉर्ड वॉस हाल ही में कैसे रहे हैं? दादाजी अच्छे हैं?
सड़कों पर टहलते हुए लिलिया ने सहजता से पूछा और एलिन ने सहजता से जवाब दिया। हालांकि एलिन का मन कुछ उलझन में था, क्योंकि वह लिलिया के इरादे समझ नहीं पा रही थी। अपनी बुद्धि से एलिन सहज ही समझ गई कि लिलिया उसे ढूंढने नहीं आई है, कोई और वजह जरूर होगी। फिर भी वह समझ नहीं पा रही थी कि वजह क्या हो सकती है। क्या हो सकता है कि रॉकी ने लिलिया को उससे मिलने भेजा हो? असंभव। अगर यह रॉकी के निर्देश होते तो वह उसे सीधे मिलने का निर्देश देता, लिलिया को इसमें शामिल करने की कोई जरूरत नहीं होती।
एलिन, क्या तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है?
हम जब एलिन सोच में थी, लिलिया के प्रश्न ने उसे चौंका दिया और उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या ऐसा है? लिलिया ने उसे संदेह से देखा। ये सिर्फ मैंने ही नहीं देखा कि आज तुम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थी, बल्कि नगर प्रभु ने भी ये देखा, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास आकर तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए कहा।
मैं सचमुच सिटी लॉर्ड की चिंता की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ।
अपना सिर हिलाते हुए एलिन ने और कुछ नहीं कहा। ये देखकर कि उसका कोई इरादा नहीं है, लिलिया अचानक हंस पड़ी, जिससे एलिन हैरान रह गई। क्या आपको पेरोलो याद है? अपनी हंसी के बाद लिलिया ने अचानक पूछा। पेरोलो, मुझे याद है। हालांकि एलिन को समझ नहीं आया कि लिलिया ने उस व्यक्ति का जिक्र क्यों किया, फिर भी उसने सिर हिलाया। बेशक उसे वह पूर्व प्रशासनिक अधिकारी याद था। पेरोलो के बारे में आप क्या सोचते हैं? गोमांस पशु। बिना कुछ सोचे समझे एलिन ने पेरोलो के बारे में अपनी राय जाहिर कर दी। उसकी नज़र में पेरोलो एक बेकार चीज थी और उसे अपने दादा के लिए ऐसे इंसान के साथ काम करना भी अपमानजनक लगा। और लिलिया ने उस उत्तर के जवाब में सिर हिलाया और कहा, पेरोलो न केवल बेकार है, बल्कि एक बदमाश भी है जो महिलाओं के आसपास खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता है। आह, जब मैं पहली बार थंडरहॉक सिटी में आया था तो पेरोलो के मन में मेरे प्रति गलत विचार थे और उसने तब तक अपने विचार नहीं बदले जब तक कि उसे सिटी लॉर्ड ने पकड़ नहीं लिया। लिलिया के शब्दों ने एलिन को चौंका दिया। वह विश्वास नहीं कर सकी कि दूसरी महिला उसके साथ ऐसी बात साझा करेगी जो शायद उसकी दोस्त भी नहीं थी। फिर भी उन्हीं शब्दों ने एलिन के दिल को छू लिया। अंदर ही अंदर एलिन को इस बात का एहसास था कि आज उसने कितना बुरा व्यवहार किया था और इसका कारण जियाशी के साथ घटी घटना थी। पिछले दिन की घटनाओं का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह पूरी तरह से डर गई। लेकिन एलिन मजबूत थी, इतनी मजबूत की जिद्दी भी। उसने कल की घटना का जिक्र किसी से नहीं किया था, अपने दादा वॉस से भी नहीं, क्योंकि वह अकेले ही सारा बोझ उठाने की सोच रही थी। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिलिया ने इस पर ध्यान दिया होगा। एलिन जितनी भी समझदार थी, उसे तुरंत समझ आ गया कि लिलिया उसे क्यों ढूंढ रही थी। एक पल बाद उसने लिलिया की तरफ देखा और होंठ काटते हुए पूछा, आखिर क्या हुआ? लिलिया ने अभी अभी कहा है कि पेरोलो के उसके प्रति बुरे इरादे थे, तो फिर क्या हुआ? इसका अंत कैसे हुआ? बाद में लिलिया ने एलिन की ओर हल्की सी मुस्कान दी और अपनी तलवार थपथपाई। खैर, जब मैं उसका सिर काटने को तैयार थी तो वह भाग गया। इस जवाब ने एलिन को हैरान कर दिया और जब तक वह वास्तविकता में वापस नहीं आई, तब तक उसने लिलिया को अपनी आंखों में नए सिरे से प्रशंसा के भाव से नहीं देखा। उसने एक दृश्य की कल्पना की जिसमें लिलिया अपनी तलवार तैयार करके सीधे भयभीत पेरोलो पर तान देती है, जिससे वह बुरी तरह डर जाता है। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। काश मैं लिलिया की गरिमा और प्रभावशाली उपस्थिति जुटा पाता और जियाशी पर अपनी तलवार तान पाता। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह बूढ़ा अब भी मेरा हाथ छूने की हिम्मत करेगा? क्या वह अब भी मेरे बारे में अनुचित विचार मन में रखेगा? दुर्भाग्यवश मैं लिलिया नहीं हूं। यह विचार आते ही एलिन आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। हालांकि अचानक उसे कुछ याद आया और वह बोल पड़ी, क्या नगर प्रभु को इस बारे में पता है?
उसको नहीं मालूम, लिलिया ने ये सुनकर अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मैंने उसे इस मामले के बारे में नहीं बताया है और अगर उसे उस समय पता भी होता तो वह कुछ नहीं कर सकता था।
लिलिया ने जब इसके बारे में सोचा तो उसे बेबसी का एहसास हुआ, ठीक वैसे ही जैसे रॉकी उसे अपना सबसे करीबी समझता था। लिलिया के दिल में रॉकी ही वो इंसान था जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। बस उस समय रॉकी वाकई। लेकिन फिर वह मुस्कुराते हुए एलिन की ओर मुड़ी, लेकिन अगर यह अभी होता तो मैं सिटी लॉर्ड को इसके बारे में बता देती।
क्यों?
क्योंकि नगर स्वामी मेरी मदद करेगा, वह मेरा साथ देगा, लिलिया ने निश्चितता के साथ कहा जब उसने एलिन की ओर देखा। उसकी बातें झूठ नहीं थी। दरअसल रॉकी पहले बहुत डरपोक हुआ करता था और यह बात लिलिया ने भी मानी थी। लेकिन अब रॉकी बदल गया था और हालांकि उसे नहीं पता था कि वह क्यों बदल गया था, पर वह पहले से कहीं बेहतर जरूर हो गया था। इसलिए यदि ऐसी ही स्थिति फिर से घटित हुई तो लिलिया निश्चित रूप से रॉकी को बताएगी और रॉकी निश्चित रूप से उसका समर्थन करेगा। एलिन उसकी बातें सुनकर दंग रह गई। वह समझ गई थी कि लिलिया का क्या मतलब था, लेकिन एक पल बाद फिर भी उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, हाँ नगर स्वामी सचमुच तुम्हारा साथ देंगे। एलिन ने लिलिया की बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन यह मत भूलिए कि बोलने वाली खुद लिलिया थी। वह रॉकी की विश्वासपात्र थी, शायद उसकी प्रेमिका भी, जबकि एलिन का रॉकी से ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। एलिन अपनी जगह से अच्छी तरह वाकिफ थी, वह जानती थी कि वह महज एक वित्त अधिकारी है जिसकी सिफारिश उसके दादा ने रॉकी के लिए की थी। नहीं, वह आपकी भी मदद करेगा। जैसे ही एलिन मन ही मन आहें भर रही थी, लिलिया ने अचानक उसका हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हो सकता है कि तुम अभी रॉकी को पूरी तरह से समझ नहीं पाई हो। चाहे पहले रही हो या अब, वह एक अच्छा इंसान है। जब तक तुम उसका साथ देती रहोगी, वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। और रॉकी भी आपके भरोसे के लायक है, भविष्य में उसकी उपलब्धियां असीम होंगी। वास्तव में ये सुनकर एलिन ने भी लिलिया को गौर से देखा, उसकी आंखें अचानक जिज्ञासा से भर गईं, क्या नगर स्वामी की ऐसी आकांक्षाएं हैं? यह आकांक्षा नहीं बल्कि एक अपरिहार्य परिणाम है। लिलिया रॉकी के भविष्य के बारे में बहुत स्पष्ट थी, जब वह मन रूंस में महारत हासिल कर लेगा। बिना किसी अतिशयोक्ति के, जब तक वह वर्तमान कठिन दौर से निकल सकता था और उसके पास पर्याप्त समय था, रॉकी का इस आकाश में एक प्रमुख व्यक्ति बनना तय था। यही कारण था कि लिलिया को रॉकी पर इतना भरोसा था। दुर्भाग्य से एलिन को इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए लिलिया की बात सुनने के बाद वह बस मुस्कुराई, शायद, लेकिन कैप्टन लिलिया, आपको पता होना चाहिए कि सिटी लॉर्ड केवल पेरोलो जैसे लोगों से ही नहीं निपटेगा। ये सब एक ही है। एलिन के संदेह से लिलिया को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मुख्यतः इसलिए कि एलिन को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रॉकी ने मन रूंस की शीर्ष तकनीक में महारत हासिल कर ली है। इसलिए उसने आगे कोई बहस नहीं की, बल्कि पूरे विश्वास के साथ कहा, चाहे पेरोलो हो या जियाशी, वे बस जोकर हैं जो बस कुछ देर के लिए ही इधर उधर घूम सकते हैं। रॉकी के सामने मौजूदा जियाशी पहले वाले पेरोलो से अलग नहीं है। जब तक लिलिया नगरपाल के भवन में लौटी और रॉकी को प्रयोगशाला में देखा, तब तक दोपहर हो चुकी थी। उसने और एलिन ने काफी देर तक बातें की और वापस आने से पहले लगभग एलिन को घर तक देखा था। तुम वापस आ गए, तुम्हें इतना समय क्यों लगा? प्रयोगशाला में रॉकी अभी भी शून्य जादुई कवच के लिए रूंस लिखने में व्यस्त था। कवच की छाती की प्लेट की परत के अंदर कम से कम 30 प्रथम स्तर के रूंस उकेरे गए थे। हालांकि जैसे ही उसने लिलिया को वापस आते देखा, उसने अपनी कलम नीचे रख दी। उन्होंने कहा, मैंने एलिन से बात की थी, इसलिए मैं थोड़ा अटक गई। ओह, क्या तुम्हें पता चला कि वह अपना खेल क्यों नहीं खेल रही है? रॉकी लिलिया से यह बात सुनने के लिए उत्सुक था, इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सका। ये जियाशी की वजह से है। पानी का घूंट पीने के बाद लिलिया ने रॉकी को सारी बात बताई। रॉकी ने ये सुनकर भौहें चढ़ाई। वह बूढ़ा आदमी वास्तव में गंदे बूढ़े आदमी की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, और मुझे अभी तक उसके साथ मौका नहीं मिला है। तुम अभी भी नए हो, इसलिए कोमल घास के बारे में सोचना बंद करो, लिलिया ने अप्रत्याशित रूप से उसकी बुदबुदाहट सुनी और रॉकी ने चौंक कर जल्दी से अपना सिर पीछे खींच लिया और जल्दी से कहा, मैं समझ गया, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। ऐसा कहने के बाद उसने जादुई ऊर्जा पेन को फिर से उठाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह रूंस लिखना जारी रखने के लिए तैयार था, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और उसने फिर से लिलिया की ओर देखा। लिलिया, ऐसा लगता है कि तुमने बहुत पहले ही एलिन और जियाशी के बीच कुछ नोटिस कर लिया था, है ना? क्या आपने कभी ऐसी ही किसी घटना का सामना किया है? रॉकी इस मुद्दे को समझने में थोड़ा धीमा था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था और उसने तुरंत महसूस कर लिया कि इसमें कुछ और भी है। हालांकि लिलिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोली, बिल्कुल नहीं।
अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हें बता देती। आज सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है? लिलिया को पलटकर जाते हुए देखकर उसके चेहरे पर अभी भी शरारती मुस्कान लिए रॉकी पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया। आज क्या हो रहा है? एक बात तो ये थी कि एलिन कुछ अजीब व्यवहार कर रही थी, लेकिन लिलिया भी कुछ अजीब क्यों लग रही थी। महिलाएं सचमुच हैरान करने वाली। अपना सिर हिलाते हुए रॉकी ने इस जटिल मुद्दे को, जिसे संत भी नहीं समझ सकते थे, अपने दिमाग के पीछे रख दिया और जादुई ऊर्जा पेन के साथ आगे बढ़ गया। ईमानदारी से कहें तो एलिन जिस स्थिति में थी उसने उसकी चिंता को दूर कर दिया था, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे बातचीत की कोई उम्मीद नहीं रखनी थी, उसे बस दूसरे तरीकों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना था। जहां तक धागे की बढ़ती कीमतों और उस बेशर्म जियाशी की बात है जो इसका इस्तेमाल उसे या एलिन को ब्लैकमेल करने के लिए करना चाहती थी, तो स्वाभाविक रूप से उसके पास इससे निपटने के तरीके थे। लेकिन पूर्व शर्त यह थी कि उसे अपने शून्य जादू कवच को सफलतापूर्वक रून उपकरण में बदलना होगा ताकि इसकी शक्ति को और बढ़ाया जा सके। इसलिए रॉकी ने जल्दी से सभी चिंताओं को एक तरफ रख दिया और कवच पर रून बनाने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया।
पलक झपकते ही दिन बीत गया और जल्द ही अगली सुबह आ गई।
अगली सुबह ओवरसियर जियाशी के आने का इंतजार किए बिना रॉकी ने आगे बढ़कर उसे और एलिन दोनों को सिटी लॉर्ड्स हॉल में बुलाया। नगरपाल, क्या आपने इस व्यापार के बारे में अपना मन बना लिया है? रॉकी को देखकर जियाशी के चेहरे पर वही विनम्र मुस्कान थी जो पिछले दो दिनों में थी। उसका व्यवहार विनम्र था और आत्मविश्वास से भरा हुआ था।
ओवरसियर जियाशी, आपने जो शर्तें प्रस्तावित की हैं।
जैसे ही जियाशी रॉकी के जवाब का इंतजार कर रही थी, रॉकी के बगल में खड़ी एलिन ने पहले बात की। लिलिया के साथ गहन बातचीत के बाद एलिन ने स्पष्ट रूप से खुद को पुनः समायोजित कर लिया था और जियाशी के साथ पुनः मुकाबले के लिए तैयार थी। लेकिन जैसे ही वह बोलने वाली थी, रॉकी ने नगर प्रभु के पद से उसे बीच में रोकते हुए हाथ से इशारा किया और जियाशी की ओर देखा। ओवरसियर जियाशी, सूद की कीमत के बारे में हम स्वीकार करते हैं, रॉकी ने जियाशी की ओर देखते हुए भावशून्यता से कहा। मेरे नाथ, ये सुनकर न केवल एलिन, जो जियाशी को चुनौती देने के लिए तैयार थी, सदमे में आ गई, बल्कि जियाशी ने भी अचानक अपना सिर उठाया और रॉकी की ओर अविश्वास से देखने लगी। मेरे नाथ, इस समय एलिन औपचारिकताओं की चिंता नहीं कर सकती थी और रॉकी के कान के पास झुककर बोली, हे प्रभु, मैंने जियाशी से निपटने का एक तरीका सोच लिया है, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। इस बार एलिन केवल खोखली बातें नहीं कर रही थी या शेखी नहीं बघार रही थी, क्योंकि लिलिया द्वारा उसे एक दिन पहले घर भेज दिए जाने के बाद उसने अपनी स्थिति को समायोजित किया और जियाशी को संभालने का एक तरीका सोचा। जियाशी की बातचीत में पीछे हटने की अनिच्छा और उसका बेशर्म आत्मविश्वास उसके इस विश्वास पर आधारित था कि थंडहॉक सिटी केवल एजोर कॉमर्स गिल्ड से ही धागा आयात कर सकती है। हालांकि अगर गिल्ड धागे की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ाने पर अड़ा रहा तो थंडहॉक सिटी अन्य चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से भी उतनी ही ऊंची कीमतों पर धागा खरीद सकता था। इस दृष्टिकोण से थंडहॉक सिटी को लाभ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें यार्न प्राप्त करने के लिए अभी भी अधिक धन खर्च करना होगा, लेकिन एजोर कॉमर्स गिल्ड के लिए इसका मतलब थंडहॉक सिटी में एक ग्राहक को खोना होगा, और जियाशी के लिए, जो इन वार्ताओं के लिए आए थे, यह उनकी असफलता का प्रतीक होगा। अगर उनकी वजह से थंडहॉक सिटी का दीर्घकालिक और स्थिर ग्राहक के रूप में नुकसान हुआ तो क्या इसे असफलता नहीं माना जाएगा?
ये वास्तव में वो सौदेबाजी चिप थी जिसकी थंडहॉक सिटी को जरूरत थी,
और एक बार जब उसके हाथ में ये चिप आ गई तो एलिन को यकीन हो गया कि वह धागे की कीमतें जरूर कम कर सकती है। ज्यादा वादा न करते हुए भी बढ़ी हुई कीमत को 20% के अंदर लाना बिल्कुल मुमकिन था। बस उसे उम्मीद नहीं थी कि रॉकी अचानक दूसरे पक्ष के प्रस्ताव पर राजी हो जाएगा और उसे आगे बातचीत करने की इजाजत भी नहीं देगा। यह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था, इसलिए वह रॉकी से फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी। लेकिन उसकी फुसफुसाहट के जवाब में रॉकी ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए एलिन की ओर अपना सिर हिलाया और फिर अपनी नजरें जियाशी की ओर घुमा ली। ओवरसियर जियाशी, हम आपके द्वारा बताई गई सूद की कीमत पर ही चलेंगे। कृपया अपने व्यापारी जहाजों से माल जल्द से जल्द उतार लें।
हाँ, रॉकी की ओर देखते हुए जियाशी ने जल्दी से पुष्टि की।
हालांकि उस समय उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। तार्किक रूप से यही नतीजा निकला जो वह चाहता था। हालांकि वह एलिन को पाने में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन आखिरकार वह एक व्यापारी था। सौदा सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद परिस्थितियां चाहे जो भी हों, उसे खुशी होनी चाहिए। लेकिन जियाशी खुद को खुश महसूस नहीं कर सका, क्योंकि जब उसकी नजर रॉकी पर पड़ी तो उसके दिल में एक अस्पष्ट पीड़ा का अनुभव हुआ। उसकी नजरों के सामने रॉकी सिटी लॉर्ड की जगह पर मजबूती से बैठा था और भावशून्य चेहरे से उसे नीचे देख रहा था। इससे जियाशी बेहद असहज हो गई। वह पहले भी बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना कर चुका था और कुछ मध्यम आकार के स्काई सिटीज के सिटी लॉर्ड से भी व्यक्तिगत रूप से निपट चुका था, ऐसे व्यक्ति जो इन आसमानों के महारथी थे। रॉकी ने अब उसे जो एहसास दिलाया वह बिल्कुल उन दिग्गजों जैसा ही था।
यही वजह थी कि जियाशी खुश नहीं हो पा रहा था। उसने तो यहां तक सोचा सोचा कि शायद इस मामले में वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया है।
यद्यपि बातचीत उसके पक्ष में समाप्त हुई, तो क्या उसने संभवतः अपने से पहले नगर के स्वामी को नाराज कर दिया था? मैं तो बस एक टूटे फूटे छोटे शहर का स्वामी हूं, मुझे किस बात का डर है? ये विचार आते ही जियाशी ने जल्दी से खुद को सांत्वना दी। रॉकी तो एक छोटे से आकाश नगर का स्वामी था जो अपनी रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था। डरने की क्या बात थी? नगर स्वामी को अगर ये बात नाराजगी से याद भी आती तो वो क्या कर सकता था?
इसलिए आत्मा आश्वस्ति के एक क्षण के बाद जियाशी ने रॉकी को प्रणाम किया और मालवाहक जहाजों को उतारने की व्यवस्था करने के लिए सिटी लॉर्ड्स हॉल से बाहर निकल गई।
उसके चले जाने के बाद एलिन, जो ये बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि रॉकी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, अब खुद को रोक नहीं सकी और अंततः बोल पड़ी।
महाराज, आपने उसकी मांगे क्यों मान ली? मैं उसके साथ बातचीत जारी रख सकता था।
एलिन पहले तो रॉकी के फैसले से बहुत नाराज थी। उसे यह फैसला न सिर्फ जल्दबाजी भरा लगा बल्कि बेहद नासमझी भरा भी लगा। हालांकि जब उसे पिछले कुछ दिनों में अपने प्रदर्शन की याद आई तो उसका आत्मविश्वास कम हो गया।
उसे ये भी संदेह था कि रॉकी की अधीरता शायद उसके प्रति खोई हुई आशा के कारण हो सकती है। हालांकि रॉकी के अगले शब्दों ने एलिन को स्तब्ध कर दिया।
रॉकी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, एलिन, मुझे पता है कि तुम कोई रास्ता निकाल सकती थी, लेकिन जियाशी जैसे व्यक्ति के लिए मेरे वित्त अधिकारी को इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बस रहने दो। अपनी उदासीनता व्यक्त करने के बाद उन्होंने विषय बदल दिया और पूछा, जादुई पत्थरों की व्यवस्था कैसी चल रही है?
व्यापारियों से पहले ही संपर्क किया जा चुका है और वे अगले कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे।
वस्त्रों की बिक्री पर भी विशेष ध्यान दें। समझा। एक और बात, एलिन को कुछ निर्देश देने के बाद रॉकी ने अचानक विषय बदल दिया। मैं थंडरहॉक सिटी को इटर्नल सिटी भेजने की योजना बना रहा हूँ, इसलिए खुद को तैयार करो, जब समय आएगा तो मैं तुम पर भरोसा करूंगा। वह शाश्वत शहर, रॉकी द्वारा इटर्नल सिटी का उल्लेख सुनकर एलिन स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह उसके इरादों को समझ नहीं पाए। रॉकी जिस शाश्वत शहर का जिक्र कर रहा था वह भी एक आकाशीय शहर था, लेकिन कोई साधारण आकाशीय शहर नहीं। यह आकाश के सबसे बड़े शहरों में से एक था जिसे ईश्वरीय शहर के रूप में जाना जाता था।
स्काई सिटीज के पदानुक्रम को कई वर्ष पहले ही व्यापक रूप से मान्यता मिल चुकी थी।
थंडहॉक सिटी जैसे 10,000 से कम आबादी वाले सभी शहर छोटे स्काई सिटीज की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जब आबादी 10,000 से ज्यादा हो जाती है तभी उन्हें मध्यम आकार के स्काई सिटीज की श्रेणी में रखा जाता है। मध्यम आकार के स्काई सिटीज के लिए जनसंख्या सीमा 1,00,000 है। एक बार जब जनसंख्या 1,00,000 से अधिक हो जाती है तो वह एक बड़ा स्काई सिटी बन जाता है। कैंगलांग सिटी, जहां एज्योर कॉमर्स गिल्ड का मुख्यालय स्थित है, की जनसंख्या 1,00,000 से थोड़ी ही अधिक है, जो इसे एक बड़ा स्काई सिटी बनाती है।
लेकिन विशाल आकाशीय शहरों के ऊपर एक और स्तर है, दिव्य शहर।
तथाकथित दिव्य शहर वे अति बड़े शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10,00,000 से अधिक है। पूरे आकाश में केवल 10 दिव्य नगर हैं, जिन्हें शीर्ष 10 दिव्य नगर कहा जाता है। ये 10 देव नगर आकाश के असली दैत्य हैं, और जिन शक्तियों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं वे आकाश के सबसे कुलीन धनिक हैं, जो आकाश को आपस में बांटकर उस पर शासन करते हैं। शीर्ष 10 दिव्य शहरों में भी रॉकी द्वारा उल्लिखित शाश्वत शहर सबसे विशेष था, क्योंकि यह एक तटस्थ शहर है जो सभी के लिए खुला है, किसी विशेष शक्ति से संबंधित नहीं है, और पूरे आकाश में सबसे बड़ा व्यापार केंद्र भी है। एलिन को जिस बात ने हैरान किया वह ये थी, इटर्नल सिटी एक तटस्थ शहर है जहां थंडहॉक सिटी निश्चित रूप से जा सकता है, लेकिन किस लिए? पूरे आकाश में सबसे बड़े व्यापारिक शहर होने के नाते इटर्नल सिटी जाने वाले लोग या तो व्यापार के लिए जाते हैं या फिर मौज मस्ती के लिए, लेकिन इनमें से किसी का भी रॉकी या थंडहॉक सिटी से कोई लेना देना नहीं है। एलिन बहुत कोशिश करने के बाद भी यह नहीं समझ पाई कि रॉकी अनंत शहर क्यों जाना चाहता था, इसलिए उसने पूछा,
मेरे प्रभु, आप अनंत शहर जाना चाहते हैं किस उद्देश्य से? उन्होंने कहा, बेशक पैसा कमाने के लिए। रॉकी ने एलिन की ओर देखकर हंसते हुए कहा, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा।
आपने वास्तव में क्या योजना बनाई है? जब एलिन गहरी उलझन में चली गई तो लिलिया रॉकी से पूछने से खुद को नहीं रोक सकी।
अब वह भी इस बात से थोड़ा हैरान थी कि रॉकी के दिमाग में क्या चल रहा था, और वह भी इस बात को लेकर उत्सुक थी कि वह इटर्नल सिटी क्यों जाना चाहता था।
चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, रॉकी ने उसे विश्वास भरी मुस्कान दी और फिर पूछा, लिलिया, तुम्हारा अनुमान है कि थंडहॉक सिटी को इटर्नल सिटी तक उड़ान भरने में कितना समय लगेगा? स्काई सिटी और जमीन पर स्थित शहरों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी हवा में उड़ने की क्षमता है, जिसका अर्थ है कि वे जहां चाहें वहां जा सकते हैं, भले ही धीरे धीरे। इसलिए जब रॉकी ने इटर्नल सिटी जाने का उल्लेख किया तो वह एक स्काईशिप लेने का सुझाव नहीं दे रहा था, बल्कि पूरे थंडहॉक सिटी को वहां उड़ाने का सुझाव दे रहा था। खैर, कम से कम 1 महीना, मुझे लगता है इटर्नल सिटी शायद ही कभी आगे बढ़ता है, और हमारी वर्तमान स्थिति से ये बहुत दूर नहीं होना चाहिए। ये जानकर अच्छा लगा। रॉकी ने समय का अनुमान सुनकर सिर हिलाया और फिर सिटी लॉर्ड्स हॉल से बाहर निकलकर हमेशा की तरह अपने शोध कक्ष में चला गया। एक महीना न तो बहुत लंबा था न ही बहुत छोटा, लेकिन उसे इस अवधि के भीतर शून्य जादू कवच का रेनिफिकेशन पूरा करना था, अन्यथा निम्नलिखित मामले परेशानी भरे होंगे। इसलिए अपने शोध कक्ष में लौटने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी जादुई ऊर्जा कलम उठाए और शून्य जादुई कवच के वक्षपट पर रून बनाना जारी रखा। कई दिनों के प्रयास से उन्होंने ब्रेस्टप्लेट पर लगभग 100 स्तर के रून सफलतापूर्वक बना लिए थे, लेकिन फिर भी यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। शून्य जादुई कवच में पहले से ही अत्यधिक रक्षात्मक शक्ति थी और उस आधार पर उसे रूनों से और बढ़ाने के लिए मन समर्थन प्रदान करने हेतु भारी मात्रा में रूनों की आवश्यकता थी। इसलिए रॉकी के रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार उसे वास्तव में प्रभाव डालने के लिए ब्रेस्टप्लेट पर 200 से ज्यादा रून खींचने पड़े। यह एक बहुत बड़ी परियोजना थी जिसमें न केवल जादुई शक्ति की खपत हुई बल्कि उसकी ऊर्जा भी खत्म हो गई, और यह कोई ऐसा कार्य नहीं था जिसे आसानी से पूरा किया जा सके।
परिणामस्वरूप उसके बाद के दिनों में उन्होंने कभी भी अपने शोध कक्ष से बाहर कदम नहीं रखा, कभी कभी तो उन्होंने वहीं सोना भी पसंद किया। पूरे 3 दिनों के बाद वो अंततः ब्रेस्टप्लेट पर कुल 200 मन रून बनाने में कामयाब रहा। ओह, यह अंततः पूरा हो गया। दिन रात किए गए अपने काम को देखकर रॉकी ने राहत की लंबी सांस ली और बिना रुके तुरंत रिसर्च टेबल पर रखे शून्य जादू कवच के कलाई गार्ड की ओर बढ़ गया। हाँ, केवल ब्रेस्टप्लेट पर रून्स बनाना उसके लिए पर्याप्त नहीं था, वह संपूर्ण शून्य जादू कवच पर रून्स बनाना चाहता था ताकि व्यापक वृद्धि हो सके। उन्होंने इसे संशोधन के बजाय संवर्धन कहा, क्योंकि अब वे जो कुछ भी कर रहे थे उससे शून्य जादू कवच में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ, ये केवल रूनों का उपयोग करके संवर्धन था।
सच कहें तो रून्स का उनका प्रयोग वास्तव में एक अपर्याप्त प्रयोग था, क्योंकि मन रून्स जो क्षमताएं और परिवर्तन ला सकते थे वे साधारण वृद्धि से कहीं अधिक थे। लेकिन समस्या ये थी कि वर्तमान रॉकी के पास रून्स की वास्तविक क्षमता को सामने लाने के लिए वास्तव में परिस्थितियों और क्षमता का अभाव था, और शून्य जादू कवच को बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करने की यह विधि पहले से ही उसकी सीमा थी। हालांकि भले ही उनकी विधि ने मन रून्स को गलत कर दिया हो, अगर यह सफल हो जाए तो भी इसे एक अग्रणी कार्य माना जाएगा। समय बीतता गया दिन ब दिन, और पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। इस दौरान रॉकी लगभग हर दिन अपने शोध कक्ष में बिताता था और उसके पास जो शून्य जादुई कवच था वह धीरे धीरे एक के बाद एक रूनों से भरता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया रॉकी की रून्स खींचने की गति में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई। यह आंशिक रूप से उसकी बढ़ती हुई निपुण तकनीक के कारण था और आंशिक रूप से इसलिए कि ब्रेस्टप्लेट के अलावा शून्य जादुई कवच के अन्य हिस्से छोटे होते जा रहे थे, इसलिए कम रून समा पाते थे। जब रॉकी पूरे मन से शून्य जादुई कवच को निखार रहा था, थंडरहॉक शहर में 2 घटनाएं घटी। पहली, गोल्डन पर्पल फ्लावर कॉमर्स चैम्बर से लोगों का आगमन। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, केवल 2 चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे जिनके थंडरहॉक सिटी के साथ व्यापारिक संबंध थे। एजोर कॉमर्स गिल्ड शहर को धागा और भोजन बेचने के लिए जिम्मेदार था, जबकि थंडरहॉक सिटी द्वारा उत्पादित कपड़ा गोल्डन पर्पल फ्लावर कॉमर्स चैम्बर को बेचा जाता था। कैंगलांग सिटी द्वारा समर्थित एजोर कॉमर्स गिल्ड की तुलना में कपड़ा खरीदने वाला गोल्डन पर्पल फ्लावर कॉमर्स चैम्बर बहुत छोटा था। चैम्बर का मुख्यालय एक मध्यम आकार के स्काई सिटी में था और यह औसत क्षमता वाला एक मानक संगठन था, अन्यथा ये थंडरहॉक सिटी से सस्ते दामों पर कपड़ा खरीदने नहीं आता। सौभाग्य से अपने छोटे आकार के बावजूद गोल्डन पर्पल फ्लावर कॉमर्स चैम्बर की अच्छी प्रतिष्ठा थी, इसलिए ये लेन देन सुचारू रूप से हो गया और थंडरहॉक सिटी बिना किसी परेशानी के अपना सारा कपड़ा बेचने में कामयाब रही। इस अवधि के दौरान घटित दूसरी घटना में भी एक लेन देन शामिल था। ये जादुई पत्थर के व्यापारियों का आगमन था जिनसे एलिन ने संपर्क किया था। चूंकि रॉकी के पास केवल कुछ ही मध्यम जादुई पत्थर थे, इसलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसमें विशेष उपस्थिति दर्ज नहीं कराई और केवल कुछ ही व्यापारी थंडरहॉक सिटी में आए। हालांकि एजोर कॉमर्स गिल्ड के साथ पिछली असफल बातचीत के कारण एलिन को बहुत ग्लानि हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी अपनी अक्षमता ही इस असफलता का कारण है। इसलिए कुछ मैजिक स्टोन व्यापारियों के साथ काम करते समय उसने पूरी लगन से काम किया। कौन जानता है कि उसने कौन सी विधि अपनाई, लेकिन जब एलिन ने रॉकी द्वारा सौंपे गए सभी जादुई पत्थरों को बेच दिया तो उसे वास्तव में पूरे 3000 स्वर्ण मुद्राओं की कीमत मिली। ये कीमत रॉकी की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। वह भले ही कोई व्यापारी न हो, न ही वह बाजार से परिचित हो, लेकिन फिर भी उसे एक मध्यम जादुई पत्थर की अनुमानित कीमत के बारे में कुछ समझ थी। एक पूरी तरह से चार्ज किया गया मध्यम जादुई पत्थर आमतौर पर 500 स्वर्ण सिक्कों के आसपास का होता है, और चूंकि रॉकी को शुरू में अनुसंधान संस्थान से केवल 4 मध्यम जादुई पत्थर मिले थे, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि ये 4 जादुई पत्थर अधिकतम 2000 स्वर्ण सिक्कों में बिक सकते हैं। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एलिन इतनी कमाल की होगी कि उसने अंतिम कीमत में 1000 सोने के सिक्के बढ़ा दिए। ये 50% की बढ़ोतरी के बराबर था। एलिन, तुमने ये कैसे किया? जब एलिन ने रॉकी को परिणाम बताया तो वह भी, जो ट्रेडिंग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था, पूछे बिना नहीं रह सका। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने तो दूसरे पक्ष की मानसिकता का फायदा उठाया। हमेशा जिज्ञासु रहने वाले रॉकी को देखकर पिछले कुछ दिनों से एलिन के सीने पर जो निराशा हावी हो रही थी वह अंततः काफी हद तक कम हो गई। एज्योर कॉमर्स गिल्ड के साथ उसकी पिछली बातचीत ने उसे कई रातों की नींद हराम कर दी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी बुरी तरह हार जाएगी। हालांकि रॉकी ने इस मामले में उससे कोई शिकायत नहीं की थी, फिर भी एलिन खुद इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी दृढ़ता और उसका अभिमान ऐसी करारी हार को स्वीकार नहीं कर सके, इसलिए वह जादुई पत्थरों के व्यापार में बहुत आगे बढ़ गई तथा रॉकी के सामने अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ थी। ऐसा नहीं था कि एलिन रॉकी की राय को बहुत अधिक महत्व देती थी, बल्कि वह किसी को भी उसे नीची नजर से देखने की अनुमति नहीं देती थी। हे, ऐसा लगता है कि लॉर्ड बॉस की सिफारिश वास्तव में सही थी, रॉकी ने कहा। एलिन का आत्मविश्वास से भरा व्यवहार देखकर, जो अब पहले जैसी गौरवान्वित और कुलीन युवती बन गई थी, रॉकी आश्वस्त हो गया। सौदे की बारीकियों और एलिन द्वारा अपनाए गए तरीकों की उसे वास्तव में परवाह नहीं थी। वैसे शहर में अब हमारे पास कितना पैसा है? शहर में हाल ही में हुई कपड़ों की बिक्री और अब जादुई पत्थरों की बिक्री के बारे में सोचकर रॉकी को लगा कि अब तक तो उसके पास काफी पैसा हो जाना चाहिए था, है ना? महाराज, शहर में लगभग 67,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। वित्त अधिकारी एलिन को स्वाभाविक रूप से थंडहॉक सिटी के वित्तीय विवरण की अच्छी जानकारी थी और इसलिए उसने मौके पर ही उन्हें सटीक आंकड़ा बता दिया। हालांकि ये संख्या बताने के बाद पहले से कुछ हद तक उत्साहित एलिन की मुस्कान गायब हो गई और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मेरे प्रभु, सर्दी आ रही है, आपको अनाज खरीदने पर विचार करना चाहिए।
एजो कॉमर्स गिल्ड के साथ हमारे पिछले व्यापार से यह स्पष्ट हो गया था कि वे कैंगलांग सिटी युद्ध का फायदा उठाकर अपनी कीमतें बढ़ाना चाहते हैं और परिणामस्वरूप सूत की कीमत बढ़ गई है। कुछ ही दिनों में वे हमें जो अनाज बेचते हैं उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी और यह वृद्धि छोटी नहीं होगी। एक गिरता हुआ पत्ता पतझड़ के आगमन की भविष्यवाणी करता है वाली कहावत एजो कॉमर्स गिल्ड द्वारा सूत की कीमतों में की गई वृद्धि से स्पष्ट हो गई। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वे हमें जो अनाज बेचेंगे उसकी कीमत भी मूल कीमत पर नहीं होगी, उसमें भी वृद्धि होना तय था।
इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि रॉकी ने पहले ही सूत की कीमत आसानी से स्वीकार कर ली थी, जिससे निस्संदेह एजोर कॉमर्स गिल्ड को संकेत मिल गया था कि थंडहॉक सिटी के पास पैसा है। इसलिए न केवल वे अनाज की कीमत बढ़ाएंगे बल्कि यह बढ़ोतरी भी कम नहीं होगी। वित्त अधिकारी होने के नाते एलिन इस मामले को किसी से भी बेहतर समझती थी, इसलिए उसे रॉकी को याद दिलाना पड़ा, उसे आगाह करना पड़ा कि वह ये न सोचे कि कुछ हजार सोने के सिक्कों से थंडहॉक शहर सुरक्षित हो गया है। जब जरूरत पड़ी तो शायद वे 60 या 70 हजार सोने के सिक्के भी काफी न हों। मैं जानता हूँ, मैं ऐसी बात कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मेरे दिमाग में एक योजना है और जब हम इटर्नल सिटी पहुंचेंगे तो तुम देखोगे। हालांकि एलिन की चेतावनी को सुनकर रॉकी ने उसे बेपरवाही से अनसुना कर दिया और एलिन के आगे बोलने का इंतजार किए बिना ही उसे भगा दिया, जिससे वह काफी घबरा गई। उसे तो ये भी लगा कि रॉकी पैसे की वजह से घमंडी हो गया है। ऐसा सिर्फ उसने ही नहीं सोचा था, बल्कि लिलिया भी, जो रॉकी के बगल में थी, घटना के बाद भौंचक्की रह गई और खुद को रोक न सकी और रॉकी से कहा, तुम्हें एलिन को अपनी बात पूरी करने देनी चाहिए थी, वह इस समय सचमुच तुम्हारा ध्यान रख रही थी। मुझे पता है, रॉकी ने जवाब दिया। लिलिया के सिकुड़े हुए माथे पर नजर डालने के बाद रॉकी मंद मंद मुस्कुराया और फिर अप्रत्याशित रूप से एक प्रस्ताव रखा। लिलिया, क्या तुम मेरे साथ मार्शल तकनीक का अभ्यास करने में रुचि रखोगी? तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? रॉकी की बातों से लिलिया को शक हुआ कि कहीं उसके कानों में तो कोई गड़बड़ नहीं है। वे साफ तौर पर थंडहॉक सिटी से जुड़े अहम मुद्दों पर बात कर रहे थे। बातचीत अचानक इस मुद्दे पर कैसे आ गई? क्या आपने नहीं कहा था कि मुझे और अधिक अभ्यास करना चाहिए? मैं आज मुक्त हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपका मार्गदर्शन लूँ। जोरदार हंसी के साथ रॉकी ने लिलिया को जवाब देने का कोई समय नहीं दिया और उसे सिटी लॉर्ड्स हॉल से दूर खींच लिया और सीधे सिटी लॉर्ड्स हवेली के पीछे बगीचे में ले गया। नगर स्वामी के भवन के पीछे तथाकथित बगीचा दरअसल एक अपेक्षाकृत बड़ा घास का मैदान था। तार्किक रूप से रॉकी यहीं अपनी युद्ध कौशल की तकनीकों का अभ्यास करता था, लेकिन दूसरी दुनिया से आने के बाद से वह वहां नहीं गया था। रॉकी, क्या तुम सचमुच मेरे साथ मार्शल तकनीक का अभ्यास करना चाहते हो? बगीचे में जबरदस्ती घसीटे जाने के बाद भी लिलिया को अब भी कुछ अविश्वास हो रहा था। उसने रॉकी से मार्शल आर्ट और जादू पर ज्यादा समय बिताने का आग्रह जरूर किया था, लेकिन रॉकी ने उसकी एक न सुनी थी। आज ऐसा क्या अलग था कि वह इतना सक्रिय था? बिल्कुल, लिलिया के अविश्वास का सामना करते हुए रॉकी बहुत आश्वस्त दिखाई दिया। स्पष्ट रूप से वह मजाक नहीं कर रहा था। लेकिन फिर उन्होंने जल्दी से कहा, हालांकि आप मुझसे स्तर में बहुत अधिक हैं, इसलिए मुझे शून्य जादू कवच पहनने की आवश्यकता है। शून्य जादुई कवच। आपने पहले ही शून्य जादू कवच को सफलतापूर्वक संशोधित कर लिया है। लिलिया बहुत बुद्धिमान थी और जानती थी कि रॉकी रून्स का उपयोग करके शून्य जादू कवच को संशोधित करने पर काम कर रहा था, इसलिए जब उसने इसका उल्लेख किया तो उसे तुरंत यह बात याद आ गई। यह कोई संशोधन नहीं है, केवल एक संवर्धन है। लिलिया के शब्दों ने रॉकी को गर्व से भरी मुस्कान दिखाने से रोक नहीं पाया, क्योंकि जैसा कि लिलिया ने कहा था, कई दिनों के प्रयास के बाद वह अंततः रूनों का उपयोग करके शून्य जादू कवच को बढ़ाने में सफल हो गया था। यही कारण है कि उसने अपना हाथ आजमाने के लिए लिलिया की तलाश की थी और ये देखने के लिए कि उन्नत शून्य जादू कवच किस प्रकार की शक्ति को मुक्त कर सकता है। तुमने सचमुच ऐसा किया। रॉकी का गर्वित चेहरा देखकर लिलिया भी बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि चाहे वह वृद्धि हो या रून्स का उपयोग करके संशोधन, यह एक अग्रणी कार्य था। इस प्रकार लिलिया भी उत्साहित हो गई और उन्नत शून्य जादू कवच में बहुत रुचि रखने लगी। इसके बाद रॉकी अपने कमरे में लौटा, शून्य जादुई कवच पहना और दरवाजे से बाहर नहीं निकला। इसके बजाय वह सीधे खिड़की से बाहर बगीचे में उड़ गया। वास्तव में उसका कुछ दिखावटी सा प्रवेश देखकर लिलिया ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि कभी कभी रॉकी सचमुच एक ऐसे बच्चे जैसा लगता है जो कभी बड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन उसने जल्दी से अपना ध्यान शून्य जादुई कवच की ओर लगाया, ये देखने के लिए उत्सुक कि यह उन्नत कवच कैसा दिखता है। दुर्भाग्य से जब उसने रॉकी को देखा तो पाया कि उसका शून्य जादुई कवच अब भी वैसा ही दिख रहा था। हालांकि वह अब भी प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन उसके आकार में कोई बदलाव नहीं आया था और वहां एक रून भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि रॉकी ने ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए विशेष रूप से शून्य जादू कवच की परत के अंदर रूनों को खींचा था। इस प्रकार कवच में वास्तविक परिवर्तन आंतरिक था। स्टाइलिश एंट्री के बाद रॉकी ने आत्मविश्वास से लिलिया की ओर देखा और कहा, क्या मुझे तुम्हारे साथ नरमी बरतनी चाहिए? मुझ पर रहम करो। इस टिप्पणी पर लिलिया जोर से हंस पड़ी। शून्य जादुई कवच भले ही मजबूत हो, लेकिन उसकी प्रभावशीलता काफी हद तक उसे पहनने वाले पर निर्भर करती है। रॉकी की सीमित क्षमताओं के कारण शून्य जादुई कवच में भी लिलिया चिंतित नहीं थी। इसलिए बिना कुछ और कहे लिलिया ने अपनी कमर से तलवार निकाली और उसकी नोक रॉकी की ओर तान दी। आप सावधान रहें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजे, वह अचानक आगे की ओर झपटी, पलक झपकते ही उनके बीच की दूरी कम कर दी और फिर अपनी तलवार उसकी छाती की ओर घुमा दी। उन्नत शून्य जादू कवच की शक्ति के बारे में उत्सुक लिलिया ने शुरू से ही पूरी ताकत लगा दी, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी, क्योंकि वह जानती थी कि कवच की सुरक्षा के साथ रॉकी को चोट लगने की संभावना नहीं थी, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। ये कहना जरूरी है कि लिलिया सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। उसके पास न सिर्फ एक तृतीय स्तरीय योद्धा जैसी ताकत थी, बल्कि उसने युद्ध के मैदान में हुए नरसंहार का भी प्रत्यक्ष अनुभव किया था, जो उसे एक सच्ची योद्धा होने के योग्य बनाता था। इसलिए उन्नत शून्य जादुई कवच पहने रॉकी के सामने भी, जिसने उसे चतुर्थ स्तरीय योद्धा के स्तर तक पहुंचा दिया था, वह जरा भी नहीं डरी। पलक झपकते ही रॉकी लिलिया की हरकतों को पूरी तरह समझ भी नहीं पाया था कि उसे अपनी छाती पर तलवार का झटका महसूस हुआ। तभी तलवार के सीधे उसकी छाती पर लगने की आवाज सुनाई दी। हालांकि उसे चोट नहीं लगी, फिर भी उस जबरदस्त ताकत ने उसे कई कदम पीछे धकेल दिया। यह उन्नत शून्य जादू कवच है। अप्रत्याशित रूप से एक ही वार से लिलिया ने रॉकी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह रुक गई, उसे इस नतीजे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्नत शून्य जादुई कवच पहले जैसा ही लग रहा था। रॉकी भी इस नतीजे से उतना ही हैरान था। 4-5 कदम पीछे हटने के बाद खुद को संभाला और एकदम हैरान रह गया। उसने न तो लिलिया के इतनी तेजी से वार करने की उम्मीद की थी, न ही उसने इतनी जबरदस्त ताकत का अंदाजा लगाया था। और जैसे ही वह मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ, लिलिया पुनः उसके सामने प्रकट हुई। इंतजार। लिलिया को पुनः अपनी ओर आते देख रॉकी कुछ बोलने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि लिलिया ने उसके सामने से ओझल होने से पहले केवल हमला करने का नाटक किया था। जब तक उसने लिलिया को दूसरी जगह ले जाया, तब तक उसे पहले ही भयंकर रूप से लातें लग चुकी थी, क्योंकि उसने ऐसा करके लिलिया को उसके पीछे आने और उसका संतुलन बिगाड़ने में मदद की थी। एक सेकंड रुको। कुछ ही दौर की मुठभेड़ में रॉकी पूरी तरह से भ्रमित हो गया और उसने जल्दबाजी में रुकने की कोशिश की। बदकिस्मती से लिलिया ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही वह उस पर दोबारा झपटी, उसका चेहरा धुंधला गया और उसे हवा में उछलकर ऊपर उड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लिलिया, रुको, एक मिनट रुको। हवा में उड़कर रॉकी ने बोलना जारी रखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि लिलिया जमीन पर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा रही है। इस इशारे से रॉकी की त्वचा तुरंत सिहर उठी, उसके बाद एक अशुभ विस्मयादिबोधक उद्गार निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद लिलिया ने फुसफुसाती आवाजों के साथ उसकी ओर 3 आग के गोले फेंके। लिलिया न केवल तीसरे स्तर की योद्धा थी, बल्कि दूसरे स्तर की जादूगरनी भी थी। अपनी ओर उड़ते 3 आग के गोलों का सामना करते हुए रॉकी जल्दी से चकमा देने लगा। जैसे ही वह मुश्किल से उनसे बच पाया, उसने अपनी आंख के कोने से जमीन से एक आकृति को उछलते हुए देखा और फिर उसे लगा जैसे किसी ने उसे जोर से लात मारी हो और वह जमीन की ओर धराशायी हो गया हो। एक धमाके के साथ रॉकी एक तोप के गोले की तरह जमीन पर गिर पड़ा, जिससे घास में एक बड़ा गड्ढा बन गया। एक क्षण के लिए धूल उड़ गई, जिससे वह स्थान पूरी तरह ढक गया, जिससे अंदर की स्थिति को देख पाना असंभव हो गया। कुछ देर बाद ही धूल जमी और रॉकी का अस्त व्यस्त शरीर सामने आया। उस समय रॉकी पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। उसका शून्य जादू कवच कीचड़ में सना हुआ था। वह एक सैनिक की तरह लग रहा था जो अभी अभी एक हारी हुई लड़ाई से भागकर आया हो। उसकी अस्त व्यस्त हालत देखकर लिलिया ने भी अजीब तरह से अपना मुंह खोला और उसे आखिरकार यह कहने में काफी समय लगा, रॉकी, क्या ये तुम्हारा उन्नत शून्य जादुई कवच है? ऐसा लगता है ये पहले से कुछ अलग नहीं है। हालांकि लिलिया रॉकी का मनोबल गिराना नहीं चाहती थी, फिर भी वह अपनी सच्ची बात कहने से खुद को नहीं रोक पाई। उसे शून्य जादुई कवच में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। रॉकी को बिना प्रतिरोध के हराना बिल्कुल अपेक्षित परिणाम था, क्योंकि रॉकी के पास वास्तविक युद्ध अनुभव का अभाव था और उसकी बुनियादी बातें भी औसत दर्जे की थीं। इसलिए शून्य जादुई कवच के साथ भी वह लिलिया से नहीं जीत सका, ये बात दोनों ही जानते थे। लिलिया ने शुरू में सोचा था कि रूंस द्वारा बढ़ाए जाने के बाद शून्य जादू कवच रॉकी की क्षमताओं को बहुत बढ़ा देगा, कम से कम उसे उसके खिलाफ इतना अपर्याप्त नहीं बनाएगा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे शून्य जादू कवच की वृद्धि ने कुछ भी नहीं किया। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रॉकी जमीन से रेंगते हुए ऊपर आया और दहाड़ने लगा, कोई अंतर नहीं, इसका क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें इतनी जल्दी चलने को किसने कहा? मैंने तो अभी तक रून का मन भी सक्रिय नहीं किया है। अब रॉकी गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि लिलिया ने बहुत जल्दी कर दी थी। उसके पास रून के मन को सक्रिय करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मैं बहुत नाराज हूँ, तुम हमला करने से पहले मेरे तैयार होने तक इंतजार क्यों नहीं कर सके? अस्त व्यस्त अवस्था में जमीन से ऊपर चढ़ने के बाद रॉकी लिलिया पर दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। ये पता चला कि लिलिया ने अभी बहुत जल्दी काम किया था और रॉकी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह अपने कवच पर रूनों को सक्रिय करने से पहले ही चपटा हो गया था। इस परिणाम से रॉकी लगभग मरणासन हो गया था। लिलिया को चुनौती देने का कारण आंशिक रूप से यह परीक्षण करना था कि उन्नत शून्य जादू कवच अपने उन्नयन के बाद कितना शक्तिशाली था। वह जानता था कि लिलिया थंडहॉक शहर में सर्वोच्च रैंक वाली और सबसे अनुभवी योद्धा थी, और केवल उससे लड़कर ही वह उन्नत शून्य जादू कवच की ताकत का सही मूल्यांकन कर सकता था। दूसरी ओर रॉकी वास्तव में लिलिया के सामने दिखावा करना चाहता था। रॉकी की नज़र में लिलिया हर तरह से परफेक्ट थी। अगर उसे कोई कमी बतानी ही थी तो वो ये कि वो बहुत ज्यादा हावी थी। उसका व्यक्तित्व न सिर्फ दृढ़ था बल्कि उसकी ताकत भी जबरदस्त थी। हर समय उसके साथ इतनी मजबूत औरत का होना उसके अहंकार को लगभग हमेशा ठेस पहुंचाता था, इसलिए वो लिलिया के सामने खुद को साबित करना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे शून्य जादुई कवच ही क्यों न पहनना पड़े। लेकिन परिणाम शुरू से ही पूरी तरह से पराजय वाला निकला, जो रॉकी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। यह उसकी बातें सुनकर लिलिया के चेहरे पर अजीब सी शर्मिंदगी के भाव उभरे। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। रॉकी को देखकर, जिसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस बार हमला करने से पहले मेरे तैयार होने तक प्रतीक्षा करो, रूठकर बुदबुदाने के बाद रॉकी ने खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके शून्य जादुई कवच पर मौजूद रूनों से जुड़ना शुरू किया, जिससे उनके भीतर मौजूद मान सक्रिय हो गया और कवच को सही मायने में मजबूती मिली। पल पल समय बीतता गया। इस दौरान रॉकी को परेशान करने के डर से लिलिया एक इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और उसके सामने ही खड़ी रही। थोड़ी देर बाद वह खुद को रोक नहीं सकी और पूछा, क्या तुम तैयार हो? तैयार, इस बार रॉकी ने आखिरकार अपना सिर हिला दिया। अब उसने अपनी जादुई शक्ति से शून्य जादुई कवच पर मौजूद हर रून को जोड़ दिया था और उन सभी को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया था। वास्तव में उसे सिर हिलाते देख लिलिया अभी भी कुछ करने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसने शून्य जादू कवच में पहले से कोई बदलाव नहीं देखा था। हालांकि रॉकी ने दावा किया कि अब वह तैयार है, पर वह अब भी पहले जैसा ही अस्त व्यस्त दिख रहा था, जिससे लिलिया आगे बढ़ने से हिचकिचा रही थी। वह रॉकी के स्वाभिमान को फिर से ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। चलो भी, उसकी झिझक को भांपते हुए रॉकी पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हो गया और उसने लिलिया की ओर दृढ़ता से सिर हिलाया। क्या आपको यकीन है? जरूर, चलो। ये देखकर कि रॉकी कितना आश्वस्त था, लिलिया ने गहरी सांस ली और जब उसने फिर से उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें बहुत तेज थीं। लिलिया का स्वभाव ऐसा था कि एक बार गंभीर हो जाने पर वो जरा भी दया नहीं दिखाती थी। चूंकि रॉकी ने दावा किया था कि इस बार वो पूरी तरह तैयार है, इसलिए उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और तीर की तरह उसकी ओर झपटी। पलक झपकते ही वह रॉकी के पास पहुंची और अपनी तलवार से सीधा उसके सीने पर वार किया। इससे पहले इसी प्रहार ने रॉकी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था और इस बार भी उसने वही चाल चली, वह भी बिना किसी कमी के। पहले की तरह ही हमले का सामना करते हुए रॉकी ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं की या किसी अन्य कारण से वह चकमा नहीं दे सका, जिससे तलवार उस पर गिर गई। जब तलवार कवच पर जोर से लगी तो एक जोरदार आवाज गूंजी। कैसे, ये कैसे हो सकता है? रॉकी पर तलवार से वार करने के बाद लिलिया स्तब्ध रह गई, क्योंकि यह वार, जो तकनीक और बल में पिछले वार के समान था, का परिणाम पूरी तरह से अलग था। इससे पहले उसके एक ही वार से रॉकी अनियंत्रित होकर पीछे हट गया था और 4-5 कदम पीछे हटकर रुक गया था, लेकिन इस बार रॉकी को चोट लगने के बावजूद वह 1 इंच भी नहीं हिला, यहां तक कि हिला भी नहीं। इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? लिलिया की उम्मीदों से कहीं ज्यादा इस नतीजे ने उसे हैरान कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसका वार बिना किसी हिचकिचाहट के एक सच्चा और पूरी ताकत से किया गया हमला था। इसका कोई असर कैसे नहीं हुआ? पहले तो ऐसा नहीं था। लिलिया के चेहरे पर आश्चर्य देखकर रॉकी के होठों पर मुस्कान आ गई, उसका दिल गर्व से भर गया। उसने अभी तक जानबूझकर चकमा नहीं दिया था, वह देखना चाहता था कि शून्य जादू कवच और मन रूनों का संयोजन किस प्रकार की रक्षात्मक शक्ति उत्पन्न कर सकता है। परिणाम अप्रत्याशित रूप से अच्छा था, लिलिया के हमले को आसानी से रोक दिया गया, जिसका मतलब था कि रॉकी द्वारा शून्य जादू कवच को बढ़ाने में सफलता मिली थी। उन्होंने शून्य जादू कवच को बढ़ाने के लिए मैना रून्स का सफलतापूर्वक उपयोग किया था, जिससे इसकी रक्षात्मक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, तथा यह साबित हो गया कि यह बिना हिले डुले लिलिया के हमले का सामना करने में सक्षम है। अकल्पनीय, रॉकी अपनी जीत को बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा था, लेकिन लिलिया खुद को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि उन्नत शून्य जादुई कवच इतना बेहतर हो जाएगा। सामान्यतः रॉकी का शून्य जादू कवच का सेट उसकी ताकत को केवल 4थे स्तर के योद्धा और 3रे स्तर के जादूगर के स्तर तक ही बढ़ा सकता था, लेकिन लिलिया की अपनी ताकत पहले से ही 3रे स्तर के योद्धा के शिखर पर थी। अपने समृद्ध युद्ध अनुभव के साथ उसकी युद्ध शक्ति 4थे स्तर के योद्धा से बहुत अलग नहीं थी, यही कारण था कि वह पहले भी शून्य जादू कवच पहनकर रॉकी को दबाने में सक्षम थी। लेकिन अब रॉकी का शून्य जादुई कवच रक्षा के मामले में स्पष्ट रूप से एक पायदान ऊपर उठ गया था। लिलिया को युद्ध का व्यापक अनुभव था और वह अच्छी तरह जानती थी कि 4थे स्तर का योद्धा भी उसके पूरे प्रहार का सामना आसानी से नहीं कर सकता, फिर भी रॉकी ने ठीक वैसा ही किया था और उसने सक्रिय रूप से बचाव भी नहीं किया था। ये शून्य जादुई कवच की अपनी रक्षात्मक शक्ति थी जिसने उसके पूरे प्रहार को रोक दिया था। इससे क्या संकेत मिला? इसका मतलब था कि उन्नत शून्य जादू कवच निश्चित रूप से 4थे स्तर के योद्धा के रक्षात्मक स्तर को पार कर गया था और शायद 5वें स्तर की क्षमता तक भी पहुंच गया था। ये वृद्धि एक गुणात्मक छलांग थी। शायद रॉकी ने भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि शून्य जादू कवच एक बार रूनों द्वारा बढ़ाए जाने पर इतना आश्चर्यजनक सुधार प्राप्त करेगा। इस संभावना की पुष्टि करने के लिए लिलिया ने तुरंत रॉकी की पीठ के पीछे से आकर उसकी प्रतिक्रिया से पहले ही उसकी पीठ पर एक भयंकर लात मार दी। लिलिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से लात मारी, जो सीधे रॉकी की पीठ पर लगी, फिर भी वह पहाड़ की तरह हवा चल रहा। उन्नत शून्य जादू कवच ने एक बार फिर उसके हमले को पूरी तरह से रोक दिया था। कैसा है? प्रभावशाली है ना? धीरे धीरे पीछे मुड़ते हुए रॉकी प्रशंसा के लिए उत्सुक एक बच्चे की तरह अधीरता से पूछ रहा था। उसके व्यवहार को देखते हुए लिलिया खुद को असहाय और स्नेही महसूस करने से नहीं रोक सकी, फिर भी उसने गंभीरता से सिर हिलाया, ये बहुत मजबूत है। वास्तव में हाँ, रॉकी का उत्साह देखकर लिलिया ने ईमानदारी से कहा, शून्य जादुई कवच और रून के सुदृढ़ीकरण के साथ तुम्हारी रक्षात्मक शक्ति 5वें स्तर के योद्धा के स्तर तक पहुंच गई है। मेरे हमले अब तुम्हें हरा नहीं सकते। ये 5वें स्तर के योद्धा के स्तर तक पहुंच गया है, यह अविश्वसनीय है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वृद्धि प्रभाव इतना स्पष्ट होगा। लिलिया की बातें सुनकर रॉकी भी हैरान रह गया। उसने वाकई शून्य जादुई कवच में इतने बड़े सुधार की उम्मीद नहीं की थी। मुझ पर हमला करो। और जैसे ही रॉकी भी उन्नत शून्य जादू कवच से चकित हुआ, लिलिया ने कुछ दूरी बनाने के लिए एक कदम पीछे लिया और फिर उससे कहा, मुझ पर हमला करो, मुझे देखने दो कि क्या शून्य जादुई कवच भी 5वें स्तर के योद्धा की आक्रामक शक्ति तक पहुंच गया है। ठीक है, सिर हिलाते हुए रॉकी ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और फिर बड़े कदमों से लिलिया की ओर बढ़ा। रून संवर्धन से पहले शून्य जादुई कवच रॉकी को 4थे स्तर के योद्धा के स्तर तक पहुंचा सकता था, इसलिए उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। पलक झपकते ही वह अपनी तलवार नीचे घुमाते हुए लिलिया के सामने था। इतनी तेजी! जैसे ही रॉकी उसकी ओर बढ़ा, लिलिया ने हिम्मत नहीं हारी और उसे रोकने के लिए जल्दी से अपनी तलवार उठा ली, लेकिन अगले ही पल उसने मन ही मन कोसा और शालीनता से वार को चकमा दे दिया। बस अब आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लिलिया को हमले से बचते देख रॉकी ने शुरू में आक्रामक रुख अपनाने का इरादा किया, लेकिन लिलिया ने तुरंत ही हमला रोक दिया। क्या बात, क्या बात! लिलिया द्वारा लड़ाई रोकने की उम्मीद न करते हुए रॉकी थोड़ा हैरान हो गया। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। शून्य जादुई कवच और रून के दोहरे सुदृढ़ीकरण ने आपकी आक्रामक शक्ति को भी पांचवें स्तर के योद्धा के स्तर तक पहुंचा दिया है। मैं इसका सामना नहीं कर सकता, और चूंकि आपकी तलवार पर रून लगा है, इसलिए अगर मेरी साधारण तलवार भी रोक ले तो वह दो टुकड़ों में कट जाएगी। बोलते हुए लिलिया ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। शून्य जादुई कवच और रून के दोहरे बल ने रॉकी को आक्रामक और रक्षात्मक दोनों ही रूपों में पांचवें स्तर के योद्धा के स्तर पर पहुंचा दिया था, जिससे एक ऐसा अंतर पैदा हो गया था जिसे अब अनुभव और कौशल से पाटा नहीं जा सकता था, इसलिए लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। ये बहुत बढ़िया है, इसका मतलब है कि मेरा सुधार पूरी तरह सफल रहा। लिलिया के आकलन ने अंततः रॉकी को निश्चिंत कर दिया, क्योंकि इससे शून्य जादू कवच पर उसके जादू की पूर्ण और यहां तक की अपेक्षा से भी अधिक सफलता की पुष्टि हुई। चट्टान का, हालांकि जैसे ही रॉकी खुशी से झूम रहा था, लिलिया उसके पास आए और खुद को रोक न सकी और बोली, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ओह, यह क्या है, शून्य जादुई कवच को बढ़ाने की इतनी जल्दी क्यों? रॉकी की आंखों में देखते हुए लिलिया ने वह सवाल पूछा जो उसके मन में काफी समय से चल रहा था। वह जानना चाहती थी कि रॉकी शून्य जादुई कवच को बढ़ाने में इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। ये कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। माना रूनों का अध्ययन वाकई महत्वपूर्ण था और लिलिया ने यह बात मानी भी, लेकिन यह न भूलें कि रॉकी कोई शोधकर्ता नहीं था, वह थंडहॉक शहर का नगर स्वामी था जो इस समय एक गंभीर संकट का सामना कर रहा था। सर्दी तेजी से आ रही थी और उन्हें अभी तक मौसम के लिए भोजन सुरक्षित करना था, जो कि एक सिटी लॉर्ड के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। फिर भी इन मामलों पर ध्यान देने के बजाय रॉकी अपना सारा ध्यान शून्य जादू कवच को बढ़ाने में लगा रहा था, जिसे लिलिया समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि रॉकी लिलिया के संदेह से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने पहले विस्तार से नहीं बताया था क्योंकि उसे भी यकीन नहीं था कि उसके विचार काम करेंगे, लेकिन अब वह अपने विचार साझा कर सकता था क्योंकि उसने सबसे जरूरी कदम पूरा कर लिया था। तो रॉकी ने आगे कहा, मैं शून्य जादू कवच को बढ़ाने की जल्दी में था क्योंकि केवल इसी तरह से हम पैसा कमा सकते हैं, भोजन खरीदने के लिए पैसा। क्या आप शून्य जादुई कवच को बढ़ाकर पैसा कमा रहे हैं? आप पैसा कमाने की योजना कैसे बना रहे हैं? रॉकी के स्पष्टीकरण से लिलिया और भी अधिक उलझन में पड़ गई। मैं राक्षसों का शिकार करने की योजना बना रहा हूँ। लिलिया को देखते हुए रॉकी ने अपना पुराना विचार प्रकट किया। क्या, तुमने क्या कहा? रॉकी के शब्दों ने लिलिया को स्तब्ध कर दिया था, और एक क्षण बाद होश में आते ही वह रॉकी के सामने पहुंची। नहीं रॉकी, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, राक्षसों को निशाना बनाने के बारे में मत सोचना। रॉकी ने लिलिया की प्रतिक्रिया का पूर्वानुमान लगा लिया था, इसलिए उसने असहाय होकर आह भरी और उसकी ओर देखते हुए पूछा, राक्षसों को निशाना बनाने के अलावा क्या हमारे पास कोई और विकल्प है? उनका प्रतिप्रश्न असहायता से भरा था, लेकिन लिलिया अवाक रह गई। जैसा कि लिलिया ने पहले कहा था, थंडहॉक शहर एक गंभीर संकट का सामना कर रहा था। सर्दी आ रही थी और शहर में ठंड के महीनों के लिए खाद्य भंडार की कमी थी। एजियोर कॉमर्स गिल्ड ने भी इस बार व्यापार की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया था, जिससे थंडहॉक शहर पर्याप्त भोजन का खर्च वहन करने में असमर्थ हो गया था। वे इस कठिनाई पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? यही दुविधा पिछले एक महीने से सबको परेशान कर रही थी। लिलिया चिंतित थी, एलिन बेचैन थी, लेकिन रॉकी जितना हताश कोई नहीं था, क्योंकि थंडहॉक सिटी उसकी थी, वह सिटी लॉर्ड था। अगर शहर में कुछ गड़बड़ हुई तो क्या शहर का स्वामी होने के नाते रॉकी भी बर्बाद नहीं हो जाएगा? इसलिए वह असल में सबसे ज्यादा चिंतित था। इसलिए जबकि रॉकी प्रत्येक दिन अपनी प्रयोगशाला में रूनों के साथ छेड़छाड़ करता रहता था, रात में जब शहर में बाकी सभी लोग गहरी नींद में सो जाते थे, वह इस बारे में सोचता था कि थंडहॉक शहर को सर्दियों में कैसे बचाया जाए, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि शहर के निवासियों के पास खाने के लिए भोजन हो। अंततः उसने एक तरीका सोचा, राक्षसों का शिकार करना। इतने लंबे समय तक इस दुनिया से परिचित रहने के बाद रॉकी अच्छी तरह से जानता था कि राक्षस न केवल हर किसी के दुश्मन थे, बल्कि एक संसाधन भी थे। राक्षस मूल्यवान थे। जब से राक्षसों ने भूमि पर आक्रमण करना शुरू किया, लोगों को पता चला कि भिन्न आयाम से आए ये प्राणी डरावने होने के बावजूद सर्वत्र खजाने थे। उनकी त्वचा, जो इस्पात की तरह कठोर किंतु कपड़े की तरह लचीली थी, नर्म कवच बनाने के लिए एकदम उपयुक्त सामग्री थी। राक्षसों का रक्त एक प्रमुख जादुई घटक था जो जादुई पत्थरों को बढ़ाने में भी सक्षम था। दानव का सबसे मूल्यवान हिस्सा दानव कोर था, जो दानव के हृदय के बराबर था, जिसमें किसी भी जादुई पत्थर से कहीं अधिक ऊर्जा थी। एक बहुत ही कीमती वस्तु जिस पर कई लोग दानव कोर के रहस्यों को उजागर करने और राक्षसों की कमजोरी का पता लगाने के लिए शोध कर रहे थे। संक्षेप में, एक राक्षस का शरीर खजानों से भरा होता था। इसलिए चाहे वह विभिन्न आकाशीय नगरों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारें हों या पैसा कमाने के इच्छुक व्यक्ति, कई लोग साल भर राक्षसों का शिकार करते रहते थे, और इससे एक नए पेशे का भी उदय हुआ, दानव शिकारी। और रॉकी ने जो तरीका सोचा वह था राक्षसों का शिकार करना। यदि वह किसी राक्षस को सफलतापूर्वक मार सके तो वह आसानी से लगभग 10,000 स्वर्ण सिक्के कमा सकता था। ये कीमत बिल्कुल भी बड़ा चढ़ाकर नहीं बताई गई थी, क्योंकि यद्यपि राक्षस हर जगह मौजूद थे, लेकिन जब तक बड़े पैमाने पर शिकार के लिए औपचारिक सैन्य बल तैनात नहीं किया जाता था, तब तक किसी व्यक्ति की शक्ति से राक्षस को मारना बहुत कठिन था, इसलिए इसकी कीमत बहुत अधिक थी। यही वजह थी कि रॉकी थंडरहॉक सिटी से इटर्नल सिटी की ओर जा रहा था। यह आसमान का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर था। राक्षसों को अपने साथ लेकर इटर्नल सिटी पहुंचने पर उसे न तो उन्हें बेच पाने की चिंता करनी पड़ती और न ही ऊंची कीमत मिलने की। साथ ही यही कारण था कि वह दिन रात अपने शून्य जादुई कवच को लगातार मजबूत कर रहा था। राक्षसों का शिकार करने के लिए उसे स्वयं कार्य करना होगा, क्योंकि केवल शून्य जादुई कवच ही राक्षसों से लड़ सकता था। हालांकि रॉकी जानता था कि उसकी क्षमताएं बहुत साधारण हैं और उसका शून्य जादुई कवच बहुत पुराना है, इसलिए सफलता पाने के लिए उसे रूनों से मजबूत करना जरूरी था। और अब शून्य जादुई कवच का संवर्धन पूरा करने के बाद उसकी अगली योजना जमीन पर लौटकर राक्षसों का शिकार करना और फिर उन्हें बेचना था। इस तरह स्वाभाविक रूप से थंडरहॉक शहर अपने संकट से उबर जाएगा। रॉकी के विचार में थंडरहॉक सिटी को बचाने का यही एकमात्र तरीका था। नहीं, आप बिल्कुल नहीं जा सकते। हालांकि लिलिया उनके विचार से पूरी तरह सहमत थी। रॉकी, पिछली बार तुमने देखा था कि राक्षस कितने भयानक होते हैं। वे राक्षसी प्राणी हैं जिनसे केवल एक सेना ही निपट सकती है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अकेले संभाल सको। इस समय लिलिया ने अभूतपूर्व स्तर की बेचैनी दिखाई, क्योंकि उसकी नजर में रॉकी का विचार आत्मघाती था। वह रॉकी पर भरोसा कर सकती थी, बिना शर्त उसका साथ दे सकती थी, लेकिन वह उसे कभी मरते हुए नहीं देख सकती थी। लिलिया का मूल सिद्धांत यही था, इसलिए उसने रॉकी के तरीके का कड़ा विरोध किया। लिलिया, थंडरहॉक शहर को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। मैं भले ही यह शहर नष्ट हो जाए, मैं चाहता हूं कि तुम जीवित रहो। रॉकी के सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में गौर से देखते हुए लिलिया ने दृढ़ता से कहा। उसके शब्दों ने रॉकी को स्तब्ध कर दिया। उसने लिलिया की आंखों में कुछ अविश्वास के साथ देखा, उसकी आंखों में केवल दृढ़ संकल्प देखा, जिससे रॉकी को पता चला कि लिलिया उसे धोखा नहीं दे रही थी। वह उसे चोट पहुंचाने की बजाय थंडरहॉक सिटी को गिरते हुए देखना पसंद करेगी। तो रॉकी मुस्कुराया और लिलिया के कंधों पर हाथ रखा। फिर उसने कहा, थंडरहॉक सिटी नष्ट नहीं होगी और मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने अकेले राक्षसों का शिकार करने की योजना नहीं बनाई थी। तो फिर तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। लिलिया ने रॉकी को घूरते हुए उसकी बातों को खारिज कर दिया। यह मत भूलना कि मैं थंडरहॉक शहर में गार्ड का कप्तान हूँ। शहर का कोई भी गार्ड और स्काईशिप इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वे राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने यह नहीं कहा कि मुझे उनकी मदद चाहिए। लिलिया की ओर सिर हिलाते हुए रॉकी गंभीर हो गया। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ, हम दोनों साथ में राक्षसों का शिकार करने के लिए। मुझे ये सुनकर लिलिया दंग रह गई। वह काफी देर तक रॉकी को देखती रही, फिर एक कड़वी मुस्कान के साथ बोली, माफ करना, मैं इस समय आपकी मदद नहीं कर सकती। मैं बहुत कमजोर हूँ। रॉकी को देखते हुए लिलिया की आवाज कड़वाहट से भर गई। जब तक मैं पांचवें स्तर के योद्धा की ताकत तक नहीं पहुंच जाती, मैं सबसे कमजोर राक्षस का एक भी वार नहीं झेल पाऊंगी। लेकिन मैं केवल तीसरे स्तर की हूँ। ये ताकत भी राक्षसों से मुठभेड़ की स्थिति में आपको कुछ समय देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे माफ करना। ये शब्द बोलते हुए लिलिया को बहुत दुख हुआ। वह वास्तव में रॉकी की मदद करना चाहती थी, लेकिन जैसा उसने कहा था, सबसे कमजोर राक्षस का सामना करने के लिए भी किसी को पांचवें स्तर के योद्धा की ताकत की आवश्यकता होगी। यह ऐसा अनुभव था जिसके लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान की कीमत चुकाई थी, फिर भी वह केवल तीसरे स्तर की थी। नहीं, आप कर सकते हैं और केवल आप ही कर सकते हैं। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रॉकी ने अपना सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया, लिलिया, क्या तुम भूल गई हो कि मुझे शोध संस्थान में क्या मिला था? मुझे सिर्फ शोध नोट्स और कुछ जादुई पत्थर ही नहीं मिले थे, बल्कि रून उपकरण के कई टुकड़े भी मिले थे। ये सभी रून उपकरण विंसर द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए हैं, और जब तक आप रून उपकरण पहनते हैं, हम निश्चित रूप से राक्षसों का शिकार कर सकते हैं। रॉकी वास्तव में राक्षसों का शिकार करके पैसा कमाना चाहता था, लेकिन उसने कभी भी इस कार्य को अकेले पूरा करने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। भले ही उसका शून्य जादू कवच सफलतापूर्वक बढ़ाया गया हो, फिर भी वह ऐसा नहीं कर सकता था। तो उनका प्रारंभिक विचार लिलिया के साथ टीम बनाने का था। क्या आप कह रहे हैं कि मैं विंसल द्वारा छोड़ा गया रून उपकरण पहन लूं? रॉकी का स्पष्टीकरण सुनने के बाद लिलिया ने उसे तुरंत खारिज नहीं किया, बल्कि भौहें सिकोड़ ली और सोच में पड़ गई। उसे अंदाजा हो गया था कि रॉकी ने इस योजना की पूरी तैयारी कर ली है। उसने न सिर्फ थंडरहॉक सिटी के लिए इंतजाम किए थे, बल्कि उसकी मदद करने का भी ध्यान रखा था, जो कि काफी व्यापक था। लेकिन क्या उसकी तैयारी काम आएगी? यदि उसने विंसल द्वारा छोड़े गए रून उपकरण पहन लिए तो क्या वह वास्तव में राक्षसों से लड़ सकती थी। यह विचार आते ही लिलिया ने रॉकी की ओर देखा और फिर पूछा, रॉकी, विंसल द्वारा छोड़ा गया उपकरण कितना शक्तिशाली है, मुझे सच सच बताओ। रून उपकरण का प्रत्येक टुकड़ा कम से कम मेरे शून्य जादू कवच जितना मजबूत है। रॉकी ने इस प्रश्न का उत्तर तुरंत दे दिया और कोई अतिशयोक्ति नहीं की। अनुसंधान संस्थान से उन्हें जो उपकरण मिले वे वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। वे वस्तुएं साधारण नहीं थीं और उन सभी पर विंसल द्वारा स्वयं बनाए गए रून अंकित थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। विंसल एक शीर्षस्थ गुरु थे जिन्होंने मन रूनों का आविष्कार किया था। उन्हें इस दुनिया का परम प्रतिभाशाली कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए उनके द्वारा स्वयं निर्मित रून उपकरण शून्य जादुई कवच से किसी भी तरह कम शक्तिशाली नहीं थे और इसमें कोई संदेह नहीं था। अच्छा ऐसा है। इस उत्तर से लिलिया की भौहें और भी कस गईं। उसके चेहरे के भाव एक पल में ही काफी दिलचस्प हो गए, कुछ चिंतित फिर भी पूर्वानुमानित, प्रयास करने के लिए उत्सुक लेकिन साथ ही झिझक से भरी हुई, स्पष्ट रूप से दुविधा में फंसी हुई। वास्तव में लिलिया दुविधा में थी, क्योंकि यदि रॉकी ने अतिशयोक्ति नहीं की होती तो विंसल द्वारा छोड़े गए रून उपकरणों पर भरोसा करते हुए वह भी राक्षसों का शिकार करने की कोशिश करने के लिए उत्सुक महसूस करने लगी थी। लेकिन वह रॉकी के आश्वासन को लेकर भी चिंतित थी। आखिरकार उपकरण तो केवल बाहरी सहायता थी और राक्षसों का शिकार करना चाकू की धार पर नाचने जैसा था। कोई भी छोटी सी गलती मौत का कारण बन सकती थी, इसलिए लिलिया कुछ हिचकिचा रही थी। लिलिया, तो फिर ये तय हो गया, तुम और मैं मिलकर राक्षसों का शिकार करेंगे। क्या क्या, मैंने नहीं। जिस समय लिलिया अनिर्णायक थी, रॉकी ने पहले ही उसके लिए निर्णय ले लिया था। लिलिया, मुझे तुम पर भरोसा है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे यकीन है कि मुझे कुछ नहीं होगा। ये कहकर रॉकी आकाश में उछला और सिटी लॉर्ड के भवन की ओर उड़ चला। रॉकी, क्या तुम क्या कर रहे हो? मैं आपके उपकरण लेने जा रहा हूँ, आप मुझे तुरंत प्रशिक्षित करेंगे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जैसा कि लिलिया ने सोचा था, रॉकी ने वास्तव में राक्षसों का शिकार करने के लिए पूरी तैयारी की थी। न केवल उसने अपने शून्य जादू कवच को बढ़ाया था, बल्कि उसने लिलिया से उसे प्रशिक्षित करने की भी योजना बनाई थी। राक्षसों का शिकार करना बहुत खतरनाक था, रॉकी यह बात किसी से भी बेहतर जानता था। जाहिर है वह ऐसा करते हुए मरना नहीं चाहता था, इसलिए बाहरी तैयारियों के अलावा वह खुद को बेहतर बनाने की भी उम्मीद कर रहा था। हालांकि समय कम था, लेकिन निकलने से पहले थोड़ा सा सुधार भी सफलता की दर बढ़ा सकता था और वह सफलता के इस छोटे से मौके को भी नहीं छोड़ना चाहता था। अतः एक बार जब उसने लिलिया को सफलतापूर्वक मना लिया तो उसने तुरंत उसके साथ अभ्यास शुरू कर दिया और इस बार यह एक वास्तविक अभ्यास सत्र था। उसके बाद लिलिया ने रॉकी के लिए एक सप्ताह का गहन प्रशिक्षण शुरू किया। इस हफ्ते के दौरान रॉकी रिसर्च लैब में वापस नहीं गया, क्योंकि एक हफ्ते का समय ज्यादा नहीं था बल्कि बहुत कम था। अगर उसे इतने कम समय में सुधार करना था तो उसे अपनी पूरी ऊर्जा बिना किसी व्यवधान के प्रशिक्षण में लगानी होगी। लिलिया स्वाभाविक रूप से उसके कार्यों से बहुत प्रसन्न थी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि रॉकी को इतने कम समय में परिणाम दिखे, वह उस पर काफी सख्त हो गई, कोई दया नहीं दिखाई। वास्तव में उसे एक नारकीय प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। दिन प्रतिदिन समय बीतता गया और पलक झपकते ही सप्ताह समाप्त हो गया। उस दिन थंडरहॉक सिटी, जो धीरे धीरे आकाश में मंडरा रहा था, रुक गया और पूरा शहर हवा में ऊपर तैरने लगा। नगरपाल, आपको सावधान रहना होगा। इस समय थंडरहॉक सिटी के स्काईपोर्ट के भीतर एक स्काईशिप पहले से ही उड़ान भरने के लिए तैयार थी और रॉकी और लिलिया दोनों भी उसमें सवार होने के लिए तैयार थे। दोनों को पूरी तरह से तैयार देखकर एलिन, जो उन्हें विदा करने आई थी, उन्हें सावधान रहने की याद दिलाने के अलावा और कुछ नहीं कह सकी। उसे कुछ दिन पहले ही उनकी योजनाओं के बारे में पता चला था और जब उसने रॉकी के इरादे सुने तो वह सचमुच डर गई और सहज ही उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एलिन बस इतना ही कर सकती थी कि रॉकी के दूर रहने तक थंडरहॉक सिटी की अच्छी देखभाल करे। हम ठीक हो जाएंगे, एलिन की ओर हंसते हुए रॉकी काफी निश्चिंत दिखाई दिया। शहर अब तुम्हारे हाथों में है। गार्ड और स्काईशिप को तैयार रखना, याद रखना, जैसे ही तुम्हें सिग्नल दिखाई दे हमें लेने तुरंत आ जाना। ठीक है। चूंकि मिशन में राक्षसों का शिकार करना शामिल था, इसलिए शहर के सभी 10 आकाशयानों को ले जाना अव्यावहारिक होगा, क्योंकि यह बहुत अधिक स्पष्ट होगा और राक्षसों की भीड़ को आकर्षित कर सकता है। इसलिए इस बार रॉकी ने सिर्फ एक स्काईशिप भेजा और लिलिया के साथ उतरते ही वे स्काईशिप वापस भेज देंगे और एलिन को संकेत देंगे कि उन्हें शहर कब लौटना है। संकेत देखते ही एलिन उन्हें लेने के लिए एक स्काईशिप भेज देगी। ये व्यवस्था इतनी साहसिक थी कि एलिन को भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका मतलब था कि रॉकी अपना जीवन उसके हाथों में सौंप रहा था। रॉकी उस पर इतना भरोसा क्यों करेगा? ये सवाल तो खुद एलिन को भी नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि जब रॉकी ने उसे बताया तो उसे अविश्वास के साथ साथ थोड़ी सी भावुकता भी महसूस हुई। हम अब जा रहे हैं, सिग्नल पर ध्यान रखना। एलिन को कुछ दिन पहले के दृश्य याद आ रहे थे, तभी रॉकी और लिलिया स्काईशिप पर चढ़ चुके थे। स्काईशिप के धीरे धीरे ऊपर चढ़ने और तेजी से जमीन की ओर उड़ने से पहले उन्होंने उसकी तरफ हाथ हिलाया। फेली, सभी आकाशयानों को उड़ान के लिए तैयार रखो और नगरपाल के संकेत पर नजर रखो। जैसे ही स्काईशिप धीरे धीरे बादलों में गायब हो गया, एलिन ने पास खड़े एक गार्ड की ओर मुड़कर उसे निर्देश दिया। ये गार्ड कोई और नहीं बल्कि फेली था, जिसने स्काईपोर्ट में रॉकी का स्वागत किया था। बाद में लिलिया ने उसे गार्ड कोर के डिप्टी कैप्टन में से एक के रूप में पदोन्नत कर दिया था और उसे स्काईपोर्ट में स्काईशिप के प्रबंधन का विशेष प्रभारी बना दिया था। हाँ, प्रतिक्रिया स्वरूप फेली ने एलिन को सैन्य सलामी दी और फिर अपनी टीम के साथ तैयारी करने चला गया। थंडरहॉक सिटी में स्टैंड बाय पर मौजूद लोगों को फिलहाल एक तरफ रखते हुए रॉकी, जो स्काईशिप पर सवार होकर जमीन की ओर जा रहा था, पहले से ही केबिन में बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा है। यह उस जमीन पर उसकी दूसरी वापसी थी और उसे यह काफी मजेदार लगा, क्योंकि उसकी यादें ताजा हो गईं कि पहले उसने जिंदगी में कभी जमीन पर पैर नहीं रखा था। फिर भी अब उसने सिर्फ एक दो महीने के अंदर ही उस जमीन की कई यात्राएं की थी, जिनकी आवृत्ति वाकई थोड़ी ज्यादा थी। हाल ही में भूमि पर जाने के कारण रॉकी को इस बार कम उत्साह महसूस हुआ और वह पिछली बार की तरह धनुष पर हवा का सामना करते हुए खड़ा नहीं था। इसके बजाय वह केबिन में चुपचाप बैठा रहा। एक बार जब हम जमीन पर पहुंच जाएं, तो मेरे पीछे चलो, तुम्हें अकेले कोई काम नहीं करना है, रॉकी मन ही मन सोच रहा था कि क्या उसका उस देश में वापस आना बहुत ज्यादा बार हो रहा है। लिलिया उसे सावधान कर रही थी। अब तक लिलिया ने नए उपकरण पहन लिए थे, खासकर वेंसेल द्वारा छोड़े गए रून उपकरण। ये उपकरण न केवल उत्कृष्ट थे बल्कि उनमें रूनों से बने पैटर्न भी थे, जिससे लिलिया बिल्कुल नई लग रही थी। यद्यपि वह अधिक शक्तिशाली उपकरणों से सुसज्जित थी, फिर भी लिलिया सतर्क रही और रॉकी को याद दिलाती रही कि गंतव्य पर पहुंचने के बाद उसे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करना चाहिए। दोनों में से सिर्फ उसी ने असली राक्षसों का सामना किया था। रॉकी का राक्षसों के बारे में ज्ञान अभी भी सैद्धांतिक ही था, इसलिए वे पहले ही तय कर चुके थे कि जमीन पर पहुंचने के बाद लिलिया ही अगुवाई करेगी। ठीक है, रॉकी ने लिलिया को गंभीर दृष्टि से देखा और बिना किसी मजाक के सिर हिला दिया। स्काई सिटी से जमीन तक वापसी का सफर ज्यादा लंबा नहीं था। कुछ घंटे केबिन में रहने के बाद रॉकी को लगा कि स्काईशिप की गति धीमी हो गई है, जिसका साफ मतलब था कि वे जमीन के पास पहुंच गए थे। इसलिए वह और लिलिया एक साथ केबिन से बाहर निकले और धनुष पर खड़े होकर नीचे देखने लगे। ठीक उसी समय उन्हें नीचे एक और विशाल जंगल दिखाई दिया। हम भाग्यशाली हैं, एक और जंगल। ये जानकर कि उनका लैंडिंग स्थल एक जंगल था, लिलिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह इलाका उनके ऑपरेशन के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। जंगल में खतरे से बचना किसी बड़े मैदान या रेगिस्तान में उतरने की तुलना में ज्यादा आसान होता, जहां उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं होती। जहाज को जंगल के किनारे ले चलो, फिर हम उतर सकेंगे, लिलिया ने उनके साथ आए गार्ड की ओर मुड़कर उसे निर्देश दिया और फिर रॉकी की ओर देखा तो उसने पाया कि वह सामान्य रूप से शांत और गंभीर था। क्या बात है, तुम घबरा रहे हो, रॉकी को पहले से अलग तरह से व्यवहार करते देख लिलिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, थोड़ा घबराहट हो रही है, उसकी ओर देखते हुए रॉकी गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और सिर हिला दिया। इससे पहले जब वह ये सब कल्पना कर रहा था, तब भी उसे जरा सी भी घबराहट महसूस नहीं हुई थी, नहीं जब वह केबिन में था, लेकिन अब जब स्काईशिप उतरने वाला था तो वह तनाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। घबराहट होना स्वाभाविक है, आखिरकार राक्षसों का शिकार करना कोई खेल नहीं है। एक लापरवाही और हम दोनों वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप घबराए हुए नहीं लग रहे, लिलिया को देखकर रॉकी उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसे उसमें किसी प्रकार की घबराहट का आभास नहीं हुआ। हम दोनों में से आप घबराहट को संभालिए, मैं शांति को संभाल लूंगा, अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए लिलिया ने एक अनोखा मजाक किया। इस मजाक ने आखिरकार रॉकी के चेहरे पर मुस्कान ला दी, लेकिन वह दिल ही दिल में जानता था कि लिलिया का व्यापक अनुभव उसे मुश्किल क्षणों में शांत और संयमित रहने की क्षमता देता है, एक ऐसा हुनर जो उसमें बिल्कुल नहीं था। उसे अभी बहुत कुछ सीखना था। हम उतरने वाले हैं, तभी लिलिया की आवाज ने उसे वर्तमान में वापस ला दिया और उसने देखा कि स्काईशिप जंगल के किनारे पर मंडरा रहा है, नीचे उतर रहा है। कुछ ही देर बाद स्काईशिप जंगल के बाहरी इलाके में एक घास के मैदान पर स्थिर हो गई। रॉकी और लिलिया उतरकर सीधे जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, स्काईशिप धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई और थंडरहॉक सिटी की ओर वापस उड़ गई। अब हम सचमुच अपने दम पर हैं, जैसे ही वह लिलिया के साथ जंगल की ओर चला, रॉकी ने पीछे मुड़कर देखा कि स्काईशिप धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है और वह खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। यद्यपि यह उसका अपना निर्णय था, लेकिन जमीन पर छोड़े जाने की वास्तविकता ने रॉकी को असहज महसूस कराया, या शायद डरा हुआ। अपने दम पर का क्या मतलब है तुम्हारा, मैं अभी भी तुम्हारे पास हूँ, लिलिया ने उसकी ओर आंखें घुमाई और कहा, चिंता मत करो, चलो जंगल में चलते हैं, हमें राक्षसों को ढूंढना होगा इससे पहले कि वे हमें ढूंढ लें, अन्यथा हम नुकसान में रहेंगे। इतना कहकर उसने अपनी चाल तेज कर दी और गहरी सांस लेकर रॉकी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वे दोनों जंगल में गायब हो गए। ये जंगल उस जंगल से अलग था जहां रॉकी पिछली बार गया था। यहां वनस्पतियां विरल थीं और पेड़ भी घने नहीं थे, जिससे हरियाली का एहसास होना मुश्किल था। इसके बजाय पूरा जंगल ऐसा आभास दे रहा था मानो वह सड़ने के कगार पर हो। और जब रॉकी और लिलिया सचमुच जंगल में प्रवेश कर गए तो वे धीरे धीरे धीमे हो गए और अधिक सतर्क हो गए। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? आगे चल रही लिलिया ने बिना रॉकी की ओर देखे अपनी तलवार से उनके रास्ते में आ रही एक शाखा को काट डाला। मुझे याद है, अगर हमारा सामना किसी उच्च स्तरीय राक्षस से होता है तो हम जितनी तेजी से भाग सकते हैं भाग जाते हैं। ये सही है। इस दुनिया में राक्षसों को विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत किया गया था और उनकी प्रजातियां भी बहुत विविध थीं। राक्षसों के विभिन्न प्रकारों और स्तरों के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा हो सकता था। सबसे शक्तिशाली स्वाभाविक रूप से उच्च स्तरीय राक्षस थे। चाहे किसी भी प्रजाति के हों, उच्च स्तरीय राक्षस दुर्जेय थे। योद्धाओं और जादूगरों के पास उनके सामने कोई मौका नहीं था। केवल एक महान योद्धा या महाजादूगर ही, खासकर शून्य जादुई कवच से लैस होकर, उच्च स्तरीय राक्षस से लड़ सकता था, अन्यथा उसकी मृत्यु निश्चित थी। तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर के राक्षस बहुत कमजोर थे, हालांकि उनका खतरा उनकी प्रजातियों पर निर्भर करता था। कुछ प्रजातियों को निम्न स्तर की श्रेणी में रखा जा सकता था, लेकिन उनकी ताकत अभी भी भयानक थी, जिससे वे भी उतने ही खतरनाक प्राणी बन गए। पिछले कई दिनों में लिलिया ने रॉकी को राक्षसों के प्रकार और उनके स्तर के पदानुक्रम के बारे में बहुत कुछ बताया था, ताकि वह इस मिशन के लिए उनके लक्ष्य के बारे में तैयार और स्पष्ट हो सके। इसलिए लिलिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ती रही। इस बार हमारा निशाना निम्न स्तर के राक्षस हैं, जितने कम होंगे उतना अच्छा होगा। इसलिए अगर हमारा सामना उच्च स्तर के राक्षसों या दो से ज्यादा निम्न स्तर के राक्षसों से होता है तो हम तुरंत भाग जाएंगे। समझ गया, हम शायद इतने बदकिस्मत नहीं होंगे कि हमें तुरंत ही उच्च स्तरीय राक्षसों का सामना करना पड़े। हालांकि लिलिया की बातें सच थी, रॉकी को लगा कि उनके लिए तुरंत उच्च स्तरीय राक्षसों का सामना करना इतना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा। वे सड़क किनारे पड़ी गोभी की तरह आम नहीं थे, तो क्या वे इतनी जल्दी किसी से टकराएंगे? उसने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि अचानक दूर से एक गर्जना की आवाज आई और उसी समय उसके और लिलिया के नीचे की जमीन लगातार कांपने लगी। ये है अशुभ। यह अचानक लेकिन कान फाड़ देने वाली गर्जना तथा साथ ही धरती का कांपना निस्संदेह बड़े खतरे का संकेत था। इसलिए रॉकी को एक भयंकर नजर से देखने के बाद लिलिया ने उसे तुरंत एक बड़े पेड़ के पीछे खींच लिया। दरअसल दोनों ही समझ गए कि दहाड़ उस जंगल से नहीं आ रही थी जहां वे थे, बल्कि वह किसी बहुत दूर से आ रही थी, जिससे यह और भी जाहिर हो गया कि उस दहाड़ का स्रोत कितना भयानक था। लिलिया को डर था कि दहाड़ जंगल में मौजूद राक्षसों को परेशान कर देगी और स्वाभाविक रूप से उन्हें किसी भी स्थिति से बचने के लिए छिपना पड़ा। और यदि एक ही दहाड़ इतनी बड़ी दूरी को प्रभावित कर सकती है तो कोई कल्पना कर सकता है कि दहाड़ने वाला राक्षस अवश्य ही उच्च स्तर का राक्षस होगा। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि दहाड़ पूरी तरह से शांत नहीं हो गई। उसके बाद लिलिया और रॉकी उस पेड़ के पीछे से बाहर आए जहां वे छिपे हुए थे और अंततः उन्होंने राहत की सांस ली। लिलिया, अभी क्या हुआ? जिस दिशा से दहाड़ आ रही थी उस ओर अपना सिर घुमाकर रॉकी ने पूछा। संभवतः किसी ने किसी उच्च स्तरीय राक्षस को उकसाया है, दोनों पक्ष लड़ रहे होंगे। रॉकी की तरह लिलिया ने भी उस ओर देखा, लेकिन उसका जवाब निश्चित नहीं था। क्या हमारे जैसे अन्य लोग भी राक्षसों का शिकार कर सकते हैं? मुझे नहीं पता। सिर हिलाते हुए लिलिया ने आह भरी, हमें अपने काम से काम रखना ही बेहतर है। भले ही दूसरे लोग राक्षसों का शिकार कर रहे हों, उनका लक्ष्य एक उच्च स्तरीय राक्षस ही होता है। क्या तुम सचमुच ऐसे व्यक्ति से मुठभेड़ करना चाहते हो? ... रॉकी ने मुंह तो खोला पर आखिरकार कुछ नहीं बोला। जो लोग ऊंचे दर्जे के राक्षसों को निशाना बना रहे थे वे किस तरह के प्राणी थे? उन्हें भड़काने से बचना ही बेहतर था, और उससे भी बेहतर था कि उनसे मिलना ही ना पड़े। चलो अब इसकी चिंता मत करो। अपनी नजरें हटाते हुए लिलिया आगे बढ़ी और आगे बढ़ने लगी। सतर्क रहो, अगर इस जंगल में राक्षस हैं तो जरूर उस दहाड़ से परेशान हो गए होंगे। हमें सावधान रहना होगा। ठीक है, सहमत होते हुए रॉकी ने लिलिया का पीछा किया। उसकी सतर्कता बढ़ गई। वे दोनों सावधानीपूर्वक जंगल में आगे बढ़े, बीच बीच में चलते और रुकते हुए, पत्तों या घास की हल्की सी भी सरसराहट पर रुकने के लिए हमेशा तैयार, युद्ध के लिए तैयार। लेकिन उनकी सावधानी के बावजूद उन्हें अभी तक किसी राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा था। ये तथ्य रॉकी को भी असामान्य लगा। इसलिए जब रात हुई और लिलिया ने तय किया कि उन्हें जंगल में रात बितानी चाहिए, तो रॉकी खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका। लिलिया, आखिर क्या हो रहा है? सारे राक्षस कहाँ चले गए? टिमटिमाते कैंप फायर के पास बैठा, अपने सामने बैठी लिलिया को देखते हुए रॉकी कुछ बेचैन सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पूरा दिन बिना किसी राक्षस से मिले कैसे गुजार दिया। ये घटना बेहद असामान्य थी। एक पुरानी कहावत है, असामान्य घटनाएं अक्सर मुसीबत का कारण बनती हैं। ये स्पष्ट रूप से एक अच्छा संकेत नहीं था। कुछ ठीक नहीं है। यहां तक कि रॉकी ने भी कुछ गड़बड़ देखी थी, तो लिलिया, जो अपने व्यापक अनुभव के बावजूद ये कैसे नहीं समझ सकी कि कोई समस्या है, लेकिन वह भी यह समझने में असमर्थ थी कि क्या हो रहा है। शुरुआत में लिलिया की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उन दोनों का सामना राक्षसों के झुंड से होगा या फिर किसी उच्च स्तरीय राक्षस से टकरा जाएंगे, जिससे उनके पास बचने का कोई मौका नहीं बचेगा। फिर भी पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी उन्हें कोई राक्षस नहीं मिला था। क्या ये संभव है कि किसी संयोगवश इस जंगल में कोई राक्षस न हो? इस संभावना को तुरंत खारिज कर दिया गया। इस जमीन पर एक सदी से भी ज्यादा समय से राक्षसों का कब्जा था, वे हर जगह थे। इस खास जंगल में राक्षस कैसे नहीं हो सकते? बहरहाल, वजह चाहे जो भी हो, लिलिया को समझ नहीं आ रहा था। उसे बस एक ही बात का यकीन था, जरूर कोई समस्या थी। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जिसके बारे में हमें पता ना हो। खैर, आज रात ज्यादा सतर्क रहना, सब ठीक हो जाएगा। काफी देर तक सोचने के बाद भी किसी नतीजे पर न पहुंचकर लिलिया ने हार मान ली और फिर रॉकी के साथ रात की पहरेदारी पर चर्चा करने लगी। दिन में तो उनका सामना किसी राक्षस से नहीं हुआ था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि रात में भी उनका सामना नहीं होगा, इसलिए किसी को तो पहरा देना ही था। लेकिन ठीक उसी समय, जब लिलिया आराम करने के लिए तैयार हो रही थी और रॉकी रात की पहरेदारी के लिए खुद को तैयार कर रहा था, अचानक जंगल के भीतर से एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। इस दहाड़ ने उन दोनों को चौंका दिया, क्योंकि वे समझ गए कि इस बार यह आवाज दूर से नहीं आ रही थी, ये जंगल के भीतर से आ रही थी और उनके बहुत करीब से आ रही थी। अंततः राक्षसा ही गए, वे अंततः यहाँ हैं। जंगल से दहाड़ सुनकर रॉकी तुरंत उठ खड़ा हुआ। वह तनावग्रस्त तो था, लेकिन साथ ही थोड़ा उत्साहित भी था। अंततः उसका सामना एक राक्षस से हुआ। इस बार वह राक्षसों का शिकार करने आया था और अगर उसे हार के कारण खाली हाथ लौटना पड़ा तो उसे माफ किया जा सकता था, लेकिन अगर उसे किसी राक्षस का सामना न करने के कारण वापस लौटना पड़ा तो वह हताशा से पागल हो जाएगा। हालांकि आज की दुनिया में राक्षसों से न टकराना लगभग नामुमकिन था। अगर दिन में कोई न मिले भी तो रात में उनसे मुठभेड़ जरूर होती थी। लिलिया, जो अभी अभी लेटी थी, भी उसी क्षण उठ खड़ी हुई। उसने दहाड़ की दिशा में देखा और ध्यान से सुनने के बाद रॉकी से कहा, ज्यादा दूर नहीं, चलो। ये कहकर दोनों उस दिशा में दौड़ पड़े जहां से गर्जना की आवाज आ रही थी। याद रखो, अगर कोई खतरा हो तो पहले भागो। हालांकि वे जंगल में तेजी से भाग रहे थे, लिलिया रॉकी को ये याद दिलाना नहीं भूली कि अगर खतरा हो तो भाग जाना। रॉकी, जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, ने उसकी बात पर सिर हिलाया, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वह सहमत था या नहीं। इसके बाद दोनों एक के बाद एक तेजी से जंगल में आगे बढ़े। लिलिया अपनी फुर्ती के लिए जानी जाती थी, जिसकी वजह से वह जंगल में आजादी से घूम सकती थी, और रॉकी भी अपने शून्य जादुई कवच से मिली ताकत के बल पर आसानी से आगे बढ़ रहा था। इस तरह वे जल्द ही जंगल में सैकड़ों मीटर ऐसे चल पड़े मानो समतल जमीन पर चल रहे हों। उसी समय राक्षस की दहाड़ निरंतर जारी रही, जो अदृश्य निर्देशांक के रूप में कार्य करती रही तथा रॉकी और लिलिया को लगातार याद दिलाती रही कि वे अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे हैं। रुकना, जैसे ही उन्होंने फिर से राक्षस की दहाड़ सुनी, लिलिया अचानक रुक गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे राक्षस के बहुत करीब आ गए हैं। इस समय दौड़ना जारी रखना समझदारी नहीं थी, क्योंकि इससे सीधे राक्षस की गोद में जा सकते थे। उसे रुकते देख रॉकी, जो हमेशा उसका पीछा कर रहा था, भी रुक गया और फिर अपने शून्य जादू कवच से तलवार निकाली और खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। राक्षस उस दिशा में है, जाओ। अपने अनुभव का उपयोग करते हुए लिलिया ने शीघ्रता से एक दिशा पहचान ली और रॉकी को सूचित करने के बाद तेजी से उस ओर चल पड़ी। हालांकि जैसे ही वे राक्षस की खोज करने वाले थे, मुश्किल से एक कदम आगे बढ़े थे, अचानक दूर जंगल से एक जोरदार आवाज आई, जिसके तुरंत बाद एक काली छाया तोप के गोले की तरह बाहर निकली। क्या उन्हें खोज लिया गया था? जंगल से एक काली छाया को उड़ते हुए देखकर लिलिया और रॉकी दोनों चौंक गए। उनका पहला विचार ये था कि राक्षस ने उन्हें देख लिया है, लेकिन एक पल बाद उन्हें एहसास हुआ कि मामला कुछ और ही था। दूर से उड़ती हुई वह काली परछाई उनसे काफी दूर एक बड़े पेड़ से टकरा गई और जमीन पर गिरते ही एक दयनीय चीख निकली। राक्षस नहीं! इस अप्रत्याशित परिणाम से रॉकी दंग रह गया। जब उसने उस परछाई को गौर से देखा तो पाया कि वह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक इंसान था। नहीं, ये पूरी तरह सटीक नहीं था। सटीक रूप से कहा जाए तो वह छाया एक पशु मानव थी, एक विशालकाय पशु मानव जो 2 मीटर से भी अधिक लंबा था। क्या हो रहा था? रॉकी को सामने का दृश्य देखकर उलझन हुई। उसने सोचा था कि कोई राक्षस बाहर निकलेगा, लेकिन असल में वह एक जानवर था, और जिस तरह से जानवर नीचे उतरा था उसे देखकर लग रहा था कि वह उड़ गया है। वहां बेवकूफ की तरह खड़े मत रहो, जब रॉकी स्तब्ध था, लिलिया ने तेजी से प्रतिक्रिया की और उसे एक विशाल चट्टान के पीछे खींच लिया। जैसे ही वे छिप गए, राक्षस की दहाड़ फिर से सुनाई दी, साथ में भारी कदमों की आवाज भी। बैंग बैंग बैंग, भारी कदमों की आवाजें बढ़ती गईं और जल्द ही रॉकी के नीचे की जमीन कांपने लगी, जिससे संकेत मिला कि कुछ आ रहा है। जमीन के जोरदार कंपन से चट्टान के पीछे छिपे रॉकी को बाहर झांकने से रोका नहीं जा सका। जल्द ही उसने दूर जंगल में एक विशाल आकृति को अस्पष्ट रूप से प्रकट होते देखा। उस आकृति का आकार किसी भी लिहाज से आश्चर्यजनक रूप से बड़ा था और उसके हर कदम के साथ धरती कांप रही थी। और हालांकि उसके कदम तेज नहीं लग रहे थे, उसने ये दूरी बस कुछ ही कदमों में तय कर ली थी। हे भगवान, यह क्या चीज है? जैसे ही उसने उस विशालकाय आकृति को छाया से बाहर निकलते देखा, रॉकी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा, क्योंकि उनके विचार में जंगल से निकला प्राणी निस्संदेह एक राक्षस था। ये राक्षस 3 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था, किसी मानव आकार की चट्टान जैसा। इसका हर इंच पत्थर से बना था और इसकी विशाल पत्थर की मुठियां इसके सिर जितनी बड़ी थी। इसके बारे में बस एक ही चीज अपेक्षाकृत सामान्य थी, उसकी आंखें। हालांकि इसके विशाल कद की तुलना में इसकी आंखें सोयाबीन जितनी छोटी थी, उसके विशाल सिर पर बस 2 छोटे बिंदु। यह क्या चीज थी? राक्षस। जबकि रॉकी अपने सामने राक्षस को देखकर पूरी तरह से अचंभित था, लिलिया उसके बगल में तेजी से सांस ले रही थी, क्योंकि रॉकी को नहीं पता था कि राक्षस क्या है। लिलिया जानती थी ये वही राक्षस था जिसका वे शिकार कर रहे थे। ये ग्ररोक दानव है, लानत है। राक्षस पर एक नजर डालते ही लिलिया ने जोर से दांत भींच लिए। ये सुनकर रॉकी जल्दी से पीछे हटा और धीरे से पूछा, क्या ये राक्षस है? पहचानते हो? लिलिया ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या ये कोई उच्च स्तरीय राक्षस है? रॉकी ने लिलिया की चिंता जरूर भांप ली और तुरंत जवाब मांगने लगा। वे इतने बदकिस्मत तो नहीं हो सकते थे कि उन्हें एकदम से किसी ऊंचे दर्जे के राक्षस का सामना करना पड़े, है ना? सौभाग्यवश, लिलिया ने एक क्षण बाद अपना सिर हिलाया, जिससे पता चला कि वे इतने बदकिस्मत नहीं थे। लेकिन सिर हिलाने के बाद लिलिया ने आगे कहा, इस प्रकार के राक्षस को ग्ररोक दानव कहा जाता है। हालांकि यह एक निम्न स्तरीय राक्षस है, लेकिन इसे संभालना बहुत कठिन है। ग्ररोक दानवों में मांस और रक्त नहीं होता, वे पूरी तरह से पत्थर से बने होते हैं। ये चीज बेहद मजबूत है और इसका शरीर हीरे से भी कठोर है, यहां तक कि कोई जादुई तोप भी इसे तोड़ नहीं सकती, जिससे इससे निपटना वाकई मुश्किल हो जाता है। लिलिया बिल्कुल सही थी, उस वक्त उनका सामना असल में एक ग्ररोक दानव से हुआ था, जिसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी कठोरता, इतनी कठोर कि स्थिर खड़े रहना और जादुई तोप का सीधा वार झेलना भी उसे परेशान नहीं करता था। हालांकि ग्ररोक दानव का मूल्य भी बहुत अधिक था। मांस की कमी के बावजूद एक बार मारे जाने पर ग्ररोक दानव का शरीर ग्ररोक पत्थर के टुकड़ों में बिखर जाता था। एक बार परिष्कृत होने पर इन टुकड़ों को अविश्वसनीय रूप से मजबूत ग्ररोक स्टील में बदला जा सकता था, जिससे ये सबसे उत्तम सामग्रियों में से एक बन जाता था, जो सोने की एक समान मात्रा से भी अधिक मूल्यवान था। लिलिया ने कुछ ही शब्दों में रॉकी को ग्ररोक दानव से संबंधित स्थिति समझा दी, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वे बदकिस्मत थे या भाग्यशाली कि उन्हें ऐसे कठिन किंतु मूल्यवान ग्ररोक दानव का सामना करना पड़ा। मैं समझ गया, तो अब हम क्या करें? क्या हम कोई कार्रवाई करें? ग्ररोक डायमंड के बारे में मूल बातें समझने के बाद रॉकी ने पूछा। एक क्षण रुको, पहले देखते हैं कि चीजें कैसे सामने आती हैं। लिलिया ने अपना हाथ हिलाया और तुरंत कार्रवाई करने के बजाय बाहर देखने के लिए तैयार हो गई। तभी ग्ररोक डायमंड ने फिर से एक कदम बढ़ाया, लेकिन उसके भारी कदम रॉकी और लिलिया की ओर नहीं बल्कि उस बीस्टमैन की ओर बढ़ रहे थे जो पहले ही जमीन पर धड़ाम से गिर चुका था। इस बीच बीस्टमैन भी उठ गया। बीस्टमैन वहां नंगे सीने खड़ा था, उसकी मांसपेशियां सुडौल और सुगठित थीं और उसके हाथ में एक चौड़ी कुल्हाड़ी थी। ग्ररोक दानव के सामने उसे जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि उसने लड़ने के जोश से अपनी छाती भी थपथपाई। यह आदमी कौन है? एक चट्टान के पीछे छिपकर रॉकी ने ग्ररोक डायमंड और फिर बीस्टमैन की ओर देखा। वह पूरी तरह से भ्रमित था, वह अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि क्या हो रहा था। हालांकि उसके बगल में बैठी लिलिया ने तुरंत जवाब दे दिया। बीस्टमैन को देखने के बाद वह रॉकी की ओर मुड़ी और बोली, ये बीस्टमैन भी हमारी तरह ही राक्षसों का शिकार करने आया है। वह एक दानव शिकारी है। ये बीस्टमैन एक दानव शिकारी है। लिलिया के शब्दों से रॉकी की सांस अचानक रुक गई और वह जल्दी से आगे झुककर बीस्टमैन की ओर देखने लगा। उसकी निगाहों में नंगे सीने वाला बीस्टमैन एक ग्ररोक डायमंड से भिड़ रहा था। हालांकि ग्ररोक डायमंड का शरीर विशालकाय था, बीस्टमैन भी एक विशालकाय आकृति वाला था, जिसकी ऊंचाई 2 मीटर से भी ज्यादा थी और उसकी मांसपेशियां कुल्हाड़ियों और छुरों से गड़ी हुई लग रही थीं। सिर्फ यही प्रभावशाली रूप उसे ग्ररोक डायमंड से कम दुर्जेय नहीं बनाता था। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी बीस्टमैन की मजबूत लड़ाकू भावना। उसे साफ तौर पर यहां फेंका गया था, लेकिन जब वह जमीन से उठा तो आगे बढ़ते ग्ररोक डायमंड का सामना करते हुए उसे जरा भी डर नहीं लगा। क्या ये दानव शिकारी था? पहले कहा गया था कि चून की राक्षस बहुत मूल्यवान थे, इसलिए दानव शिकारी के पेशे को जन्म दिया गया, जो विशेष रूप से राक्षसों को बेचने के लिए उनका शिकार करते थे और इस प्रकार अपनी आजीविका चलाते थे। आमतौर पर राक्षसों के अपार मूल्य को देखते हुए दानव शिकारी बेहद अमीर होते थे। एक दानव शिकारी अगर साल में सिर्फ एक राक्षस का शिकार करता तो पूरे साल बिना किसी चिंता के आराम से रहने लायक कमाई कर सकता था। लेकिन साथ ही ये पेशा भले ही लाभदायक था, लेकिन इसमें मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी। आखिरकार जिन लक्ष्यों का वे शिकार करते थे वे डरावने होते थे, जिससे शिकारी और शिकार के बीच भूमिकाएं बार बार बदलती रहती थी, इस हद तक कि ज्यादातर दानव शिकारी अंततः शिकार के दौरान ही मर जाते थे और राक्षसों का शिकार बन जाते थे। फिर भी इस पेशे को अपनाने वाले लोगों की संख्या अभी भी बहुत थी। आखिरकार राक्षस मूल्यवान होते थे और दानव शिकारियों में भी सचमुच कुशल लोग थे। कुछ ने तो अपना नाम भी बनाया और ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए जिन्होंने पूरे आकाश को हिलाकर रख दिया। रॉकी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका पहला दानव शिकार उसे एक दानव शिकारी के सामने ले आएगा। वह ये नहीं बता सकता था कि ये दुर्भाग्य था या सौभाग्य। वे लड़ रहे हैं। जैसे ही रॉकी अंदर ही अंदर सोच रहा था, बीस्टमैन और ग्ररॉक डायमंड में भयंकर संघर्ष शुरू हो गया था। सबसे पहले कदम उठाने वाला ग्ररॉक डायमंड नहीं बल्कि बीस्टमैन था। बीस्टमैन ने एक भयंकर दहाड़ लगाए और ग्ररॉक डायमंड की ओर झपटा। उसका पूरा शरीर हिलते हुए पहाड़ जैसा था। कुछ ही क्षणों बाद उसने ग्ररॉक डायमंड की छाती पर जोरदार प्रहार किया, जिससे विशालकाय प्रतिद्वंद्वी कई कदम पीछे हट गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही ग्ररॉक दानव शक्तिशाली प्रहार से लड़खड़ाकर पीछे हटा, बीस्टमैन उछल पड़ा, ब्रॉडेक्स अपने हाथों में उठाया और जोरदार वार किया। ब्रॉडेक्स के ग्ररॉक डायमंड के सिर पर सीधे प्रहार से एक ध्वनि उत्पन्न हुई, लेकिन इससे धातु की टकराने जैसी आवाज उत्पन्न हुई और फिर इसके बाद कुछ नहीं हुआ। ग्ररॉक डायमंड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये दृश्य देखकर रॉकी को अंततः समझ में आ गया कि लिलिया ने पहले क्या कहा था। ग्ररॉक दानव का शरीर अत्यंत कठोर था, जो साधारण हथियारों के प्रति अभेद्य था। कुल्हाड़ी से वार किए जाने के बाद ग्ररॉक दानव स्पष्ट रूप से क्रोधित हो गया और उसके पत्थर जैसे सिर पर एक दरार खुल गई, जिसके तुरंत बाद दरार से दहाड़ने की आवाजें निकलने लगी। दहाड़ के बीच ग्ररॉक दानव ने अपनी विशाल मुट्ठी उठाई और उसे बीस्टमैन पर जोर से पटक दिया। जो है सामने रखो। उतरती हुई मुट्ठी का सामना करते हुए न केवल बीस्टमैन ने बचाव नहीं किया, बल्कि उसने एक चीख भी निकाली और फिर ब्रॉडेक्स को दोनों हाथों से ऊपर उठाया, जैसे कि वह आग के आकाश को पकड़े हुए हो और हमले को पूरी तरह से रोकने का प्रयास कर रहा हो। एक क्षण बाद एक धीमी आवाज सुनाई दी। ग्ररॉक डायमंड की मुट्ठी भारी होकर ठीक बीस्टमैन के ब्रॉडेक्स पर पड़ी, और फिर भी उसने वास्तव में इसे अवरुद्ध कर दिया। मुट्ठी के नीचे बैठा बीस्टमैन अपने दांत पीस रहा था। उसकी भुजाओं की नसें उभर रही थी, क्योंकि उसने ब्रॉडेक्स से ग्ररॉक डायमंड की मुट्ठी को रोक रखा था तथा सफलतापूर्वक वार को झेल रहा था। फिर उसकी दहाड़ के बीच बीस्टमैन की भुजाएं जोर से फट गईं, तेजी से मुट्ठी को ऊपर की ओर गिरा दिया और जैसे ही वह उछला उसने ग्ररॉक दानव के सिर पर एक और कुल्हाड़ी का वार किया। हे भगवान! एक चट्टान के पीछे छिपा रॉकी अपने सामने हो रहे युद्ध को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बीस्टमैन इतना दुर्जय हो सकता है। एक राक्षस से आमने सामने लड़ने की हिम्मत कर सकता है और जरा भी पीछे नहीं हटेगा। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। फिर भी भले ही वह हैरान था और चाहे वह इसकी कितनी भी प्रशंसा कर रहा था, वह अपना मुख्य कार्य नहीं भूला था। वह भी राक्षसों का शिकार करने के लिए यहाँ आया था। तो रॉकी झिझक रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके सामने खड़ा बीस्टमैन इतना दुर्जय था, क्या उसे बस खड़े होकर बेहद कीमती ग्ररॉक डायमंड को हारते हुए देखना चाहिए और इस बड़े शिकार को हाथ से जाने देना चाहिए? ये सोचते हुए रॉकी लिलिया की ओर देखे बिना नहीं रह सका। फिर उसने देखा कि लिलिया की भौहें भी कसी हुई थीं। लिलिया, क्या ये बीस्टमैन जीत सकता है? कहना मुश्किल। लिलिया ने अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। ये बीस्टमैन बहुत शक्तिशाली है। मेरा अनुमान है कि वह कम से कम पांचवें स्तर का योद्धा है, शायद छठे स्तर का भी, और उसके पास बहुत अनुभव है। क्या आपने ध्यान दिया? उसका प्रत्येक हमला विशेष रूप से ग्ररॉक दानव के सिर को निशाना बनाता है, क्योंकि वही एकमात्र कमजोर जगह है जहां दानव कोर स्थित है। लेकिन इस बीस्टमैन के लिए ग्ररॉक डायमंड को हराना आसान नहीं होगा। वह पहले से ही ग्ररॉक डायमंड के बराबर है, यह आसान क्यों नहीं है? आप जल्द ही देखेंगे कि हम अभी महत्वपूर्ण क्षण पर नहीं पहुंचे हैं। बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए लिलिया युद्ध क्षेत्र को देखती रही। इस समय बीस्टमैन ग्ररॉक दानव के साथ एक भयंकर मौत की लड़ाई में उलझा हुआ था और वह वाकई बहुत दुर्जय था। अपने से कहीं ज्यादा बड़े ग्ररॉक दानव का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा, बल्कि अपनी अपेक्षाकृत ज्यादा चपलता के कारण वह कई बार बढ़त भी हासिल कर लेता था। इस परिणाम ने रॉकी को बहुत चिंतित कर दिया, क्योंकि इस दर पर ग्ररॉक डायमंड वास्तव में बीस्टमैन के बैग में समाप्त हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह नियंत्रण खोने वाला था, अचानक एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई। बीस्टमैन ने एक बार फिर ग्रॉग डायमंड के सिर पर अपनी ब्रॉडिक से वार किया, एक ऐसा वार जो उसने अनगिनत बार दोहराया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इस बार जब ब्रॉडिक्स गिरा तो कुछ अलग हुआ, एक चटकने की आवाज हुई और आखिरकार ग्रॉग डायमंड के चट्टान जैसे सिर में एक दरार दिखाई दी। लिलिया के अनुसार ग्रॉग दानव का एकमात्र कमजोर बिंदु उसका सिर था, इसलिए यद्यपि बीस्टमैन ने उसका सिर पूरी तरह से नहीं चकनाचूर किया था, फिर भी इस प्रहार से उसे आशा मिली कि कुछ और वार ग्रॉग दानव को खत्म कर सकते हैं। लेकिन उस समय बुरी तरह क्षतिग्रस्त ग्रॉग डायमंड ने एक गगनभेदी दहाड़ लगाए और पूरी तरह से उन्मत्त हो गया तथा बीस्टमैन पर आक्रामक हमला कर दिया। एक क्षण में उनकी लाभ की स्थिति पूरी तरह से उलट गई। बीस्टमैन, जो पहले थोड़ा ऊपर था, ग्रॉग डायमंड के पागल हो जाने के बाद तुरंत ही पराजित हो गया और शीघ्र ही महत्वपूर्ण रूप से नुकसान में चला गया। ग्रॉग दानव के मुक्कों का सामना करते हुए बीस्टमैन अब सीधे तौर पर प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और बस बेधगे तरीके से बच पा रहा था। पहले तो वह मुश्किल से हमलों से बच पाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साफ दिखाई देने लगी, उसकी सहन शक्ति कम होती जा रही थी। समय को देखते हुए वे काफी देर से लड़ रहे थे। लंबी लड़ाई के कारण बीस्टमैन की सहन शक्ति लगातार कम होती जा रही थी। इसके विपरीत ग्रॉग डायमंड पहले की तरह ही शक्तिशाली बना रहा। इसलिए जब ग्रॉग डायमंड ने अपना उन्मत्त हमला शुरू किया और लड़ाई की तीव्रता बढ़ गई तो बीस्टमैन धीरे धीरे उसका सामना नहीं कर सका। लगातार कई हमलों से बचने के बाद अंततः बीस्टमैन को लापरवाही से एक मुक्का मारा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। एक मुक्का से बीस्टमैन जमीन पर गिर गया और फिर ग्रॉग डायमंड ने अपना पैर उठाया और गुस्से से दहाड़ते हुए उसे नीचे पटक दिया और बीस्टमैन को एक ही झटके से कुचलने का प्रयास किया। उसी क्षण बीस्टमैन को मृत्यु का खतरा महसूस हुआ और वह उठने से पहले ही जल्दी से एक और लुढ़क गया। इसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ, ग्रॉग डायमंड का पैर नीचे गिर गया और जमीन पर धुएं का बादल छा गया। आह, धुएं के घेरे के भीतर से अचानक चीख की आवाज आई। एक चट्टान के पीछे छिपे रॉकी और लिलिया ने जल्दी से उधर देखा, लेकिन धुआं छटने के बाद ही उन्हें पता चला कि बीस्टमैन का एक हाथ ग्रॉग डायमंड के पैर के नीचे दबा हुआ था। चीख पुकार के बीच बीस्टमैन ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए जोरदार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ग्रॉग डायमंड का शरीर उससे भी ज्यादा भारी था और पूरी तरह से पत्थर का बना था, जिससे उसका वजन अकल्पनीय लग रहा था। जबकि बीस्टमैन भागने के लिए संघर्ष कर रहा था, ग्रॉग डायमंड ने अपना पैर उठाने के बजाय अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई और सीधे बीस्टमैन पर निशाना साधा। धमाका, ग्रॉग डायमंड की मुट्ठी जमीन पर पड़ते ही एक जोरदार धमाके की आवाज हुई और उसी समय बीस्टमैन की चीखें अचानक बंद हो गईं। क्या वह था? क्या उसे कुचलकर मार दिया गया था? बीस्टमैन की चीखें अब सुनाई नहीं दे रही थी। एक चट्टान के पीछे छिपे रॉकी को अपनी रीढ़ में एक सिहरन सी महसूस हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि बीस्टमैन को अभी अभी कुचलकर मार डाला गया हो? लेकिन कोई नहीं। जैसे ही उसने सोचा कि बीस्टमैन मारा गया है, उसने अचानक कुछ ही दूरी पर एक अस्त व्यस्त आकृति को प्रकट होते देखा। ये बीस्टमैन था। वह जिंदा था और वह भाग गया था। बीस्टमैन को दोबारा आते देख रॉकी चौंक गया। हालांकि जब उसने बीस्टमैन को गौर से देखा तो वह दंग रह गया। बीस्टमैन के हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी से खून टपक रहा था और उसका दूसरा हाथ साफ तौर पर कटा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए बीस्टमैन ने अपना ही हाथ काट दिया जो नीचे दबा हुआ था, और इस प्रकार वह बाल बाल बच गया। वह निर्दयी था। अभी भी खून बह रहे स्टंप को देखकर रॉकी को लगा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया होगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ होगा कि राक्षसों से निपटना कितना खतरनाक था, कि जीवन और मृत्यु एक पल पर निर्भर हो सकते हैं। अरे नहीं, रॉकी कुछ स्तब्ध था। लिलिया अचानक चिल्लाई, जिससे वह स्तब्धता से बाहर आ गया। अरे नहीं, होश में आते ही रॉकी ने चुपचाप कोसा, क्योंकि वह जानवर जो अभी अभी मौत से बाल बाल बचा था उनकी ओर बढ़ रहा था, जहां वह और लिलिया छिपे हुए थे। इसका मतलब यह नहीं था कि बीस्टमैन ने उन्हें देख लिया था, बल्कि एक हाथ गंवाकर वह जानता था कि वह जीत नहीं सकता, इसलिए उसने भागने का फैसला किया। संयोग से उसके भागने की दिशा ठीक वही थी जहां रॉकी और लिलिया छिपे हुए थे। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, उन्मत्त ग्रॉग दानव ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्मत्त दानव ने न केवल बीस्टमैन को पकड़ लिया, बल्कि अपनी मुट्ठी उठाकर उसे कुचल दिया, जिससे बीस्टमैन को अपनी आखिरी ताकत लगाकर मुश्किल से बच निकलना पड़ा। यद्यपि वह चकमा दे गया, लेकिन ग्रॉग दानव की मुट्ठी सीधे एक बड़ी चट्टान पर जा लगी, वही चट्टान जिसके पीछे रॉकी और लिलिया छिपे हुए थे। जैसे ही चट्टान टूटी, वे दोनों बाहर निकल आए और बीस्टमैन तथा ग्रॉग डायमंड के सामने प्रकट हुए। एक क्षण में पूरा जंगल शांत हो गया, क्योंकि न तो बीस्टमैन और न ही ग्रॉग डायमंड को उम्मीद थी कि कोई और वहां मौजूद होगा। इसी तरह रॉकी और लिलिया भी अचंभित रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे खुद को इस तरह उजागर कर देंगे। लेकिन जब बीस्टमैन, ग्रॉग डायमंड और रॉकी सभी स्तब्ध हो गए, तो लिलिया ने सबसे पहले प्रतिक्रिया की और वह रॉकी पर चिल्लाई, कार्यवाही करना, आक्रमण करना। जबकि बाकी सभी लोग स्तब्ध थे, लिलिया ने सबसे तेज प्रतिक्रिया की, वह रॉकी पर चिल्लाई और फिर हाथ में ढाल और लंबी तलवार को कसकर पकड़ते हुए वह सीधे ग्रे रॉक दानव पर टूट पड़ी। रॉकी और बीस्टमैन जल्दी से उनके पास पहुंच गए और बीस्टमैन की प्रतिक्रिया थोड़ी तेज थी। वह रॉकी और लिलिया कौन है इस बात में उलझा नहीं, बल्कि मौके का फायदा उठाकर सीधे जंगल में भाग गया। जहां तक रॉकी का प्रश्न है, वह हवा में उड़ गया और फिर हवा में ही ग्रॉक डायमंड पर कूद पड़ा। मैं इसे रोक लूंगा, तुम इसके सिर पर हमला करने का मौका ढूंढो। ग्रॉक दानव के पास पहुंचते हुए अपनी ढाल को ऊपर उठाते हुए लिलिया ने अपनी लंबी तलवार को ग्रॉक दानव के निचले पैर की ओर जोर से घुमाते हुए चिल्लाया। ग्रे रॉक दानव 3 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और उसके जैसे ही विशालकाय जानवर भी उसके सामने आने पर उसकी छाती तक ही पहुंच पाते थे, इसलिए लिलिया, जो जानवरों से भी छोटी थी, इतने विशालकाय जीव से मुकाबला नहीं कर सकती थी। इस विशालकाय राक्षस के सामने लिलिया एक छोटे से कण के समान थी। लेकिन इस छोटी सी संख्या को कम मत आंकिए, क्योंकि लिलिया अब पूरी तरह से विंसेल द्वारा मजबूत किए गए रून संवर्धित उपकरणों से सुसज्जित थी। इस रून उपकरण की शक्ति से उसकी ताकत आसमान छू रही थी और वह 5वें स्तर के योद्धा के स्तर के करीब पहुंच गई थी। इसलिए जब लिलिया की तलवार ने ग्रॉक दानव पर वार किया तो एक दरार के बाद पत्थर के टुकड़े बिखरने से पता चला कि उसने वास्तव में ग्रॉक दानव को घायल कर दिया था। ये सचमुच अविश्वसनीय था, चट्टान की तरह ठोस ग्रॉक दानव इतनी आसानी से चोट लगी। अगर पहले वाला बीस्टमैन ये दृश्य देखता तो सदमे से उसका जबड़ा खुला रह जाता, क्योंकि वह काफी देर तक बेतहाशा लड़ता रहा था, एक ही जगह पर अनगिनत बार वार करता रहा था, बस ग्रॉक डायमन के सिर पर बमुश्किल एक दरार डालने के लिए। फिर भी लिलिया के एक ही वार ने ग्रॉक डायमन के शरीर से पत्थर के कई टुकड़े गिरा दिए, अंतर बहुत ज्यादा था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि लिलिया बीस्टमैन से ज्यादा ताकतवर थी, असल में ताकत का असली अंतर बीस्टमैन के पक्ष में ही था। असली फर्क उपकरणों में था, बीस्टमैन का ब्रॉडेक्स लिलिया के पूरे रून उपकरणों के सामने कहीं नहीं टिक सकता था, खासकर लिलिया के हाथ में मौजूद लंबी तलवार जो रॉकी को शोध संस्थान में मिली थी। विंसेल ने इस लंबी तलवार पर कई 100 प्रथम स्तरीय रून अंकित किए थे और इसमें निहित मान शून्य जादुई कवच की पार्श्व तलवार से भी ज्यादा था। जैसा कि कहावत है, एक अच्छे घोड़े को एक अच्छी काठी की आवश्यकता होती है। लिलिया एक ही वार में ग्रॉक दानव को घायल कर सकी, इसका कारण यह था कि उसका हथियार काफी अच्छा था। इस समय ग्रे रॉक दानव मारा गया था, स्पष्ट रूप से दर्द में था और तुरंत अपनी मुट्ठी लिलिया पर लहराए। अवसर, ग्रॉक दानव को लिलिया पर ध्यान केंद्रित करते देख रॉकी ने तुरंत इस अवसर का लाभ उठाया और तेजी से हवा से ग्रॉक दानव के सिर के ऊपर से उड़कर उसके सिर पर वार किया। एक धमाके के साथ रॉकी की लंबी तलवार ग्रॉक दानव के सिर पर जोर से लगी, जिसके बाद एक कर्कश ध्वनि हुई जिसने बीस्टमैन द्वारा काटी गई दरार को और भी बड़ा कर दिया। रॉकी ने शून्य जादुई कवच पहन रखा था और उसके हाथ में जो तलवार थी उसमें प्राकृतिक रूप से जादुई पत्थर जड़े हुए थे और उस पर अनेक रून अंकित थे, इसलिए उसकी शक्ति अपार थी। इसके अलावा ग्रॉक दानव के सिर पर पहले ही बीस्टमैन द्वारा अनगिनत बार हमला किया जा चुका था और उसमें कमजोरी दिखाई दी थी, इसलिए रॉकी के तलवार के वार का तुरंत असर हुआ। इस समय ग्रॉक दानव को स्पष्ट रूप से भारी झटका लगा था, उसका विशाल रूप भी डगमगा रहा था और लगभग अपना संतुलन खो रहा था। लेकिन इसी तरह बुरी तरह घायल ग्रॉक दानव अपने पैर जमाने के बाद और भी अधिक उग्र हो गया। आप उसे क्रोध में दहाड़ते हुए देख सकते थे जब उसने दोनों हाथ उठाए और फिर एक शक्तिशाली प्रहार से रॉकी के सिर को कुचलने की कोशिश की। ऐसे में रॉकी, जो दूसरा वार करना चाहता था, भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका और जल्दी से ऊपर उड़ गया। जैसे ही वह ग्रॉक दानव के हमले की पहुंच से बाहर निकला, एक धीमी सी आवाज हुई और दानव की उठी हुई बाहें इतनी जोर से आपस में टकराई कि उसकी हथेलियां भी टूट गईं। ये देखकर रॉकी के पसीने छूट गए और उसे इस बात का शुक्र हुआ कि उसने जल्दी सफलता पाने के लिए जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि अगर इतना भारी वार उसे लगता तो वह मर नहीं सकता था, बल्कि गंभीर रूप से घायल हो सकता था। रॉकी को अपने हमले की सीमा से बाहर निकलते देख जमीन पर मौजूद ग्रॉक दानव उस पर लगातार दहाड़ने लगा तथा उसे हवा में मारने के लिए पागलों की तरह अपनी भुजाएं लहराने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि अचानक अपने बेतहाशा हाथ हिलाने के दौरान ग्रॉक डायमंड झुक गया और उसका विशाल शरीर बिना किसी चेतावनी के नीचे गिर गया। पता चला कि जब रॉकी ने ग्रॉक दानव का ध्यान अपनी ओर खींचा था, लिलिया ने मौके का फायदा उठाकर उसके पीछे चक्कर लगाया और मौके का फायदा उठाकर अपनी पूरी ताकत से ग्रॉक दानव के घुटने पर वार किया। अपनी तलवार की ताकत का इस्तेमाल करके उसने ग्रॉक दानव का संतुलन बिगाड़ दिया और उसे जमीन पर आधा घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसी समय रॉकी हवा में फिर से नीचे कूदा और ग्रॉक डायमन के सिर पर एक बार फिर से वार किया। इस तरह रॉकी और लिलिया एक हवा में और दूसरा जमीन पर ग्रॉक दानव से भिड़ने लगे। हालांकि रॉकी और लिलिया की पूर्ण शक्ति बीस्टमैन की तुलना में कम थी, एक ने रून संवर्धित शून्य जादुई कवच और दूसरे ने रून उपकरण पहने हुए थे। उनके मौन सहयोग से उनकी संयुक्त शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन आया, जिससे क्रोधित ग्रॉक दानव के पास उनके विरुद्ध कोई मौका नहीं बचा। फुर्तीली लिलिया और स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले रॉकी का सामना करते हुए ग्रॉक दानव को कठपुतली की तरह खेला गया। हर बार जब वह उनमें से किसी एक को निशाना बनाता तो दूसरा चुपके से हमला कर देता, और दोनों के हथियार इतने शक्तिशाली थे कि युगल ने धीरे धीरे ग्रॉक दानव को पस्त और घायल कर दिया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बार बार के हमलों के दौरान ग्रॉक दानव का सिर मुख्य लक्ष्य बन गया, जिस पर अनगिनत वार हुए मरना। बैकवोट। जब ग्रॉक दानव एक बार फिर लिलिया के बहकावे में आया तो रॉकी ने उसके सिर के ऊपर से हमला किया और तलवार से एक और वार किया, जिससे उसका आधा मस्तिष्क कट गया, यहां तक कि उसके भीतर का दानव कोर भी उजागर हो गया। अंततः उन्हें परिणाम दिखे। अपने प्रहार से राक्षस का आधा दिमाग कट गया और दानव कोर का पर्दाफाश होता देख रॉकी बहुत खुश हुआ। इसका मतलब था कि वे कामयाब होने वाले थे। अगर अगला प्रहार दानव कोर पर लग गया तो यह उनके सामने मौजूद राक्षस का पूरी तरह से सफाया करने के लिए काफी होगा। लेकिन जैसे ही रॉकी अपनी जीत का जश्न मना रहा था, ग्रॉक दानव पूरी तरह से उन्मत्त हो गया। मौत के खतरे से घबरा कर उसने कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाए और अचानक दिशा बदलकर जंगल में घुस गया। ये था भागने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रॉक दानव की गतिविधियों ने रॉकी और लिलिया दोनों को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राक्षस को पता होगा कि कैसे भागना है। हालांकि उन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि राक्षस भागते नहीं और यही बात उन्हें सबसे अधिक भयानक बनाती थी। पागल ग्रॉक दानव भागा नहीं बल्कि एक बड़े पेड़ के पास पहुंच गया। उसने पेड़ के तने को जकड़ लिया, उस विशाल पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया और फिर उसे झाड़ू की तरह लिलिया की ओर घुमाया। आह, विशाल पेड़ के सामने लिलिया के पास अपनी फुर्ती के बावजूद भागने की कोई जगह नहीं थी। वह बस खुद को ढाल से बचा सकती थी इससे पहले कि पेड़ का तना उस पर जोर से वार करे और वह उड़ जाए। लिलिया को उड़ता देख हवा में ही रॉकी घबरा गया। लेकिन अगला शिकार वही था, क्योंकि ग्रे रॉक दानव ने लिलिया को उड़ाकर पेड़ उठाया और उस पर निशाना साधा। धत्तेरी की रॉकी, जो पहले लिलिया को बचाने के लिए नीचे कूदने वाला था, को नीचे उतरना पड़ा और फुर्ती से एक कदम आगे बढ़ते हुए हवा में चक्कर लगाया, जिससे वह हमले से बाल बाल बच गया। जादू का प्रयोग करो, तभी नीचे से लिलिया की आवाज आई। हालांकि उसे सीधे वार किया गया था, लेकिन उसके रून उपकरणों की सुरक्षा और ढाल के सही समय पर इस्तेमाल की वजह से उसकी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थी। उसमें रॉकी को याद दिलाने की ताकत भी थी। रॉकी ने तुरंत उसकी सलाह मान ली और ग्रॉक दानव के चारों ओर उड़ना शुरू कर दिया। अपनी हथेली खोलकर उसने जादुई गोलियों की एक श्रृंखला चलाई। इसके बाद बूम 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 की आवाजें आने लगी और आकाश से जादुई गोलियों की बौछार होने लगी। हालांकि तेज उड़ान के कारण जादुई गोलियों की मारक क्षमता ज्यादा नहीं थी, ग्रॉक दानव पर केवल एक छोटा सा हिस्सा ही लगा और ज्यादातर गोलियां चूक गईं। शून्य जादुई कवच से सशक्त रॉकी के लिए इन गोलियों से भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वह केवल तीसरे स्तर के जादूगर के स्तर तक ही पहुंच पाया था। उसकी जादुई गोलियां ग्रॉक दानव को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कमजोर थीं। फिर भी बिना प्रहार वाली जादुई गोलियों का स्पष्ट प्रभाव पड़ा, क्योंकि जमीन पर गिरते ही उन्होंने धूल उड़ा दी, जिससे युद्ध क्षेत्र शीघ्र ही धुएं में ढक गया तथा ग्रॉक दानव, रॉकी और लिलिया सभी उसमें खो गए। रॉकी का असली इरादा यही था। धुएं के गुबार के बीच ग्रॉक दानव का विशाल शरीर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन रॉकी और लिलिया के लिए स्थिति अलग थी। धुएं में घिरने के बाद वे पूरी तरह से गायब हो गए, जिससे ग्रॉक दानव उन्हें ढूंढ नहीं पाया। एक पल के लिए युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया, सिर्फ ग्रॉक दानव की दहाड़ और भारी कदमों की आहट सुनाई दी। चाहे वह कितना भी दहाड़े, रॉकी और लिलिया कहीं दिखाई नहीं दिए। लग रहा था मानो गायब हो गए हों। दहाड़। उस जोड़े को न पाकर ग्रॉक दानव की दहाड़े तेज हो गईं और उसने पेड़ को अपने हाथों में लेकर अंधाधुंध घुमाया तथा आसपास के क्षेत्र में कई चक्कर लगाए। जैसे जैसे पेड़ पर धुआं फैलता गया, धुआं धीरे धीरे छंटता गया और जो कुछ भी ढका हुआ था वह सब दिखने लगा। मरना। लेकिन जैसे ही धुआं छंटना शुरू हुआ, लिलिया, जो कुछ समय से नजरों से ओझल थी, अचानक ग्रॉक दानव के ऊपर से गिर पड़ी। उसकी रून तलवार सीधे उसके सिर पर निशाना साध रही थी। एक झंझनाहट के साथ लिलिया ने वार किया। उसकी तलवार ने ग्रॉक दानव की बांह पर जोर से प्रहार किया। एक महत्वपूर्ण क्षण में ग्रॉक दानव ने पेड़ को गिरा दिया और अपने सिर की रक्षा के लिए अपना हाथ उठाया, जिससे वह घातक प्रहार से सफलतापूर्वक बच गया। हालांकि जिस क्षण लिलिया का प्रहार अवरुद्ध हुआ, ग्रॉक दानव का सिर घुस गया। एक रून तलवार ग्रॉक दानव की खोपड़ी के पीछे से प्रवेश कर गई तथा उसके अंदर के दानव कोर को भेदते हुए उसके मुंह से बाहर आ गई, जो एक छेद जैसा था। शून्य जादू कवच पहने रॉकी ग्रॉक दानव के पीछे तैर गया और उसे मार गिराया। रॉकी ने अपनी तलवार ग्रॉक दानव के दानव कोर के पीछे से घुसा दी, जिससे भयानक प्राणी पूरी तरह से मर गया। दानव कोर के छेद होने पर एक जोरदार धमाका हुआ और ग्रॉक दानव का विशाल शरीर एक धमाके के साथ ढह गया, जो अलग अलग आकार के पत्थरों में टूट गया, जो ग्रॉक पत्थरों में बदल गए, जिनका उल्लेख लिलिया ने पहले किया था। शिकार सफल। जब उन्होंने ग्रॉग डेमन को मलबे में तब्दील होते देखा तो रॉकी और लिलिया ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर एक साथ मुस्कान फैल गई। वे जीत गए थे, उन्होंने सचमुच ग्रॉग दानव को मार डाला था। कठिन और खतरनाक लड़ाई ने उन दोनों को थका दिया था, इसलिए जैसे ही ग्रॉग दानव जमीन पर गिरा वे तुरंत अत्यधिक थकान से अभिभूत हो गए और सांस लेने के लिए जमीन पर बैठ गए। सच कहें तो हालांकि रॉकी ने पहले से ही पर्याप्त तैयारी कर ली थी और लिलिया के साथ एक सप्ताह का गहन प्रशिक्षण भी लिया था, फिर भी दानव के साथ वास्तविक मुठभेड़, विशेष रूप से युद्ध, ने उसे यह समझने में मदद की कि दानव के सामने किस तरह का दबाव सहना पड़ता है। इसलिए भले ही ग्रॉग डेमन असली पत्थरों से अधिक कुछ नहीं रह गया था, लेकिन हाल ही में हुई लड़ाई की याद अभी भी रॉकी की धड़कनों को बढ़ा रही थी। अभी तो ये बहुत करीब था। एक चट्टान ग्रॉग डेमन के सहारे झुककर रॉकी अपने आश्चर्य को व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वह और लिलिया गंभीर रूप से घायल नहीं हुए थे, इसका मतलब यह नहीं था कि लड़ाई खतरनाक नहीं थी। दरअसल अगर वे साथ न होते, अगर उनके उपकरण पर्याप्त अच्छे न होते, या अगर बीस्टमैन पहले से ही अग्रिम पंक्ति में न लड़े होते तो शायद वे जीत ही न पाते। आपने अच्छा किया, रॉकी के बगल में बैठी लिलिया ने कहा जैसे ही उसने उसकी ओर देखा और एक जानकार मुस्कान प्रकट की। रॉकी का प्रदर्शन उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। सच कहूं तो यह अप्रत्याशित रूप से अच्छा था। चूंकि लिलिया रॉकी को सबसे अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसे पता था कि उसने पहले कभी असल में लड़ाई नहीं की थी, ज्यादा से ज्यादा उसने उसके साथ कोई मामूली प्रशिक्षण जरूर लिया था। लेकिन चाहे कोई कितना भी प्रशिक्षण ले ले, उसकी तुलना असली लड़ाई से नहीं की जा सकती। इसलिए इस बिंदु से पहले युद्ध के दौरान भी लिलिया को चिंता थी कि रॉकी टिक नहीं पाएगा, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से। तीव्र और खतरनाक लड़ाइयां अस्थिर हृदय वालों को आसानी से कुचल सकती हैं, फिर भी रॉकी ने कामयाबी हासिल कर ली थी और उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। हाहा, लिलिया की प्रशंसा सुनकर रॉकी खिलखिलाकर हंस पड़ा और स्वाभाविक रूप से उसे विशेष प्रसन्नता महसूस हुई। वे हंसी मजाक करते हुए लड़ाई से अपनी थकान दूर कर रहे थे, लेकिन जल्द ही वे एक जरूरी काम में व्यस्त हो गए। यद्यपि उन्होंने ग्रॉग दानव को मार डाला था, लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे अभी भी जंगल के बीच में थे, अभी भी जमीन पर थे। इस दिन और युग में भूमि निस्संदेह दुनिया में सबसे खतरनाक जगह थी, इसलिए अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद उन्होंने आराम करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत ग्रॉग दानव के शरीर को इकट्ठा करने के लिए तैयार हो गए, जो कि चारों ओर बिखरे हुए ग्रॉग स्टोन्स थे। ये ग्रॉग स्टोन्स उनकी युद्ध में लूटे गए थे और बेहद कीमती भी। ये साधारण से दिखने वाले पत्थर बाजार में आते ही तुरंत बिक जाते थे, जिससे रॉकी और थंडहॉक शहर में धन का प्रवाह लगातार बढ़ता रहता था। इन परिस्थितियों में रॉकी ने पहले से तैयार किए गए बैग निकाले और लिलिया के साथ मिलकर सभी ग्रॉग पत्थरों को इकट्ठा किया, एक भी टुकड़ा पीछे नहीं छोड़ा। रॉकी ने पहले भी शोध संस्थान में कुछ ऐसा ही काम किया था, इसलिए वह काफी अनुभवी था। लिलिया, तुम्हें क्या लगता है ये ग्रॉग स्टोन्स कितने में बिकेंगे? रॉकी ने जमीन से पत्थर इकट्ठा करते हुए पूछा। ये कहना मुश्किल है, जब हम घर पर एलिन से पूछेंगे तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है ग्रॉग स्टील सबसे अच्छी स्टील सामग्री में से एक है और यह बाजार में ग्राम के हिसाब से बिकती है, इसलिए इस बार हम निश्चित रूप से अच्छी कमाई करेंगे, लिलिया ने उत्तर दिया। ये बहुत बढ़िया है, हे हे। रॉकी को लिलिया की बात सुनकर बहुत राहत मिली। आखिरकार उसने पैसे कमाने के लिए राक्षसों का शिकार करते हुए अपनी जान जोखिम में डाली थी। लेकिन जैसे ही वह ग्रॉग पत्थरों को बड़े बोरों में खुशी खुशी भर रहा था, लिलिया अचानक रुक गई और अपनी तलवार को पकड़ते हुए खड़ी हो गई। लिलिया, क्या है? लिलिया की ओर देखने के बाद रॉकी ने पाया कि वह उसके पीछे गौर से देख रही है और जल्दी से पीछे मुड़ा तो देखा कि उसके पीछे जंगल में एक व्यक्ति खड़ा था। इस व्यक्ति के पास केवल एक हाथ था। ये पहले वाला बीस्टमैन था। यह आदमी अभी तक भागा नहीं है। बीस्टमैन को दोबारा देखकर आश्चर्यचकित होकर रॉकी ने तुरंत अपनी तलवार पकड़ ली। क्या ये व्यक्ति युद्ध की लूट को चुराने के लिए सिकाडा का पीछा करने वाले मेंटिस की तरह ओरियोल के साथ झपट्टा मारने की योजना बना रहा था? रॉकी को ऐसा सोचना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि सच कहें तो ग्रॉग डेमन असल में बीस्टमैन का शिकार था। बीस्टमैन ने न सिर्फ उसे सबसे पहले खोजा था, बल्कि उसने उससे काफी देर तक लड़ाई भी की थी और इस लड़ाई के दौरान बीस्टमैन ने ग्रॉग डेमन की खोपड़ी भी तोड़ दी थी। लिलिया और रॉकी की ग्रॉग डेमन पर अपेक्षाकृत आसान जीत का श्रेय काफी हद तक बीस्टमैन को ही जाता है। इस कारण बीस्टमैन के लिए लूट का हिस्सा चाहना या यहां तक कि उसे बलपूर्वक छीनने का प्रयास करना असंभव नहीं था। और जब रॉकी और लिलिया दोनों ने अपना ध्यान बीस्टमैन की ओर लगाया, जिसने एक हाथ खो देने के बावजूद अपने दूसरे हाथ में अभी भी एक चौड़ी कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी, तो वह भी एक कदम आगे बढ़ा और उनकी ओर चल पड़ा। रुको और करीब मत आओ। जब बीस्टमैन रॉकी के एक दर्जन मीटर के भीतर आ गया तो लिलिया रॉकी को बचाने के लिए आगे बढ़ी, उसकी लंबी तलवार सीधे बीस्टमैन की ओर तान दी और उसे और करीब न आने का आदेश दिया। लिलिया अच्छी तरह जानती थी कि बीस्टमैन कितना शक्तिशाली है। कटे हुए हाथ के बावजूद भी वह कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए वह उसे बहुत करीब नहीं आने दे सकती थी। हालांकि रॉकी और लिलिया दोनों को हैरानी हुई जब बीस्टमैन सचमुच वहीं रुक गया। इतना ही नहीं, उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाए और धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई। बीस्टमैन की संस्कृति में प्रतिद्वंद्वी के सामने हथियार डाल देना आत्मसमर्पण करने के बराबर था। तुम दोनों, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखने के बाद बीस्टमैन बोला। उसकी आवाज कुछ धीमी थी, फिर भी बहुत तेज थी, जिससे दूर से गड़गड़ाहट का आभास हो रहा था। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो आप वहां से कह सकते हैं। लिलिया ने, हालांकि बीस्टमैन ने अपना हथियार रख दिया था, अपनी सतर्कता जरा भी कम नहीं की। उसने अपनी लंबी तलवार को अब भी कसकर पकड़ रखा था, ताकि बीस्टमैन उसके और करीब ना आ सके। बीस्टमैन उसकी कड़ी सावधानी से थोड़ा असहाय लग रहा था और रॉकी को और भी ज्यादा अहमियत देने लगा, क्योंकि उसे साफ साफ एहसास हो रहा था कि लिलिया उसकी रक्षा कर रही है। और तो और, रॉकी के शून्य जादुई कवच ने यह साफ कर दिया था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। इस प्रकार स्थिर खड़े होकर बीस्टमैन ने पूछा, मेरे प्रभु, आप दानव शिकारी नहीं हैं क्या? आप हैं? नहीं। रॉकी को यह एहसास हुआ कि बीस्टमैन उससे बात कर रहा है। उसने सिर हिलाया। महाराज, क्या आप स्काई सिटी से हैं? जब बीस्टमैन को यह विश्वास हो गया कि वह और रॉकी एक ही पेशे के नहीं हैं, तो उसने राहत की सांस ली और अपना प्रश्न आगे बढ़ाया। हाँ, तुम्हें इससे क्या चाहिए? महाराज, मुझे आशा है कि आप मुझे स्काई सिटी ले जा सकेंगे। मैं इलाज की जरूरत है। जब बीस्टमैन ने ये शब्द कहे, तभी रॉकी को याद आया कि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था। अभी भी राजसी दिखने के बावजूद बीस्टमैन का बायां हाथ पूरी तरह से गायब था। खून बहने से रोकने के लिए स्टंप को भांग की रस्सी से बांध दिया गया था और चोट स्पष्ट रूप से बहुत गंभीर थी। यही असली वजह थी कि बीस्टमैन वापस लौट आया था। हालांकि वह शुरू में रॉकी, लिलिया और डायमन के बीच लड़ाई का फायदा उठाकर भाग गया था, लेकिन इतनी गंभीर चोट उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए साधारण ड्रेसिंग के बाद उसे वापस लौटना पड़ा और नतीजा ये हुआ कि उनके सामने यह मंजर आ गया। और उसके शब्द सुनकर रॉकी के जवाब देने से पहले ही लिलिया अचानक मुड़ी और उसके कान में फुसफुसाई, उसे हमारे साथ वापस ले जाओ और उसे शहर में ही रखने की कोशिश करो। ये जानने पर कि बीस्टमैन वास्तव में चाहते थे कि वे उसे उसकी चोटों के इलाज के लिए स्काई सिटी वापस ले जाएं, लिलिया ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत रॉकी से फुसफुसाया, उसे वापस ले जाओ और उसे रखने की कोशिश करो। रॉकी को ये शब्द सुनकर हैरानी हुई। हालांकि वह लिलिया के बदले हुए रवैये से हैरान था, लेकिन उसने फौरन उसकी मंशा समझ ली। क्या वह उससे पहले ही बीस्टमैन को वश में करवाने की योजना बना रही थी? एक बार जब रॉकी को लिलिया का इरादा समझ में आ गया, तो उसे तुरंत लगा कि यह संभव है। बीस्टमैन का एक हाथ कट जाने के बावजूद, जिससे वह गंभीर रूप से घायल दिखाई दे रहा था, उसकी अंतर्निहित शक्ति अचूक थी। एक हाथ न होने के बावजूद उसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। दुर्भाग्य से उसकी वर्तमान स्थिति में उसके लिए दानव शिकारी के रूप में बने रहना असंभव था। अकेले राक्षसों का वध करते हुए बीस्टमैन शक्ति के इतने राक्षसी स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन इससे रॉकी के सामने एक मौका आया। अगर वह उस बीस्टमैन को अपने अधीन रख पाता, जो अब उसके अधीन राक्षसों का शिकार नहीं कर सकता था, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि होती। चाहे वह बीस्टमैन की ताकत हो या उसका अनुभव और अंतर्दृष्टि, ये सब रॉकी के लिए बहुत मददगार साबित होता। ये सोचते हुए उसने लिलिया को हल्का सा सिर हिलाकर ये दर्शाया कि वह उसका संदेश समझ गया है, फिर बीस्टमैन की ओर मुड़ा और बोला, मैं तुम्हें स्काई सिटी ले जा सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकी की सहमति की मुद्रा देखकर बीस्टमैन बहुत उत्साहित दिखाई दिया और उसकी तंत्रिकाएं शिथिल हो गईं, जिसके कारण उसका विशाल शरीर अनियंत्रित रूप से हिलने लगा। उसकी चोटें असल में जितनी दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। उसने अपना रौबदार व्यवहार बनाए रखा था, इसकी वजह उसकी दृढ़ता ही थी। अब जबकि वह शांत हो गया था, उसे अपने व्यवहार को बनाए रखने में जबरदस्ती करनी पड़ रही थी। यह आदमी, वह काफी चतुर है। बीस्टमैन का बिगड़ता रंग देखकर रॉकी स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसका अभी अभी का रूप बनावटी था। इससे उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार दोनों में से कोई भी पक्ष एक दूसरे को नहीं जानता था और बीस्टमैन का मजबूत चेहरा बनाए रखना, कम से कम लड़ने में सक्षम दिखना गलत नहीं था, वरना कोई भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि वह शिकार का निशाना ना बने। जमीन पर इस तरह की बातें असामान्य नहीं थी। तुम्हारा नाम क्या है? और इस तरह रॉकी, लिलिया और बीस्टमैन एक साथ जंगल से निकल पड़े और जंगल के किनारे की ओर अपनी यात्रा शुरू की। जब वे चल रहे थे, रॉकी ने पूछा, मोटे? बीस्टमैन ने रॉकी की ओर देखा, लिलिया को छोड़कर जो उनके बीच में थी, और गहरी गूंजती आवाज में उसने अपना नाम बताया। हालांकि वे तीनों इस समय जंगल के बाहरी इलाके की ओर साथ साथ चल रहे थे, फिर भी उन्होंने एक दूसरे से काफी दूरी बनाए रखी। लिलिया और रॉकी साथ साथ चल रहे थे, जानबूझकर बीस्टमैन को रॉकी से दूर रखते हुए, जो स्पष्ट रूप से अभी भी सतर्क था। लिलिया को इस सावधानी में कोई समस्या नजर नहीं आई। हालांकि वह रॉकी से बीस्टमैन को वश में करवाने की इच्छुक थी, लेकिन जब तक वे उसकी पृष्ठभूमि और चरित्र को पूरी तरह से समझ नहीं लेते, तब तक सतर्क रहना ही समझदारी थी, वरना अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बहुत देर हो सकती थी। बीस्टमैन ने भी लिलिया के विचारों को भांप लिया और जानबूझकर रॉकी से काफी दूरी बनाए रखी। गनीमत थी कि उसकी आवाज स्वाभाविक रूप से ऊंची थी, वरना बात करते हुए उन्हें एक दूसरे की आवाज सुनने में दिक्कत होती। मेरा नाम रॉकी है और यह मेरी गार्ड लिलिया है। हम थंडरहॉक सिटी से हैं। मोटे द्वारा अपना परिचय देने के बाद रॉकी ने भी अपना संक्षिप्त परिचय दिया और इसके साथ ही वे एक दूसरे से परिचित हो गए। स्काई सिटी लौटने की आपकी क्या योजना है? आप चाहें तो मेरे स्काईशिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जंगल के किनारे की ओर बढ़ते हुए मोटे ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, कोई हमें लेने आ जाएगा। आपके पास स्काईशिप है? लिलिया ने मोटे का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन रॉकी के चेहरे पर आश्चर्य और उत्सुकता साफ झलक रही थी। वह जानता था कि मोटे एक दानव शिकारी है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस आदमी के पास भी एक स्काईशिप है। स्काईशिप सस्ते नहीं होते, ज्यादातर लोग उसे खरीद ही नहीं सकते थे। वे कहते हैं कि दानव शिकारी धनवान होते हैं, और यह बात सच भी लगती है। यह एक छोटा सा घिसा हुआ जहाज है जो मुश्किल से चलने लायक है, और इसका कोई खास मूल्य नहीं है। जहां तक रॉकी के आश्चर्य और जिज्ञासा का सवाल है, मोटे को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। एक दानव शिकारी के रूप में मोटे ने दूर दूर तक यात्रा की थी, और वह तुरंत बता सकता था कि रॉकी, हालांकि कोई साधारण स्थिति नहीं थी, कई चीजों के बारे में अनभिज्ञ था, जैसे कि उसकी वर्तमान प्रतिक्रिया, जिससे पता चला कि उसे दानव शिकारियों के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। मोटे जैसे सच्चे दानव शिकारी के लिए स्काईशिप का मालिक होना कोई असामान्य बात नहीं थी। वास्तव में उसका घर स्काईशिप पर ही था। राक्षसों का लगातार शिकार करने के कारण दानव शिकारी स्काई सिटी की तुलना में जमीन पर ज्यादा समय बिताते थे। इसके अलावा चूंकि स्काई सिटी उड़ सकता था, इसलिए वह एक निश्चित अवधि के बाद अलग अलग जगहों पर जा सकता था। इसलिए दानव शिकारियों के लिए, जो एक ऐसा पेशा था जिसमें जमीन पर लंबे समय तक रहना पड़ता था, बिना किसी निश्चित निवास के रहना और सीधे अपने स्काईशिप पर अपना घर बनाना आम बात थी। मोटे एक ऐसा दानव शिकारी था जिसके पास न केवल अपना स्वयं का आकाशयान था, बल्कि वह अपनी बेटी के साथ उस पर रहता भी था। अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए, जो उसके लौटने का इंतजार कर रही थी, मोटे ने मन ही मन आह भरी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ग्ररॉक दानव का शिकार हो जाएगा। हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन उसका एक हाथ अपंग हो गया था, जिससे उसके लिए राक्षसों का शिकार करना असंभव हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही योजनाएं बनानी शुरू कर देनी चाहिए, मोटे सोचने से खुद को रोक नहीं सका। बिना यह महसूस किए कि वे तीनों जंगल से बाहर निकल आए थे, और उसी समय आकाश के किनारे पर भोर का एक संकेत उभर आया था। दिन टूट चुका था। जंगल से बाहर निकलते ही, चाहे लिलिया हो, रॉकी हो या मोटे, तीनों ने एक साथ राहत की सांस ली। फिर लिलिया ने एक सिग्नल डिस्क निकाली और थंडरहॉक सिटी को सिग्नल भेजा। मोटे चौंक गया जब उसने लिलिया के हाथों में सिग्नल डिस्क देखी। उसने उस चीज को पहचान लिया, और वह जानता था कि ऐसी सिग्नल डिस्क आम लोगों के लिए इस्तेमाल करने लायक नहीं होती। साथ ही उसने एक सिग्नल फ्लेयर भी निकाला, उसे जलाया और आकाश की ओर उठाया। आम लोग इसी तरह सिग्नल भेजते थे। लिलिया का सिग्नल डिस्क से सीधे स्काई सिटी से संपर्क करने का तरीका कुलीन वर्ग के लिए आरक्षित था। बेशक और भी उन्नत विधियां थीं, जैसे कि ध्वनि या छवियों को सीधे प्रसारित करने के लिए मन का उपयोग करना, जो निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे औसत व्यक्ति वहन कर सकता था। संकेत भेजे जाने के कुछ ही देर बाद एक स्काईशिप धीरे धीरे दूर से आया और रॉकी तथा उसके समूह के पास आकर उतरने लगा। ये स्काईशिप स्वाभाविक रूप से थंडरहॉक सिटी का नहीं था, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से एक छोटा सा नागरिक स्काईशिप था, थंडरहॉक सिटी के स्काउट जहाजों से भी छोटा। ये कुछ हद तक पुराना लग रहा था, और एक युवा महिला बीस्टमैन जहाज के अगले हिस्से पर खड़ी थी। मैं पहले वापस जा रहा हूँ, बाद में मैं तुम्हारे स्काईशिप के साथ स्काई सिटी जाऊंगा। रॉकी का अभिवादन करने के बाद मोटे अपने आकाशयान की ओर चल पड़ा। हालांकि उसका आकार अभी भी ऊंचा था, फिर भी वह कुछ अकेला सा लग रहा था। उसकी आकृति को दूर जाते देख रॉकी और लिलिया ने लगभग एक साथ आह भरी। हालांकि मोटे ने रास्ते में बहुत कुछ नहीं कहा था, लेकिन वे उसके कुछ शब्दों में असहायता और चिंता का संकेत सुन सकते थे। खासकर जब उन्होंने युवा महिला बीस्टमैन को स्काईशिप पर खड़ा देखा, तो उन्होंने मोटे की भावनाओं को और भी बेहतर ढंग से समझा। क्या वह उसकी बेटी है? लगता है उम्र सही है, लिलिया ने सिर हिलाया और बेबसी से बोली, यही एक दानव शिकारी की जिंदगी है। ये लोग नियमित रूप से राक्षसों से जूझते हैं और कुछ ही का अंत अच्छा होता है। मोटे तो खुशकिस्मत है कि बच गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रॉकी को समझ नहीं आ रहा था कि लिलिया की बातों का क्या जवाब दे, क्योंकि शायद यही नियति थी दानव शिकारी की। ये लोग रोज चाकू की धार पर नाचते थे और अंततः उसी धार से मर जाते थे। हमारा आकाशयान कब आएगा? किसी वजह से रॉकी को अचानक लगा कि इंतजार बहुत लंबा हो गया है। वह थंडहॉक सिटी लौटने के लिए बेताब था। शायद उसे सिटी लॉर्ड की कुर्सी की चाहत थी, या शायद वह बस चाहता था कि मोटे का जल्द से जल्द इलाज हो जाए। उसे खुद भी यकीन नहीं था। चिंता मत करो, एलिन को सिग्नल मिल गया है, हमें 1-2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। लिलिया ने अपने हाथ में सिग्नल डिस्क पर नजर डाली, जिस पर एलिन से एक सिग्नल आया था। इससे पता चला कि स्काई सिटी के अंदर एलिन ने एक स्काईशिप भेजा था। ये सुनकर रॉकी ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि ऐसे मामलों के बारे में चिंतित होने का कोई फायदा नहीं है, और उसने लिलिया के साथ लंबा इंतजार शुरू कर दिया। सिद्धांत रूप में 2 घंटे तक इंतजार करना बहुत लंबा समय नहीं था, लेकिन क्योंकि वे बहुत सारे ग्रॉक स्टोन्स ले जा रहे थे और मोटे की उपस्थिति के साथ रॉकी और लिलिया दोनों ही आराम महसूस करने के लिए जल्दी से थंडहॉक सिटी लौटना चाहते थे। हालांकि उनके आकाशयान के पहुंचने से पहले ही उन्हें एक अप्रिय आश्चर्य का सामना करना पड़ा। आश्चर्यजनक आगंतुक राक्षस नहीं बल्कि अन्य मनुष्य थे। जैसे ही 2 घंटे पूरे होने वाले थे, लोगों का एक समूह अचानक आसमान से उड़ता हुआ आया। एक शून्य जादू दस्ता अचानक प्रकट हुआ था। तथाकथित शून्य जादू दस्ता शून्य जादू कवच सैनिकों से बना एक दल था, जो आकाश में सबसे श्रेष्ठ सैनिक था। रॉकी और लिलिया की नजर में जो दस्ता आया वह लगभग 10 लोगों का था। प्रत्येक सदस्य शून्य जादू कवच के नवीनतम मॉडल से सुसज्जित था। हम शून्य जादू दस्ते में कैसे भाग गए? शून्य जादू दस्ते को ऊपर उड़ते हुए देखकर रॉकी और लिलिया दोनों दंग रह गए, क्योंकि उन्हें ऐसी उच्च स्तरीय टीम का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। और जैसे ही उन्होंने समूह को देखा, हवा में मौजूद शून्य जादू दस्ते ने भी उन्हें देख लिया और नेता भी वहीं रुक गया। ये तो बुरा हुआ। दूसरों को उन्हें देखते और रुकते देख रॉकी और लिलिया दोनों घबरा गए। उन्हें चिंता हुई कि शायद वे इस बार वापस नहीं आ पाएंगे। जब रॉकी और लिलिया ने देखा कि हवा में शून्य जादू दस्ते ने उन्हें देख लिया है, तो वे दोनों मन ही मन कोसने लगे, धिक्कार है, आखिर यह जमीन है। वर्तमान विश्व में एक अलिखित नियम है जिसका पालन हर कोई करता है, जिसके अनुसार धरती पर होने वाली हर घटना राक्षसों का काम है। जमीन पर मारा गया निश्चित रूप से राक्षसों का काम है, जमीन पर लूट ये भी निश्चित रूप से राक्षसों का काम है। संक्षेप में, चाहे धरती पर कुछ भी घटित हो, अपराधी हमेशा राक्षस ही होते हैं, जैसा कि लोगों के बीच एक आम समझ बन गई है, क्योंकि कानून केवल आसमान पर शासन कर सकता है और धरती पर शासन करना बहुत पहले ही बंद कर चुका है। और यही कारण है कि धरती पर खतरे सर्वव्यापी हैं। ये खतरे वास्तव में राक्षसों से आते हैं, लेकिन कभी कभी वे नहीं आते हैं। इसलिए जब रॉकी और लिलिया ने शून्य जादू दस्ते को देखा और महसूस किया कि उन्हें देख लिया गया है, तो वे दोनों एक क्षण के लिए भयभीत हो गए। इसलिए नहीं कि उन्हें डर था कि दस्ता ग्रॉक स्टोन के पीछे है, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर था कि दस्ता उनके रहस्यों का पता लगा लेगा। रॉकी की वर्तमान पोशाक शून्य जादुई कवच रूनों से सुसज्जित थी, जबकि लिलिया पूरी तरह से रूनों से सुसज्जित थी। अगर दस्ते को उनमें कुछ भी गड़बड़ लग जाती तो वे लगभग मर जाते। एक क्षण में ही उनका दिल उछलकर गले में आ गया। लेकिन शुक्र है कि एक संक्षिप्त विराम के बाद मध्य हवा में शून्य जादू दस्ते ने अपनी उड़ान फिर से शुरू कर दी और जल्द ही क्षितिज की ओर बढ़ गए और दृष्टि से ओझल हो गए। जब दस्ता पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गया, तब रॉकी और लिलिया ने राहत की सांस ली। उन्हें खोजा नहीं गया था, ये सचमुच बहुत भाग्यशाली था। एक दूसरे को देखने के बाद रॉकी और लिलिया ने एक दूसरे के चेहरों पर एक बड़ी मुसीबत से बच निकलने का भाव देखा, क्योंकि उस क्षण उनका तनाव राक्षसों का सामना करने के तनाव से भी अधिक था। राक्षसों के सामने उनके पास भागने का मौका हो सकता था, लेकिन कुछ क्षण पहले शून्य जादू दस्ते का सामना करने पर, लड़ाई होने पर भागने का कोई अवसर नहीं होता। अचानक हुई यह अप्रत्याशित मुलाकात तेजी से हुई और उतनी ही तेजी से चली भी गई। और शून्य जादू दस्ते के गायब होने के कुछ ही देर बाद थंडहॉक शहर का स्काईशिप आ पहुंचा। 10 स्काईशिप धीरे धीरे रॉकी के सिर के ऊपर से निकले और धीरे धीरे नीचे उतर गए। यह अंततः खत्म हो गया। थंडहॉक सिटी से स्काईशिप्स को देखकर रॉकी ने अंततः राहत की सांस ली। उसका मन शांत हुआ, लेकिन तुरंत ही उसे थकान की लहर महसूस हुई। इस बार उसका मिशन, हालांकि लंबा नहीं था, सिर्फ 1 दिन और 1 रात, बहुत सारी घटनाओं से भरा हुआ था। न सिर्फ उसका सामना राक्षसों से हुआ, बल्कि घर लौटने से ठीक पहले उसे दानव शिकारियों और यहां तक कि एक शून्य जादू दस्ते से भी सामना हुआ। लगातार हो रहे आश्चर्यों ने उसे लगभग अभिभूत कर दिया था। अनेक अनियोजित घटनाओं के बावजूद उन्होंने अंततः अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और सफलतापूर्वक थंडहॉक सिटी लौट आए, जो सभी के लिए एक खुशी की बात थी। जियालुओ, उस व्यक्ति ने शून्य जादुई कवच का कौन सा मॉडल पहना हुआ था? जबकि रॉकी सफलतापूर्वक स्काईशिप पर चढ़ गया और थंडहॉक सिटी की ओर लौटने लगा, शून्य जादू दस्ता जिसका उसने सामना किया था लगातार ऊंचाई पर चढ़ता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी वापस आ रहे थे। चढ़ाई के दौरान दस्ते के नेता ने अचानक पूछा, ये व्यक्ति तेज धार वाले चांदी जैसे सफेद कवच से सुसज्जित था, जो स्पष्ट रूप से सामान्य प्रकार का शून्य जादुई कवच नहीं था, और यद्यपि उसका चेहरा कवच से छिपा हुआ था, उसकी आवाज बहुत युवा लग रही थी, जो ये दर्शाता था कि वह संभवतः बहुत बुरा नहीं था। वह जिस व्यक्ति का उल्लेख कर रहा था वह स्वाभाविक रूप से रॉकी था, और वह वास्तव में रॉकी के शून्य जादू कवच के बारे में पूछ रहा था। युवा गुरु, ये रक्त प्रतिरूपित द्वितीय पीढ़ी का कवच है, शून्य जादू कवच की पहली पीढ़ी से, जो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। ये सामान्य बात है कि आपने इसे पहले नहीं देखा होगा, एक अन्य व्यक्ति उसके पास आया और तुरंत सटीक उत्तर दिया। रक्त प्रतिरूपित द्वितीय पीढ़ी का कवच, शून्य जादुई कवच जिसे रॉकी ने पहना हुआ था। सच कहें तो उसे स्वयं भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जियालुओ नामक एक व्यक्ति ने एक नज़र में इसे देख लिया था। यह उत्तर सुनकर युवा मास्टर पहले तो कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, ऐसा लगता है कि मैंने इसे गलत नहीं पहचाना है, ये वास्तव में रक्त प्रतिरूपित द्वितीय पीढ़ी का कवच है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। युवा मास्टर, क्या कोई समस्या है? जियालुओ, क्या तुम्हें याद है कि रक्त प्रतिरूपित द्वितीय पीढ़ी के कवच का जादुई ऊर्जा मूल्य क्या है? अपने बगल में उड़ रहे व्यक्ति की ओर देखते हुए युवा स्वामी ने फिर पूछा। अगर मुझे सही से याद है तो आधिकारिक डेटा के अनुसार इसका मूल्य 300 जादुई ऊर्जा है। जिस जादुई ऊर्जा मूल्य पर दोनों चर्चा कर रहे थे वह शून्य जादुई कवच की युद्ध शक्ति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जैसा कि सर्वविदित है, शून्य जादू कवच का शक्ति स्रोत मन है, इसलिए इसकी ताकत सीधे मन से जुड़ी हुई है, जिससे जादुई ऊर्जा मूल्य किसी विशेष शून्य जादू कवच की खूबियों का सबसे अच्छा संकेतक बन जाता है। और रक्त प्रतिरूपित द्वितीय पीढ़ी के कवच का जादुई ऊर्जा मूल्य 300 था। जादुई ऊर्जा मूल्य के लिए केवल 300? जियालुओ के शब्दों को सुनकर चांदी सफेद कवच पहने युवा स्वामी ने अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर उलझन में कहा, लेकिन मैंने अभी देखा है कि आदमी ने जो शून्य जादू कवच पहना है वह जादुई ऊर्जा मूल्य के मामले में इस संख्या से कहीं अधिक है। ओह, ये सुनकर जियालुओ भी चौंक गया। युवा मास्टर, आपने क्या मूल्य देखा? 500? युवा मास्टर, ये तो असंभव है, हाहा कहकर हंसते हुए जियालुओ, जो युवा गुरु के बगल में उड़ रहा था, बोला, युवा गुरु, जादुई ऊर्जा डिटेक्टर में खराबी होनी चाहिए। रक्त प्रतिरूपित द्वितीय पीढ़ी के कवच का मॉडल बहुत पुराना है, नवीनतम जादुई ऊर्जा डिटेक्टरों में पता लगाने में समस्या आ सकती है। आप ये क्यों कहोगे? ये देखकर कि जियालुओ ने उस पर पूरी तरह से अविश्वास किया, युवा स्वामी कुछ उलझन में पड़ गया। युवा गुरु, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन रक्त प्रतिरूप वाला दूसरी पीढ़ी का कवच 500 के जादुई ऊर्जा मूल्य तक पहुंच ही नहीं सकता। जियालुओ ने फिर युवा गुरु को समझाना शुरू किया, रक्त प्रतिरूप वाला कवच शून्य जादुई कवच की पहली पीढ़ी थी। उस समय कवच का आविष्कार हुए अभी कुछ ही समय हुआ था और सभी पहलुओं में तकनीक अपरिपक्व थी, इसलिए शून्य जादू कवच की पहली पीढ़ी में न केवल सामान्यतः कम जादुई ऊर्जा मूल्य थे, बल्कि पहनने वाले को बहुत सीमित वृद्धि भी प्रदान करते थे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्त प्रतिरूप वाले कवच में स्वयं डिजाइन संबंधी खामियां थी, इसलिए कवच की यह श्रृंखला चौथी पीढ़ी तक पूरी तरह से समाप्त हो गई, लेकिन रक्त प्रतिरूप वाले चौथी पीढ़ी के कवच का जादुई ऊर्जा मान 600 से अधिक नहीं था, इसलिए मनुष्य, भले ही उसने अपने कवच में संशोधन कर लिया हो, संभवतः दूसरी पीढ़ी के कवच को चौथी पीढ़ी के स्तर तक नहीं ला सकता था, ये सरासर असंभव है। आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ तो बात है, हो सकता है कि जादुई ऊर्जा डिटेक्टर वास्तव में खराब हो। जियालुओ के शब्दों को सुनकर युवा मास्टर ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने रॉकी के मामले के बारे में सोचना बंद कर दिया। इसके बाद भी वहां से न जाते हुए जियालुओ ने पूछना जारी रखा, युवा मास्टर, आप क्या सोचते हैं? किस बारे में? कवच का नया मॉडल, बोलते समय जियालुओ ने उनके पीछे कुछ लोगों की ओर इशारा किया, या अधिक सटीक रूप से उनके द्वारा पहने गए शून्य जादुई कवच की ओर इशारा किया। नए मॉडल के कवच का ये बैच, आपको क्या लगता है कि यह वास्तविक युद्ध में कैसा प्रदर्शन करता है, युवा मास्टर? औसत। अपने पीछे खड़े चंद लोगों पर नजर डालने के बाद युवा गुरु ने सहजता से कहा, वे दावा करते हैं कि जादुई ऊर्जा का मान 5700 तक पहुंच जाता है, लेकिन असल लड़ाई में वे 4500 का जादुई ऊर्जा मान भी नहीं निकाल पाते। अगर मैं इस बार वहां न होता तो वे सब उच्च स्तरीय राक्षसों के हाथों मारे जाते। यह युवा मास्टर द्वारा नए कवच की इतनी खराब रेटिंग की उम्मीद न करते हुए जियालुओ को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई और वह काफी देर बाद बोला, युवा मास्टर, ये सामान्य प्रयोजन के कवच हैं, इनकी तुलना आपके विशेष कवच से नहीं की जा सकती। अगर यह वास्तविक युद्ध में टिक नहीं पाता तो इसके बारे में बात करना व्यर्थ है। मैं राजा को कवच का ये बैच खरीदने की सिफारिश नहीं करूंगा।